نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير دور قرآن 2021 ڈی کیو 2021 اس میں سے آج ہم انشاءاللہ تعالی پارہ نمبر 16 کریں گے قال علم اقل لک پارے کا نام دیکھیے کیا نہیں میں نے تم کو کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. حضرت موسیٰ اور خضر کے قصے کے بالکل عین بیچ میں یہ پارہ ہے. اب ترتیب صورتوں کی جس طریقے سے چلتی ہے پاروں کی بھی چلتی ہے, یہ ایک الگ علم ہے کہ کیا یہ شروع سے تھا بعد میں ہوا. اس کو انشاءاللہ رمضان کے بعد پہ رکھتے ہیں اور اس کے لیے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تو ہمیں بہترین طور پہ مزید وقت لگانے کی توفیق عطا فرما. اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ القلب الباحث, کون سا؟ انل ہدایہ. اب تو ہدایت کی طلب والا شخص واقعی بے چین ہے, ہدایت لینے کے لیے, ہدایت کو پانے کے لیے. اس کی زندگی اس چیز کے لیے لگ جائے تو وہ پھر بھی ہدایت لے گا. یہ میں آپ سب کے اوپر بہترین گمان کرتے ہوئے بول رہی ہوں کہ آپ کے دلوں میں اب واقعی ہدایت کی بہت زیادہ طلب آ چکی ہے. بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دینے والا ہے. تو آج انشاءاللہ اس بارے میں سے جو ہمارے لیے بات ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم ہدایت کی طلب کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں آنے والی کچھ چیزوں کی حقیقت کیوں سمجھ نہیں آتی. تو پارے کا جو مرکزی خیال ہے آج وہ آیت نمبر 76 سورت مریم ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہیں. دو چیزیں ہیں اس آیت میں جس پہ آج ہم بات کریں گے. ایک ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى, اللہ ہدایت کو کیسے بڑھاتا ہے اس کو تو بھی بعد میں بتاؤں گی, گو کے ترتیب میں پہلے ہے. لیکن دوسری چیز جو ہم دیکھیں گے کہ مشکلات اور آزمائشوں کی بھٹی میں پڑنے کے بعد ایک بندہ اپنے لیے بھی اور اپنے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے لیے باقیات الصالحات میں کیسے ڈھلتا ہے. تو آج کا جو مین تھیم جس پہ یہ پورا پارہ چلے گا وہ ہے حقیقت المحاکمات. حقیقت المحاکمات, حکم سے دیکھیے کیا ہوتی ہیں آزمائشیں. ہر آزمائش اللہ کا حکم ہے. آپ کے میرے اوپر زندگی میں جب بھی کوئی اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں تو ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہے کیسے ہے, لیکن ہم پچھلے پارے کے اندر سے جو حضرت موسیٰ اور خضر کا قصہ شروع ہو چکا ہے اس کو بھی کچھ حصہ آج پڑھنے والے ہیں. اور اس پورے پارے میں سے آپ دیکھیں گے کہ جہاں کوئی آزمائش کسی پہ پڑی اس کے بعد خیر کے راستے کھلتے ہی گئے. اور اس کی بڑی معروف مثال جو ایک عورت حضرت مریم علیہ السلام, واحد عورت جس کا نام قرآن میں ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں کہ جن کی ماں کا تذکرہ اور ان کی نانی کا تذکرہ اور ان کے کچھ اور خاندان کے لوگوں کا ذکر قرآن میں ہے, گو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے لوگوں کا تذکرہ براہ راست نہیں ملتا, اور اگر کوئی ہے بھی تو وہ مکی دور کے وہ لوگ جو مخالفین تھے. تو ہم دیکھیں گے بی بی مریم پہ جو ایک آزمائش پڑی تھی اور اس میں ان کا جو رویہ تھا وہ ان کو کیا بنا گیا. ایک جملہ لکھیے, مصیبت چھوٹے بندے کو کھا جاتی ہے. اب مصیبت کو آپ دکھ لکھ لیں, تکلیف لکھ لیں, آزمائش لکھ لیں, وہ ذاتی زندگی کی بھی ہو سکتی ہے, وہ اجتماعی زندگی کی بھی ہو جاتی ہے, وہ فتنے بھی ہوتے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں جنگوں کی صورت میں, وہ بیماریاں بھی ہوتی ہیں, وہ گھروں کے ٹوٹنے کی صورت میں طلاق اور اسی طرح شوہر کی اچانک موت یا بیوی کی اچانک موت کی صورت میں بیوگی کا سفر یا پھر اکیلے رہ جانے کا سفر بھی ہوتا ہے. ہم ان آزمائشوں کی حقیقت نہیں جان سکتے کب تک, جب تک قلبی نور بصیرت نہ ملے. تو آزمائشوں کی حقیقت ساتھ ہی ساتھ چلتی ہے قلبی بصیرت کے. آپ کے میرے کلچر جو کہ ہمارا بڑا پیارا سا کلچر ہے اردو کا, اور شاعری اور پوئٹری اور ریگولر میں بھی دیکھیے لفظ بصیرت بہت ہوتا ہے. تو آج ہم بصیرت کی باتیں پڑھنے لگے ہیں, یعنی دل کی ایک کیفیت ہے بصر بصیرت, بڑی ہی یونیک کیفیت ہے, اور یہ وہی چیز جس کو علامہ اقبال کہہ گئے کہ خدا میرا نور بصیرت عام کر دے. آج بھی یہی دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ دین والوں کو اور صاحب بصیرت والوں کو, کیونکہ جب انسان کو قلبی بصیرت نہیں ملتی یا اس کا نور بصیرت عام نہیں ہوتا تو پھر اس وقت وہ نہیں سمجھ پاتا کہ آخر یہ کیوں ہوتا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ آزمائشیں جو بھی زندگی میں آتی ہیں نا, یہ اللہ سے قرب کی سیڑھی ہوتی ہے, اس کے اوپر توکل کرنا سکھاتی ہیں. اور وہ وقت یاد کیجئے کہ جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے, اور وہ سورۃ عبس کی آیات میں ہمیں کہتا ہے آیت 34-36 میں, اگر آپ دیکھ لیتے ہیں, یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی, یعنی قیامت کا دن ہوگا, انسان اپنے بھائی, اپنے ماں باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھاگے گا, کیونکہ اس دن ہر ایک کے اوپر وقت ہی ایسا پڑا ہوگا کہ اسے کسی اور کا ہوش نہیں ہوگا. تو لکھیے, پہلی بات, جب آزمائش اترتی ہے, کوئی برائی نازل ہوتی ہے, حادثہ زمانہ یعنی زندگی میں کسی حادثے کا تانتا بندھتا ہے, تو بہت سارے لوگ اپنی نیندیں اڑا بیٹھتے ہیں اور اپنے دکھوں کی وجہ سے اس حق بات کو فراموش کر دیتے ہیں جسے وہ جانتے تھے, اور پھر حیرت, پھر شک, پھر حقیقت کو چھوڑ کر, پھر اپنے رب سے بے بدگمان ہوتے ہوئے جو کوئی اچھا کام کر بھی رہے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور ہوش کی زندگی چھوڑ کر ڈپریشن اور کہیں ڈرگز اور کہیں اسی طرح کی عجیب و غریب چیزوں پہ چل پڑتے ہیں کہ جی ہم پہ آزمائش آئی تو کیوں آئی, کیسے آئی, کس طرح کی اور کیوں کرنا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں آپ کو مجھے اس کی حقیقت سمجھائیں گے. حضرت موسیٰ خضر کے قصے میں جو واقعات تین تھے, آج اس کی حقیقت بھی ہم جاننے والے ہیں, اور اسی طرح آپ کی میری زندگی میں جو ہم پہ مشکلات آئی ہے نا, تو اس کی حقیقت ہمیں آج سے 5 سال بعد سمجھ آتی ہے, اور کبھی کبھی 10 سال بھی سمجھ آتی ہے. اور جب سمجھ آتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے. وہ ایک معروف سی بات کہ ایک شخص کسی بیری کے درخت کے نیچے بیٹھا بیروں کو دیکھ رہا تھا, تو کہنے لگا اللہ بیر اتنا چھوٹا سا اور تو نے اس کے لیے اتنا بڑا درخت بنا دیا, جبکہ تربوز اتنا بڑا ہوتا ہے اور تو نے اس کو پتلی سی بیل پہ لگا دیا, تو تربوز درختوں پہ کیوں نہیں اگتے. تو اتنے میں ایک بیر اپنی ٹانی سے اترا, گرا, اللہ نے گرایا آف کورس, اور اس بندے کے سر پہ پڑا. تو جب سر پہ پڑا تو کہنے لگا اللہ میں سمجھ آ گیا کہ تربوز کیوں نہیں درختوں پہ اگتے. بات تو بڑی عام فہم ہے. ہمارے سر پر جب کوئی مصیبت کا بیر پڑتا ہے, اس وقت ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ تربوز بھی ہو سکتا تھا. تو زندگی میں یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ہمیشہ خوشی ہو یا غم ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اپنا قانون, اس کو قانون اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امتحان لینے کا قانون کہتے ہیں, قانون مہن بھی کہتے ہیں, امتحان لفظ ہے, اور بھی بڑے اس کے نام ہیں جو اس وقت نہیں آپ کو الجھانا چاہتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول کے بیان کر دی کہ حسب الناس یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی. حالانکہ ولقد فتنا الذین من قبلہم, ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا تھا. کیوں اللہ آزمائشیں لاتے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, تاکہ اللہ خوب جان لے, پرکھ لے, ازما لے ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا. کیا سچ کہا؟ کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کر یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر اپنا ٹرسٹ ہم ثابت کرتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں, یہ کلمے کی سچائی کا ذریعہ ہوتی ہیں. اور وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور اللہ جھوٹوں کو بھی جان لے. اس سورۃ عنکبوت کی پہلی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, آپ ریفرنس میں لکھ لیجئے. تو آزمائشیں, تکلیفیں اس لیے آتی ہیں کہ ہمارے ایمان کا کھرا پن اور کھوٹا پن دور پتہ لگ جائے. ہم سچے مومن ہیں, واقعی سچا توکل ہے, ہم واقعی اللہ مانی علی ما آتیت پہ ایمان رکھتے ہیں. ابھی چند دن پہلے اللہ کا نام المانے کیا ہم نے الاسماء الحسنی سیریز میں, آپ اس سے بھی فائدہ اٹھائیں تو آپ کو یہ مضمون بڑی اچھی طرح سمجھ آئے گا. और ऊपरे दिल से झूठे ईमान, जिसका कल से पीछे पिछले पारे में भी तस्करा हुआ कि कुछ लोगों का ईमान नकली ईमान होता है, गूंगा ईमान होता है, तो उस वक्त सच्चे और झूठे ईमान का पता चल जाता है। और साथ ही साथ अल्लाह ने एक और हिकमत भी इसमें दे दी कि फिर हमें जन्नत भी तो देनी है अल्लाह ने। और अल्लाह सुभान तआला का एक वादा है कुरान में, सूरत आले इमरान 184 में अगर आप देखें, लतुबलवुन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, तुम जरूर आजमाए जाओगे अपने मालों और अपनी जानों में, और बल्कि तुम बहुत सारी बातें सुनोगे अहले किताब से और मुशरिकों से, बहुत तकलीफ देने वाली, और अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो ये हिम्मत के कामों में से। इससे पता चलता है कि इंसान के दीन पे भी आजमाइशें आती हैं और दूसरे लोगों से उसको बातें भी सुननी पड़ती हैं। और मसाइब खमसा तो आप बहुत अच्छी तरह सूरत बकरा की आयत 154-155 में पढ़ चुके हैं, वला नब्लुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जूई व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुस वस समरात व बशरिस साबिरीन। तर्जुमा आपको आता ही है, मसाइब खमसा। तो कभी याद रखिये आप पर मैं भूख से आजमाए जाएंगे, कभी खौफ होगा, फियर होगा, चाहे वो लोगों का हो या कोरोना का हो या जंगों का हो या मेरा भी घर कहीं जमीन बोसना हो जाए, ये होता ही रहेगा। अल्लाह के नबी ने एक तस्वीर खींच कर दिखाई थी अपने हाथों से, एक इम्पैक्ट बनाया था कि मुख्तलिफ तरह से बंदे मोमिन को तकलीफें पहुंचती रहती हैं, हत्ता के फिर वो मौत की वादी में जब जाता है तो आखिर में वो पाक हो चुका होता है। और इसी तरह कभी जान का खतरा, कभी बच्चों की मुसीबतें, कभी शोहर की, कभी बीवी की। आपका मेरा काम क्या है कि कह दीजिए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो ये तो होंगी, लिख लीजिए कि ये रब्बानी कानून है। और ये एक ऐसा कानून है जिसमें उसने अपने अंबिया, पैगम्बरों, रसूलों और सुलहा को और आयमा कराम को और मुहद्दिसीन और औलिया कराम को भी नहीं छोड़ा। और जिसका जितना दर्जा है बुलंद, उतनी ही उसकी आजमाइश है। कहते हैं जिनके रुतबे हैं सिवा, उनकी मुश्किलें हैं सिवा। और इमाम अहमद को कोड़े पड़ते थे, और इसी तरह से आप देखिए कि नबी सल्लम ने फरमाया कि अगर कभी तुम्हें अपनी जिंदगी की आजमाइशें बड़ी लगें तो मेरी आजमाइशों को याद कर लेना। और जितना ईमान बड़ा होता है उतनी आजमाइश आती है। यानी आप लिख लीजिए कि हमारे ईमान और हमारी आजमाइश में क्या ताल्लुक है, हम कैसे इसको समझ सकते हैं। तो उसका जवाब क्या है कि जितना बड़ा ईमान उतनी बड़ी आजमाइश, और छोटे ईमान के साथ छोटी आजमाइशें होती हैं, और अल्लाह के बंदे के पीछे मुश्किलात लगी ही रहती हैं, हत्ता के उसके जिस्म पर गुनाह का जरा सा भी बोझ नहीं रहता। अल्लाह के नबी की मक्की जिंदगी को ले लीजिए, 13 साल अजियतें, मजाक उड़ाया गया, तकजीब की गई, आपके मिशन को कुछ समझा ही नहीं गया, आपके खिलाफ ऐलान जंग, और आपके साथियों को इतनी तकलीफें दी कि पत्थरों पे लिटाया गया, और हत्ता के फिर आपको ताइफ में जाकर पत्थर भी खाने पड़े। जहनी अजियत थी, खानदान अपना आपको छोड़ दे तो क्या लगता है, जरा नबी को सोचिए। और 3 साल के शाब अबी तालिब की घाटियां, ये सारी आजमाइशें जब दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे आला इंसान को आ सकती हैं, तो आपकी मेरी आजमाइशें बड़ी छोटी हैं। अपनी आजमाइशों के आईने में अपने ईमान को देखिए। अगर आपको अपनी छोटी सी आजमाइश बड़ी लगती है तो शर्मिंदा हो जाए, क्योंकि आपका रब आपको आपकी आजमाइश से ज्यादा नहीं जान डालता। और मदनी जिंदगी की आजमाइशों को तो आप मुलाहिमात में देख लें, आपका दान तक तोड़ा गया, हौद की कड़ियां डाल दी गई, और वो नबी जो लोगों के लिए इतना मुखलिस, इतना प्यार करने वाला था, जब उसको अल्लाह के रस्ते में इतना आजमाया गया तो क्या आप और मैं छोड़ दिए जाएंगे। अम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्ना, सवाल यह है कि आजमाइशें तो आती हैं। जब इंसान के ऊपर कोई आजमाइश आती है और वो उस आजमाइश को पहचाने कैसे, उसको उसकी अंदर कल्बी नूरे बसीरत की जरूरत होती है। यानी आजमाइशों की तो एक लंबी लिस्ट है जो हर नबी की और आयमा कराम की और उसके बाद के लोगों की भी देखिए। और अल्लाह ने ये भी अपने नबी की जुबान से आपको मुझे बता दिया कि बड़ा बदला बड़ी आजमाइश के साथ वाबस्ता। और अल्लाह ताला जिस कौम से मोहब्बत करे उसको आजमाइश में डालता है, फिर जो राजी हो जाए उसको रजा मिलती है, और जो बेसब्री दिखाए से नाराजगी मिलती है। अल्लाहु अकबर। आज ये मौजू बात करने वाले हैं हम लोग, कैसे कल्बी नूर और बसीरत मांगे, کہ ہمیں اپنی زندگی میں آنے والی آزمائش, اور پھر میں کہہ دوں کہ ہماری آزمائشیں بادشاہوں اور سیاسی میدانوں کی نہیں ہیں, ہماری تو بچوں کی آزمائشیں, شوہروں کی آزمائشیں, گھروں کی اور ساس سسرال کی آزمائشیں, یا پھر اب ہم پڑھنے والی طرف آگے لکھنا پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آزمائشیں شروع ہو جائیں گی. تو یاد رکھیے, پہلے تو اپنے لیے خوشی کے ساتھ اس بات کو سنیے, آنسو پوچھ دیجیے, اس لیے کہ ابن حبان کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے ایک بڑا سا مرتبہ بلند کر لیتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مقرر کر لیتے ہیں جہاں تک وہ اپنے اعمال کی بدولت نہیں پہنچ سکتا. اللہ کو کیا پرواہ ہے, اللہ ایسے ہی کر دے اس کو کون پوچھ سکتا ہے, لیکن اللہ اپنا اصول نہیں توڑتا بندوں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس جنت کے اعلیٰ درجے میں ڈالنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کو اس مرتبے سے ہمکنار کر سکے. تو لکھیے چند جملے, آزمائش دراصل وہ خیر ہوتی ہے جو اللہ اپنے بندے کے لیے پسند کرتا ہے. ہمیں وہ آزمائش دکھ رہی ہے, دکھ دکھ رہا ہے, وہ بیماری دکھ رہی ہے, پریشانی دکھ رہی ہے, طلاق کی صورت میں دکھ رہی ہے, لیکن وہ خیر ہوتی ہے, کوٹڈ ہوتی ہے نا, اوپر اس کے کور کوئی اور چڑھا ہوتا ہے, اور پھر اللہ اس کو اس کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے. بندے کو سمجھ آئے یا نہ آئے, اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے بچوں کو کب سمجھ آیا تھا, جب آپ نے ان کو ویکسین لگوائی, آپ نے ان کو پولیو کے ٹیکے لگوائے, بچوں نیو بورن بیبی کو آپ اتنا ڈاکٹروں کے پاس لے گئی, بچے کو کہاں سمجھ آیا. تو جب ماں کو پتا ہے کہ یہ ٹیکا بچے کے لیے اچھا ہے تو اللہ کو تو اس سے بہت زیادہ پتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے صحیح بخاری میں, اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی خیر اللہ کو منظور ہوتی ہے اسے وہاں تک پہنچا دیتا ہے, یعنی تو یوسف ہا وہاں تک پہنچاتا ہے, مراد کہہ کے اس چیز کی وجہ سے مصیبت میں ڈالتا ہے اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. پھر ایک اور جملہ لکھ لیجئے, یہ آپ کا جم ہے, کہ آزمائش دراصل ایمان کی چھلنی, اخلاص کی نشانی, راضی برضا رہنے کی دلیل, اور رب العالمین اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی علامت ہے. ایک اور لکھوا دوں, لکھئے, یہ اس نفع مند دعا کی طرح ہے, دوا کھاتے ہیں نا, ریمیڈی, دعائیں, کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں, دواؤں کو, ٹریٹمنٹ, جو بھی میڈیسن جی بولیے, یعنی یہ اس میڈیسن کی طرح ہے جو ایک مہربان, خیر خواہ اور مریض کے فائدے کو سمجھنے والا معالج مریض کو دیتا ہے, اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ حکیم ہے. سمجھدار مریض کا حق کیا ہے, لکھئے, صبر کے ساتھ اس کڑوی دوا کو نگل لے اور شکوے شکایت اور ناراضگی سے قے نہ کر ڈالے, وومٹ نہ کر دے. اس لیے بشارت اور خوشخبری ہے ہر اس انسان کے لیے جو اجتماعی طور پہ پوری دنیا میں خود مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جائے اس پہ صبر کرے, یا انفرادی طور پہ, یا آج بیماریوں کی صورت میں اور کوئی اور ایسے جن کے پیارے جا رہے ہیں دنیا میں وباؤں کی صورت میں, اس پہ کہیے اے اللہ مجھے تیرا یہ گفٹ بھی پسند آ گیا. کوئی پیارا آپ کو کوئی تحفہ دے دے, وہ تحفہ چاہے اچھا نہ بھی لگے, آپ اس پیار سے لے کے استعمال کرتے ہیں کہ یہ مجھے کسی پیارے نے پیار سے دیا. اور ایک اصول اور یاد کر لیجئے, قلبی بصیرت ملنے کے لیے آپ کو کیا ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی, سورت نساء کی آیت 19, فَأَسَانْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز بہت پسند نہ ہو مگر اللہ اس میں بہت بڑی بھلائی رکھے. تو ذرا سے اپنی زندگی میں پیچھے پلٹ کر تو دیکھیے, ماضی کے آئینے میں دیکھیے, جب دکھ آیا تھا چیخیں نکل گئی تھی, لیکن بعد میں کیا ہوا, گھر کو آگ لگ گئی لیکن ایمان آپ کا پختہ ہو گیا. تو جتنا اللہ تعالیٰ پر راضی رہیں گے اتنا آپ اس کو سمجھیں گے. آگے جا کر ایک پارے کے ساتھ آپ کو اس کی ایک انوکھی صورت دوں گی جو آج نہیں دوں گی, لیکن جس دن دوں گی اس دن آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہے کیا. اب اگلا سوال جو ہمارے لیے بڑا اہم ہے, کیف نمیز بین الابتلاء الالہی والعقوبہ, ہم امتحان اور اللہ کے عذاب کے درمیان کیسے فرق کریں. یہ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں, بہنیں بھی پوچھتی ہیں کہ ہم کیسے جانیں کہ جو تکلیف آئی ہے یہ آزمائش ہے یا یہ ہمارا کوئی امتحان ہے. عموماً تو ہم نے ایک بڑا ہی بھونڈا اس کا طریقہ رکھا ہوا کہ جو میرے پہ آئی ہے نا وہ تو جی میری آزمائش ہے, اور وہ جو میرے سسرال والوں پہ آتی رہتی ہے نا, نندوں پہ اور بھاوجوں پہ اور میری بھابھیوں پہ اور سارے ایسے لوگ تو مجھے اچھے نہیں لگتے میرے دوست ہیں, یہ ان کے گناہوں کی سزا ہے. غلط طریقہ ہے یہ سوچنے کا. ایک سمپل آپ کو اس کا سرا دے جاؤں نا تو اتنا ہی بہت ہے. कि इंसान को जिस तकलीफ के बाद रब का साथ मिल जाए, रब का प्यार मिल जाए, गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आ जाए, गफलत को छोड़कर शऊर पे आ जाए, जहालत को छोड़कर इल्म पे आ जाए, तो ये अल्लाह की तरफ से उसके लिए एक इब्तला था, आजमाइश थी। और अगर गुनाहों और तकलीफों को और पकड़ ले कि अल्लाह ने तो पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ करना है और मैं तो अब नाराज हूं और मैं नमाजें भी छोड़ती हूं और अब मैंने पर्दा किया था, छोड़ो जब से पर्दा करने लगी ये वो, और कुरान तो बिल्कुल पीछे डाल दो, जब से नौज बिला कुरान जिंदगी में आया, घर से झगड़े ही नहीं गए और मैं बस सब छोड़ रही हूं, तो मान लीजिए कि आप अकूबत इलाहिया का शिकार हैं। और अल्लाह नोज दी बेस्ट, अल्लाह को पता है कि पर्सन टू पर्सन किसी बंदे के साथ क्या होता है। तो आजमाइश और इम्तिहान कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है कि आई किस पे है। छोटे बंदे को गम खा जाता है और बड़े बंदे को गम बना जाता है, ये किसी का जुमला आपको बता रही हूं। छोटे बंदे लोग कैलिपर पर्सन को गम खा जाते हैं, और वही बात जो पीछे मिसाल दी थी कि वो कोयला बन जाते हैं प्रेशर में, जब प्रेशर डलता है ना तो या तो कोयला बनता है या फिर डायमंड बनता है। तो आपको अपने जिंदगी में इस चीज को देखना चाहिए कि मेरा कैलिपर क्या है, आप हादसात और आजमाइशों के साथ करते क्या हैं, आप उसको कितनी खुशी से कबूल करते हैं, उसको स्वीडिश लेते हैं या उसको खट्टी मीठी लेकर कड़वी बनाकर ले जाते हैं। आपके ईमान, आपके कुफर और आपके निफाक का फर्क पता ही चलता है जब आजमाइशों की भट्टी में डालते हैं। सोना नहीं पता चले कभी भी किसी को कि ये 24 कैरेट है, 21 है या कितना खरा है, जब तक भट्टी में डाल के पिघलाया ना जाए एग्जैक्टली फिगर आउट करके आपको बता देंगे इतने औंस इसमें चांदी थी, इतना लोहा था और ये आपके 5 तोले सेट में सिर्फ 2.5 तोले निकले हैं बाकी नहीं। जिंदगी में हम लोगों के सामने बड़े नेक और बड़े अच्छे मारूफ होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इंसान अंदर से बहुत खोट होता है। याद रखिये, दीन पे आने के बाद भी खोट होते हैं, पढ़ाने के बाद भी खोट होते हैं, सारी जिंदगी ये धुलाइयां होती रहती हैं, रगड़े लगते, कहीं आपके ऊपर कोई ना कोई चीज होती है, तो फिर अल्लाह सुभान व तआला कैसे लोगों को परखता है ये अल्लाह ने आजमाना है। और एक बात जो सोने के पानी को तो मैं क्या कहूं, एक बात जो आज इस बारे में पढ़ेंगे वहां शायद इतना वक्त ना हो, अभी लिख ले, आप पे आजमाइश इसलिए आती है कि अल्लाह आपको अपने काम का बना ले। ये पढ़ेंगे सूरत आहा में, वफतन्ना कफतूना, मूसा की जिंदगी के अप्स एंड डाउन से पता चलता है। अल्लाह कहते हैं मूसा सारे काम कर करा के अब जब तू मेरे अंदाजे पे सेट हो गया, जे घड़ घड़ा के तुझे मैंने अपने काम का किया, अब तुझ पे अपने दीन का बोझ डाला। नबी को भी अल्लाह ने फरमाया था इन्ना नाशियतल लैल हिया अशद्दु वतन वअक्वा मुकीला, क्योंकि इन्ना सनुल्की अलैकन कौलन सकीला। तो ये कौल सकील है, अल्लाह का कलाम लेके चल पड़ना जिंदगी में ये आसान नहीं है। आज भी ऐसी दसियों बहनों को जानती हूँ, बच्चे का इंतकाल हुआ अचानक, जिंदगी का रुख मुड़ गया, वो कहती है मेरा घर ऑफर है आइए क्लासें कीजिए, बिस्मिल्लाह वो इसमें चल पड़ती हैं। याद रखिए कि अपने लिए बाकियात सालेहात जमा करने के लिए ये माइक सजाने की जरूरत नहीं है, उस्ताद बन के ही आप दीन की खिदमत नहीं करते, बल्कि आप अपने घर खोल देते हैं। आपकी जिंदगी में कोई दुख आया, घर टूटा, शौहर छोड़ गए, फौत हो गए, वो औरतें अल्लाह की रहमत से कुरान क्लासेस की बेहतरीन स्टूडेंट्स बन जाती हैं। पहले तो वो कह लीजिए कि शौहरों और घरदारियों में मसरूफ थी, अब नहीं रही। और ऐसों को भी जानती हूँ कि इधर शौहर की डेथ हुई, उधर अल्लाह ने नेकियों के ऐसे सदका जारिया के खजाने खोल दिए कि अल्लाह करे कि उनकी जिंदगी अब इसमें खप जाए और उनको लंबी जिंदगियां दे अल्लाह। ऐसी भी बहनें हमारे इर्द गिर्द। तो याद रखिए कि आपको मुझे अपनी खताओं की तशखीस करनी है, ये तशखीस भी होती है, अल्लाह आपकी मेरी डायग्नोस करवाता है कि तुमने क्या क्या गुनाह किए, क्योंकि तकलीफ और आजमाइश में बंदे की आंखों पे पड़ा हुआ पर्दा हट जाता है। और इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती, हमारी एक बुक है बहुत ही खूबसूरत किताब पेरिस से पढ़ाई, और उसी बुक के बाद अल्लाह ने फिर वहां काम लिया और हमारा पेरिस का इंस्टीट्यूट बन गया और दौरे कुरान भी हुआ। और वो क्या था, मुश्किलात से कैसे निपटे। मेरा गुमान है कि नूरुल कुरान ऐप पे भी है और वेबसाइट पे तो 100% होगी, आज उसका लिंक इनको दे दीजिए, तो इंशाल्लाह आपको इस मौजू पे मजीद भी अगर सुनना होगा तो बाद में बताऊंगी। लेकिन इस वक्त के लिए इस बात को समझ लीजिए कि अल्लाह सुबहान ताला आप पे जो चीज भी डालता है ना उसको उसका पता होता है। माँ अपने छोटे 4 साल के बच्चे को 10 किलो घी का डब्बा कभी नहीं उठवाएगी, तो अल्लाह कैसे आपको उठवाए। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, کسی بندے کے اوپر اللہ اس کی وسعت سے زیادہ آزمائش نہیں ڈالتا. لفظ چونکہ نور بصیرت آج کے ہمارے پارے میں ہے تو چند چیزیں آپ کو نور بصیرت کے بارے سے بتا دوں. آپ دیکھیے با سواد را کا لفظ بصر ہے نا, لیکن عموماً آپ دیکھیے کہ دیکھنے کے لیے جس کو آپ ٹو سی کہیں گے نا, انگلش کا ٹو سی دیکھنا, اس کے لیے را کا لفظ ہے جس سے لفظ رویت بھی ہے. جب بھی لفظ بصر آتا ہے نا, بصر ہی کی ایک بدلی ہوئی شکل کیا ہے, بصیرت. تو بصر سے بصیرت کیا ہے, پہلے را کو اگر آپ کو دکھا دوں تو آپ دیکھیے کسی چیز کا ادراک کرنا آنکھوں سے بھی ہو سکتا ہے, غور و فکر, عقل, بصیرت سب طرح سے ایک کامن ورڈ ہے. لیکن جب بصر کا لفظ آ جاتا ہے نا تو یہ دل کے ساتھ, اور خاص طور پہ جب یہ بصیر کی صورت میں آ جاتا ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے, بصیرت قلبی, یہ دل کی ایک بڑی خوبصورت کیفیت ہے جو آپ کو آج دی جا رہی ہے. تو اس سے مراد ہے کہ زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ دل کی آنکھوں سے دیکھیے. یاد رکھیے ہمارے دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں, ہمارے دل کی کان بھی ہوتے ہیں. دل کا دماغ تو آپ کو میں نے شروع ویلکم لیکچر میں بتا دیا تھا اور پیچھے بھی اس پہ تھوڑی بہت ہم نے بات کی ہے. تو آپ کہیں کہ بصورا دیدہ دل سے دیکھنے کے لیے آتا ہے, بصرا آنکھ کا دیکھنا آپ کہہ لیجئے, اور جب اس کو کبھی کبھی دل سے دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے, اور قرآن میں یہ باتیں موجود ہیں, قال بصرت بما لم يبصروا به, آج پڑھیں گے آپ انشاءاللہ, آپ کو وہاں یاد رہے نہ رہے لیکن سورۃ طہٰ کی آیت 96 میں آتا ہے, سامری نے کہا تھا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی. جبرائیل کے قدموں کی طرف اشارہ تھا, ان کی مٹی کچھ ایسی بات ہے, اور اسی طرح سے کچھ اور ہے. تو بس اس کو لیتے جائیے اور یہ دعا کرتے جائیے کہ اللہ ہمیں نور بصیرت دے, نور قلبی دے. اور آگے چلتے ہیں اگر ہم اسی پہ, تو ہمیں یہ بھی سمجھ آ گیا الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس آیت میں 76 میں جو ہم دیکھ رہے ہیں, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَخْتَدَوْ هُدَى. اب چلتے ہیں اس آیت کے اس ٹاپک پہ جس میں ہدایت کے بڑھانے کی بات ہے. ہدایت کیسے بڑھتی ہے, ذرا سا اس کو دیکھیے. آپ کے سامنے ایک فلو چارٹ کی روشنی میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ ہدایت کا ابتدائی درجہ ہے, انشاءاللہ کسی پارے میں آپ کو میں نے 10 درجے لکھانے ہدایت کے, اور ایک اور پارے میں 4 لکھانے ہیں, اور ایک میں آپ کو مراتب ہدایت لکھانے ہیں, اور انشاءاللہ ایک آپ کو اسباب ہدایت لکھانے ہیں. یہ اگلے 12-14 پاروں میں آپ کو سب چیزیں ایک ایک کر کے تفصیل سے ملتی جائیں گی. یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لینے میں اور دینے میں برکت ڈال دے اور وقت میں بھی برکت دے. تو ذرا سے اس فلو چارٹ کے ساتھ یزید کے لفظ کو سمجھیے. شروع میں ادنا درجے کی ہدایت ہوتی ہے. ہدایت کا تصور کرتے ہوئے ایک سیڑھی کو ذہن میں لے آئیے. آپ دیکھیے کہ انسان جس سیڑھی کے سٹیپ پہ کھڑا ہوتا ہے نا, اس کی نظر اس سے اگلے میں ہوتی ہے. ادنا ہدایت کیا ہوتی ہے, بالکل معمولی سی. آپ مسلمان ہیں, چلی جائے مسلمان ہیں. آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس ہدایت کے اوپر جب آتے ہیں, آج کے اس ٹاپک کے ساتھ رکھ لیجئے, تو آپ صرف نماز روزے پہ ہوتے ہیں. آپ کو کوئی زیادہ پتہ نہیں ہے, کچھ دین کا علم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایک اور غم ڈالتا ہے, تو آپ کو ایک اعلیٰ ہدایت دیتا ہے, آپ کو سوج جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا, یہ میرے ساتھ کیا. اور سیڑھی کے تصور کے ساتھ ہدایت کو ہم نے ایک بڑی خوبصورت انالوجی میں ربیعہ قلبی کے ڈے 2 میں دیکھا تھا. آپ میں جو بہنیں اس کو سن چکی ہے, نہیں سنی تو سن لیجئے اگر رمضان کے بعد. اس میں ایک اور اینگل سے دیا تھا کہ ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش ہے, اور کبھی کبھی انسان بہت بڑے بڑے سٹیپ لینے کے انتظار میں زمین پہ کھڑا رہتا ہے, کوئی بڑا کام کرا لے مجھ سے, یعنی خانہ کعبہ لے جا. تو بھائی یا نماز پڑھو گے تو خانہ کعبہ لے جائے گا نا. تو کبھی کبھی لکھے ایک جملہ, ہم قریب کی نیکیوں کو چھوڑ کر دور کی نیکیوں کو تڑپتے ہیں. ہم اپنے گھر کی نیکیوں کو چھوڑ کر دوسروں کی نیکیوں پہ ہیں. بالکل ایسے کہ اپنی ماں کی خدمت چھوڑ کر دوسری کی, کسی اور کی ماں کی خدمت کی جائے, اور سوچا جائے چلو خدمت ہی کرنی ہے نا. تو ہر انسان کو اللہ نے یہ عقل اور سمجھ دی ہے. بہرحال انسان کی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ ہدایت دیتا ہے. ہر جگہ استاد جو ہوتا ہے نا, بول کے نہیں سکھاتا. یہ مصیبتیں ہمارے استاد ہیں, دکھ ہمارے استاد ہیں, بیماریاں ہمارے استاد ہیں. جب یہ اعلیٰ تر ہدایت آپ کی زندگی میں آتی ہے نا, تو آپ کی زندگی میں کتاب کھلتی ہے, یہ اعلیٰ تر ہدایت بن جاتی ہے. جیسے بندے کی فطرت پہ پڑے ہوئے پردے چھٹتے ہیں نا دکھ اور تکلیف اور بیماریوں اور تنہائیوں میں, تو پھر اعلیٰ تر ہدایت کیا ہوتی ہے, کتاب کے ساتھ تعلق لگ گیا. آپ طالب علم بن گئے, آپ سیکھنے لگے, آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے, اس کا جسم ٹوٹتا ہے نا, تو اس کو دوا چاہیے ہوتی ہے. इसी तरह जब हम किसी तकलीफ में होते हैं ना, तो हमें किसी की दुआ लग जाती है और आला तर हिदायत से चलते चलते आखिर में आप स्टेप फॉलो करते करते आला तरीन हिदायत पे आते हैं। वो कौन सी होती है? आप अपने ऊपर आने वाली आजमाइशों और आप खुद भी आजमाइशें फिर लेते हैं। लिखिए, कुछ तकलीफें अल्लाह की तरफ से आती हैं, आजमाइशें, और कुछ आप खुद लाते हैं। खुद कैसे लाते हैं? आप कहते हैं मैं एसटी 21 में दाखिला ले रही हूँ। क्यों ले रही हूँ? ताकि मेरे ऊपर जो आजमाइश आई मैं खुद सीखूं, मुझे इल्म सीखना पड़े, मुझे रातों को जागना पड़े, लफ्जी तर्जमा मैंने अपना पक्का करना है, तजवीद बेहतर करनी, मैंने ग्रामर सीखनी, मुझे कुरान की इन डेप्थ चाहिए। यह आपकी अपनी आजमाइशें हैं। और एक जुमला 20वीं बार बोला, आज 21वीं बार भी शायद बोल दूं कि जो लोग खुद अल्लाह के रास्ते में आजमाइशें कबूल कर लेते हैं इस किस्म की, फिर अल्लाह उनको बीमारियों, दुखों, परेशानियों की आजमाइशों में नहीं डालता। जो लोग अपनी जान को बचा कर घरों में कहते हैं कि बैठे रहो, हम क्यों अजीमत के रस्ते पे जिए और हम क्यों अल्लाह के दीन के लिए आगे निकले, और वजह भी उसमें घरों को ही बनाते हैं। कुरान की दलील मौजूद है मेरे पास, अल्लाह उन्हीं घरों, उन औलादों, उन मालों को ही उनकी आजमाइश बना देता है और अल्लाह सबको बचा के रखे, और फिर इस सफर में उसका सफर चलता रहता है। यानी दुख और तकलीफ के साथ साथ अगर दीन को सीखने सिखाने, फिर उसमें आगे बढ़ते बढ़ते आप लेने के बाद देने वाले बन जाते हैं और आपकी जिंदगी एक किताब की तरह खुल जाती है ऐसे बंदे के सामने, तो आपके दर्जे बुलंद होते हैं और जन्नत के 100 दर्जे हैं। आप इसी में चलते जाते हैं, आप अपनी एक एक स्किल को अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं, आप अपनी एक एक बिलोंगिंग को अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं। हमारी एक बड़ी अच्छी साथी हैं, तो वो भी क्लासेस लेती हैं, तो उनका सुबह मैंने मैसेज सुना कि उस्ताजा प्लीज लोगों को ये भी बताइए कि दीन की खिदमत के लिए सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता, और भी बड़ी बातें हैं। यहां मैं आपको एक छोटी सी बात उनकी बात के सदका जारिया के लिए कह दूं कि बस दफा कुछ लोग गिल्ट में चले जाते हैं हम जैसे लोगों को पढ़ाता देखकर। मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ, और मेरे जैसे सैकड़ों उस्ताद दुनिया में तो हजारों होंगे, लेकिन उर्दू में भी सैकड़ों होंगे। हम जैसों को पढ़ाता देखकर कुछ लोग जो भी हिदायत के तालिब बने बैठे वो गिल्ट में चले जाते हैं कि शायद सारी जन्नत इन्होंने ही माल मार लेनी है। तो दुआ कीजिए अल्लाह हमें कोना दे दे कोई। सबसे खतरनाक स्टेयरिंग वाली जगह होती है, हादसा होता है तो ड्राइवर के मरने के ज्यादा खतरे होते हैं, क्योंकि कोई चीज हिट करती है तो आगे से वो लोग तो सिक्योर होते हैं, जो पीछे बैठे उनको नहीं चोटें आती, ठीक है हल्का झटका आया ठीक हो जाएंगे। तो जो ये दर्जा होता है ये तो बड़ा खतरनाक होता है, इसमें तो जान का खतरा। एक टांग स्लिप कहां जाती है? कभी चली जाती है, और कहां जाती है? कहां से लाएं, किस तरह लाएं? कोई एक स्लिप, कोई एक चीज स्लाइड में चली जाए, कैसे वापिस लेकर आएंगे? तो ये नहीं है खिदमत सिर्फ, ये सिर्फ एक जाहरी नजर आने वाली चीज है और खतरनाक चीज है। पीछे रहकर जो गाड़ी में गाड़ी का कंफर्ट जोन होता है और बाकी है, तो आपके लिए बिल्कुल किसी किस्म की घबराहट की जरूरत नहीं है। आप सीखेंगे अभी इंशाल्लाह, कुछ चीजें आपके साथ आगे आती हैं, आप देखेंगे कि आप दीन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। और आला तरीन हिदायत क्या है कि बंदा मरते दम तक इस्तकामत से दीन पे रहे, पेवस्ता रहे, शजर से उम्मीदें बहार रख, अपने मरकज अपने मनहज को ना छोड़े और इसी पे जान चली जाए। और या ये तुहन नफ्सुल मुतमईन्ना इर्जीला रब्बी की रौदियतम मर्दिया पे पहुंचे और मौत अच्छी आ जाए। आला तरीन हिदायत ये है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब हो जाए और उस वक्त कोई और चीज हमारे और जन्नत के बीच में ना आ जाए, क्योंकि हदीस है कि बंदा जन्नत से बिल्कुल करीब होता है और कोई एक बात उसकी सामने आ जाती है, एक कॉल उसकी जुबान का या उसका कोई ऐसा मामला कि जो अल्लाह ताला उसको जन्नत से हटाता है। और इसी तरह से दूसरी चीज है, और फिर होता क्या है कि हिकमत और नूर बसीरत वाला दर्जा तय करता ही जाता है, और फिर मौत की सूरत में खुशखबरियां, और जब क़यामत आ जाएगी और जन्नती जन्नत के दरवाजे में खड़े होंगे तो वक़ालुल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, और वो कहेंगे सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें हिदायत दी, और हम तो इस तरह की हिदायत ना पाने वाले थे अगर अल्लाह हमें हिदायत ना देता। ये सूरत अल-अराफ में आप पढ़ चुके हैं, जन्नत में दाखिल होते वक्त जन्नतियों का कलमा होगा, ये है आला तरीन। उस दिन तक आप और मैं चैन से और इत्मीनान से नहीं बैठ सकते जब तक ये जुमला हमारी जुबान पे ना आ जाए। सवाल लिखिए, दिल तो चाह रहा है कि अब सारी हिदायत ही मिल जाए, तो असबाबुल हिदाया के हैं, क्या मीन्स है हिदायत के? तो उसमें से एक तो आपको मिल गया, आपकी तरफ दुख आ गया, आपने वेलकम किया, सीने से लगाया, बच्चे की तरह लिया, अल्लाह के रस्ते के अल्लाह की ज़ात के गम खुद कबूल किए। दूसरी चीज़ जो है हिदायत की तरफ रहनुमाई की वजूहात में इस्लाम के लिए दिल खुला हो। इस्लाम जब तक ना आए दिल में अल्लाह की हिकमतें समझ भी नहीं आती, और इसके साथ अगर कायनात की निशानियों पे गौर व फिक्र शुरू हो जाए तो फिर नूर अला नूर है। और आगे आप पढ़ेंगे अभी के दो तरह की निशानियां कायनात में, और एक चीज जिसको आज आप अपने लिए पक्का कर ले, नथी कर ले, और वो क्या है, इल्म और सालेह सोहबत के साथ इस्तकामत इख्तियार करना। किसी दुख और तकलीफ में अगर ये तीन चीजें आपकी मिल गई, यानी दुख आया, तकलीफ आई, बीमारी आई, तन्हाई आई, गम आया, जो भी ABCD आई, पूरी दुनिया में जंग लग गई, क्या हुआ, नंबर एक दिल इस्लाम के लिए खुरा हो, नंबर दो कायनात पे गौर कीजिए, देखिए कल तक सूखी टहनिया आजकल उसके ऊपर छोटी छोटी कोंपलें लग रही हैं, 15-20 दिन बाद देखिए नॉर्वे में दरख्तों पे पत्ते लग जाएंगे, उम्मीद तो यही है, और फिर एक हफ्ते के बाद सफेद फूल आएंगे, फिर अगले हफ्ते में कासनी कलर के आएंगे, उससे आगे पीले आएंगे, सबको पता है हर साल ऐसे ही होता है। कायनात पे गौर करके देखिए कि हर रात के बाद सुबह, तो मेरे इस गम, मेरी इस बीमारी, मेरे इस डिप्रेशन, मेरी इस तकलीफ, मेरे इस बच्चे के बिगड़ जाने और मेरे इस शौहर की बेरुखी के बाद क्यों खुशी नहीं आएगी, ये निशानी आपको नूरे बसीरत देगी। ये है नूरे बसीरत, आपको सूझ जाए, और फिर इसमें अगर इल्म से ताल्लुक जुड़ जाए, साले सोहबत मिल जाए, और अगर मिली भी है तो इस्तकामत के साथ जमे रहें, इसके बाद आपकी और हिदायत के बीच में कोई नहीं आएगा। अल्लाह आपको मुझे इन सारी तकलीफों मुश्किलात जिससे कभी आप गुजरे या गुजर रहे हैं उसे निकालकर बेहतरीन तरीके पे ला दे। और अब आखिरी हिस्सा इस आयत का जिस पे बात करके हम अपने पारे पे चलेंगे। पहली चीज थी आयत में हमने देख ली, व यजीदुल्लाहुल्लज़ीन अख्तदौ हुदन, और अगली चीज वल बाकियातु सालिहात, बाकी रहने वाली नेकियां बेहतर है तेरे रब के पास सवाब में और इंजाम के एतबार से। पहले तो मैं कितना जुमला मुश्किल बोलूंगी जो किसी को नहीं समझ आएगा मेरे गुमान में, आपकी सबसे बड़ी बाकियातु सालेहा क्या है, सोचिए। मैं 3 सेकंड चुप कर रहती हूं ताकि आप सोचें। कोई कहेगा औलाद, कोई कहेगा माल, कोई इल्म, कोई कुरान, कोई सदका जारिया, नहीं, मुसीबत, आजमाइश, बाकियातु सालेहात में सबसे अहसन दर्जा कि कैसे, क्योंकि उसके बाद आप काम के हो जाते हैं, फिर अल्लाह आपसे बेहतरीन काम लेता भी और देता भी है। अब सवाल यह है कि इसके अलावा बाकियातु सालेहात क्या हैं। पिछले पारे में अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया की आयत पढ़कर आए हैं, माल और बेटे, अल्लाह कहते हैं उनको बाकियातु सालेहात बना लो। आप और मैं बाकियातु सालेहात की अगर एक जुमले में तारीफ करना और पढ़ना चाहे ना, तो इतनी खूबसूरत तारीफ करके चले गए इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हो। इतनी खूबसूरत बात जिसको मैं अगर उर्दू में बोलूंगी तो कभी भी नहीं, मैं इसका हक ही नहीं अदा कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। कैसे भला, क्योंकि हमारी अरबी जुबान से उर्दू जुबान के जो ट्रांसलेशन होते हैं ना, ये वो हक अदा कर ही नहीं पाते। ये एक बस वो एक ढकोसला, एक तीसरी टांग लगाने वाली तो बात है, लेकिन असल चीज नहीं है इसके अंदर जिसको आप महसूस कर सकते हैं। और वो क्या है, पहले उर्दू में ही बोलूंगी ताकि आप इसको एब्जॉर्ब कर सके। वो कहते हैं कि बाकियातु सालेहात क्या है, उर्दू पहले बोल दूं मेरा ख्याल है, वो चीज जो तुम्हारी मौत के बाद के लिए भी बाकी रह जाए। इब्ने अब्बास का कॉल सुन लीजिए, अन इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हा, अन्नहा कुल्लु अमलिन सालेहिन मिन कौलिन औ फेलिन याबकी लिल आखिरती। आपका हर वो अमल सालेह, चाहे वो आपका कोई बोला हुआ जुमला कौल है या आपका किया हुआ कोई काम है, जो आखरत के लिए बाकी रह जाए, वो है अल बाकियातु सालेहात। अल्लाह अकबर कबीरा, दुआ कीजिए मेरे ये बोले हुए लफ्ज इधर ही ना मेरे मुंह पे मार दिए जाएं, यहीं वाह वाह और सुभान अल्लाह और लोगों के फीडबैक और तारीफी जुमलों में ना खो जाए। बाकियातु सालेहात आपकी मेरी हर वो नेकी जो किसी भी अमल में हुई जो आखरत तक पहुंच जाए, और आपके मेरे बच्चे अल मालु वल बनून, सूरत अल कहफ आयत 46, दूसरी चीज लिखी, आपके मेरे माल और बच्चों की वो चीज जो आखिरत में पहुंच जाए, माल भी आखिरत के रस्तों में खप जाए और बच्चे बेटे बेटियां भी आखिरत में लग जाएं, ये हैं बाकियात सालेहात। फिर इसमें कुछ कलिमात है जो आपकी मेरी जुबान पे आते हैं, सुबहानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अजीम। हज़रत अबू हुरैरा से ये रिवायत हमें मिलती है और बहुत सारे खूबसूरत कलिमात हैं जो आपके ज़ाती इबादात से मुतल्लिक हैं, लेकिन इस वक्त जो चीज़ आपके मेरे सामने है अलबाकियतु सालिहात, वो आपका माल और आपके बच्चे हैं। आज आपके सामने एक मैप रखते हैं। बहुत सारे नए साथी ये तकाजा भी करते हैं, उनकी ख्वाहिश बड़ी होती है, हमें अपने बारे में बताइए, अपने स्कूलों के बारे में बताइए, और अल्हम्दुलिल्लाह ही बिनेमती ततीमु सालिहात, हर दिन नए से नए लोगों तक ये कुरान पहुंच रहा है दुनिया में। तो ऐसे बहुत सारे मुतालबे खास तौर पर रमजान में हमारे तक पहुंच रहे हैं कि आप हमें कुछ बताइए कि आप कौन हैं, कहां से हैं, हमें तो हमारी बहन ने बता दिया वहां से आए। तो सिर्फ आपको इस सोच के साथ कि बाकियात सालेहात में आप और मैं कैसे अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करें, आपके सामने एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिख रहा है। ये हमारे वो मेन 5 कैंपस है जो इस वक्त आपको वेबसाइट पे दिखते हैं, बाकी अभी नहीं डले हुए। इसमें अगर आप देखिए, आप राइट साइड से शुरू करें तो सबसे ऊपर यूएसए कैंपस है। इस प्रोजेक्ट का नाम खैरन कसीरा है। अल्हम्दुलिल्लाह सन तो मुझे याद नहीं, एडमिन को याद रहती हैं बातें, वो लिख भी दें। जब हमने रमजान का एक दौरे कुरान अटलांटा से लाइव किया था, ये मुझे पता है कि उम्मत वसत के नाम पैगाम था, वो आज तक पैगाम माशाल्लाह फैलता जा रहा है। तो हर मुल्क का एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, तो अमेरिका का जो बना था वो खैर कसीर था। nrqusa.com मेन वेबसाइट है, आप इस प्रोजेक्ट से मुतल्लिकात सब वहां देखिए। आज ही बल्कि कल शाम को शायद इनके मैसेजेस में देख रही थी कि इन्होंने इस साल रमजान के लिए अपने लोकल्स में जो गरीब हैं वहां इन्होंने राशन प्रोजेक्ट और इसी तरह फूड जो कहना चाहिए कि कुछ इस तरह की कंपेन्स भी शुरू की हुई हैं। रिसेंटली हम अपने उस मेन कैंपस में अल्हम्दुलिल्लाह मूव हुए हैं जो 2 साल पहले बाय किया था, और अब उसको ऑक्यूपेशन हमने उसको ऑक्यूपाइड किया, और मुझे ये भी पता है कि अभी उस पर बहुत थोड़ा सा लोन है और वो सूद वाला बैंकों का लोन नहीं, कर्जे हसन है। मेरे लिए तो वो थोड़ा ही लगता है, लोगों को ज्यादा लगे, लेकिन अमेरिका में रहते हुए साथी अगर अमेरिकन मनी ही में अपना उसमें हिस्सा डालें तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे उस कैंपस में स्कूल क्लासेस चल रही हैं और आगे जो चलना है वो तो क्यामत तक चलेगा इंशाल्लाह। ये खैर कसीर हमारे, इसकी अपनी वेबसाइट है, अमेरिका का हमारा इंस्टीट्यूट सिर्फ एक ही नहीं लेकिन ये जो बाज़ाब्ता मेन इंस्टीट्यूट है वो खैर कसीर है, डिटेल्स आप बाद में देख लीजिए। उसके नीचे आप देख रहे हैं तो नॉर्वे कैंपस है, जहां से इस वक्त आपको पूरी दुनिया में ये पैगाम जो मिल रहा है, और ये पैगाम पिछले लगा लीजिए कि अब 21 हो गया तो 12 साल पहले ये कैंपस अल्लाह ने 1 साल आगे कब कीजिए, अल्लाह की रहमत से ये अल्लाह की ऊंटनी थी जो सिर्फ 1-1.5 साल में बंद गई। आप इसका पेज खोलकर देखिए और सुनिए, इसको हम लिगत कहते हैं। इस वक्त हमारे नॉर्वे से सुनने वाले साथी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अपना हिस्सा अगर डालना चाहते हैं, वो आपको डालना है, हम नहीं कहते आपसे डालें, लेकिन अगर आपको ट्रस्ट है, आपको लगता है कि ये दिन रात का काम और सुबह शाम की चीजें हैं, तो आप काइंडली नॉर्वे का पेज यूज कीजिए। नॉर्वेजियन करेंसी को हम नहीं चाहते कि किसी और करेंसी में जाकर इधर उधर जाए। इवन अगर आपने पाकिस्तान या पाकिस्तान स्पेशली उसके किसी प्रोजेक्ट में भी डालना है जो आगे आपको दिखाने लगे, तो आप डायरेक्ट नॉर्वे के साथ, हमारे साथियों ने जो एक अकाउंट नंबर आपको और विप्स देते हैं, सबको पता है नॉर्वे में विप्स किसको कहते हैं, बहरालों को नहीं पता, डायरेक्ट मनी एक क्लिक में चली जाती है, ताकि आपके $100 में 100 करोन में से वो जो फ्यू ऊपर कटते हैं डिफरेंट ट्रांजेक्शन करेंसी के रेट में, वो भी ना कटे। दोबारा लिगत प्रोजेक्ट के अंदर क्या है इस वक्त, ये भी आज कल में इंशाल्लाह नॉर्वे के ग्रुप्स में वो लिंक शेयर हो जाएगा, और दिन रात जरूरत है। अल्लाह करे कि आप इस स्कूल के इस वक्त जो हमारा एक प्रोजेक्ट में चीजों में सबसे बड़ा है वो यहां की अल्हम्दुलिल्लाह कह लीजिए कि हीटिंग सिस्टम है जो कई साल से हम स्ट्रगलिंग में, एक बिग प्रोजेक्ट है, तो अल्लाह करे कि इंशाल्लाह इसको हम इस साल मेंटेन कर सकें और बाकी चीजों की तरह। इसके बाद आगे चलते हैं तो आपको फर्स्ट तबिकुल खैरात के नाम पे एक प्रोजेक्ट दिख रहा है। ये हमारा अल्लाह की रहमत से पेरिस फ्रांस के बेस्ड कैंपस है। यहां जो हुआ था मुझे सन याद नहीं रहते, आदत नहीं है याद करने की, लेकिन टॉपिक याद रह जाते हैं और वो टाइम मैनेजमेंट था। और अल्लाह ने वहां जो खैर और बरकत दी बहुत प्यारे साथियों की सूरत में, वहां हमारी डिफरेंट चीजें, डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो आती हैं, ये सारी चीजें। तो वहां इंशाल्लाह उसका भी हमारा काफी चीजें, कुछ टोकन जमा करके बैठे में, जिस वक्त अल्लाह का हुक्म होगा हमने वहां भी अपनी बिल्डिंग लेनी है। साथी इतने प्यारे हैं कि दिल चाहता है कि अल्लाह इनको एक ऐसी जगह में बिठा दे कि जहां काम करे, और जो बाकी प्रोजेक्ट चलते हैं उसके अंदर वो तो हैं। इसको आप इनकी वेबसाइट पे nrq.fr पे जाके देख लीजिए, और नॉर्वे की वेबसाइट भी nrq.no। गो के इस वक्त बहुत अपडेटेड नहीं, लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह जल्दी आप देखेंगे कि आपको इस पे बहुत कुछ दिखेगा। आगे चलते हैं तो आइनुन जारिया कौन से होते हैं? फी आइनुन जारिया, जारी चश्मे। अच्छा, इनके नामों का तो समझ आ गया, लिगत नहीं नए साथियों को समझ आता। खैरन कसीर उर्दू में है, लिगत कहते हैं फॉर टुमारो, यानी आपकी जनरेशन के लिए नॉर्वे में काम हो रहा है। फर्स्ट तबिकुल खैरात जो है ये खैर के कामों में आगे बढ़ने का काम है, ये पेरिस वाले कर रहे हैं और सारे ही करते हैं अल्लाह की रहमत से। और ऐनुन जारिया, जारी चश्मा, एक ऐसा चश्मा जो आपके बाद भी जारी रहे। इसके अंडर हमारे यूके के सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। आज इसकी भी मैंने एक मेल देखी जिसमें ये भी कुछ इस तरह का फूड ड्राइव कर रहे हैं, और जो नीडी लोग हैं जो कोविड में और इधर उधर मुतासिर हुए तो उनको चैरिटी के साथ लेते हैं। और ये सब हमारे रजिस्टर्ड इदारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर मुल्क में अल्लाह ने नूरुल कुरान को रजिस्टर्ड करवाया, और अल्लाह इसको क्यामत तक के लिए उन लोगों के लिए बाकिया तो सालेहात बनाए जिन्होंने इसमें हिस्से डाले। यूके में भी लिस्ट पे लगे हुए हैं ये हर बच्चा, किसी का बेबी जल्दी हो गया, किसी का देर से हो रहा है, नॉर्वे का तो फौरन ही हो गया, और कहते पता ही नहीं चला तो बेबी हो गया, लेकिन यूके वाले अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। इनके लिए आप दुआ कीजिए, अल्लाह इन साथियों को ठुकी हुई ईंटें बना दे। जिस दिन ठुक गए और ठुके हुए भी हैं और जम गए, तो आप देखिएगा कि ये तो बिल्कुल एक तोहफे में जगह मिलती हैं। ये हमारी कोशिशों को अल्लाह देखता है, बाकी हिस्सा अल्लाह खुद डालता है। आगे चलते हैं तो अलबरका, जो वाकई बरकत है हमारे स्कूल की। अलबरका पाकिस्तान का हर प्रोजेक्ट अलबरका के अंदर आता है, जिसमें लोगों को ज्यादा जौहराबाद का नाम पता है, क्योंकि इस वक्त जौहराबाद का कैंपस सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं रह गया बल्कि वो एक तहरीक और एक फ्यूचर के बहुत बड़े, कह लीजिए कि अल्लाह की रहमत से बहुत पेशाइंद बातें हैं। अभी तो स्ट्रगलिंग फेज है इस वक्त, वो जगह जो दो साल में पिछले, अब तीसरा रमजान अब आ गया, तो पूरी दुनिया के मैं उन लोगों को सलाम करती हूं, और उनका मैं अपने ऊपर बोझ महसूस करती हूं और खुश भी अब होती हूं। और मैं कहती हूं कि आप जब कभी पाकिस्तान आए दो दिन जरूर आप जोहराबाद के लिए निकाल लें, ताकि वो छोटे छोटे पौधे देखिए जो आप लोगों की कोशिशों से एक गुर्बत के भरे हुए इलाके के इर्द गिर्द प्यारे से शहर जोहराबाद में अल्लाह ने ये काम ले लिया। अब उसी जगह पे दिन रात कहीं रीमॉडलिंग है, कहीं कुछ हो रहा है, क्या कुछ है, बस ये अब लंबी कहानी है। तो उसके लिए भी आप लोग अगर डाले, बहुत जरूरी है, चीजों की कई चीजें होती हैं। और ये अभी मुझे एक मैसेज मिला है कि आप अगर अलबरका के लिए कुछ देना चाहते हैं पाकिस्तान में और आप नॉर्वे में रहते हैं, तो आप प्लीज नॉर्वे का अकाउंट यूज कीजिएगा। यहां हमारे पास अल्लाह की रहमत से बहुत स्ट्रांग सिस्टम है, मनी इसी तरह से आपकी जाती है कि कटती नहीं है, हमारा ये अकाउंट उधर से अफिलियेटेड है। बाकी ये कहते हैं कि इजी पैसा, अगर आप पाकिस्तान में हैं इजी पैसा, और यानी लोकल पाकिस्तान का अकाउंट नंबर भी मौजूद है, वो सब आपको डिटेल्स उसमें मिलती है। अगर आप डालना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए, जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, एक एक पैनी का हिसाब है, लेकिन अगर आप चाहें तो आपके लिए ये एक कह लीजिए इन्फॉर्मेशन है, खबर है। और इसी तरह फिर उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे लिए दूसरी चीज यह कि हमारा एक और मेन इंस्टीट्यूट सियालकोट शहर में, वो उम्र में बड़ा है अलबरका से लेकिन ग्रोथ में जरा छोटा है, लेकिन आगे देखिएगा उसमें क्या कुछ होने वाला है। सियालकोट में हमारा अपना एक ऑनसाइट पे इंस्टीट्यूट है, और उसके साथ बिल्कुल उसका दूसरा जो असल में जो जगह थी जिसकी वजह से ये बेबी मदरसा बना, और वो साइड वाली जगह आप देखेंगे फ्यूचर में अल्लाह ने चाहा तो एक बहुत बड़ा कैंपस बनेगा। तो सियालकोट के लिए टीम तैयार हो रही है, अल्लाह ने चाहा तो वहां भी खुल के काम होगा। तीसरा जो एक और हमारा मेन, जिसको आप कह सकते हैं, वो आप कह सकते हैं कि वो जगह जिसको आप लाहौर कह लीजिए, अलवर जिसको बहरिया टाउन में काफी साल से हमारे कई दो तीन कोर्सेज हो चुके, साथ ही तैयार होते रहते हैं, साथ साथ काम भी होता है। तो अगर कोई क्लासेज आप पाकिस्तान जाएं, आपको लेना हो, कुछ फायदा लेना हो वहां से, तो वो उसका भी इंशाल्लाह हम एड्रेस वगैरह वेबसाइट पे मुझे लगता है कि डाला हुआ है। एक और चीज़ जो पिछले साल से अल्लाह की रहमत से ऐड हुई, बहुत छोटी सी चीज़, यानी मैं इसको तहदीसे नेमत पे बात कर रही हूँ, बेबी है, यानी मैं शर्म से नहीं कहती, सिर्फ जो मुझे पता है शायद डेढ़ है या दो या ढाई होगा, डेढ़ मरले से दो ढाई मरले की एक जगह पर एक घर का एक हिस्सा किसी ने अपनी ये महसूस किया और वहां पे एक स्कूल के लिए एक फाउंडेशन डाली गई। क्लासेस से काम शुरू होता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी स्टोरीज भी आपको इंशाल्लाह कुछ शेयर कर देंगे। अब वो जगह यानी इस तरह फुल हो चुकी है कि आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, और दिन में दो तीन दफा वहां बच्चों की बड़ों की क्लासेस भी हैं, जो मुझे पता है जितना मैं आपको बताती हूँ, बाकी आप जाकर देख भी सकते हैं। और अब उसके साथ एक प्लॉट उनको दिखा हुआ है, जिसको ये खरीद के उसके ऊपर एक जरा सा उससे बड़ा लेना चाहते हैं, क्योंकि मारूफ हो गई जगह और गरीब बस्ती है ये भी, बच्चे छोटे छोटे हैं और वहां स्कूल भी साथ शुरू है, यानी दुनियावी तालीम भी। तो इस साल का इंशाल्लाह एक न्यू बेबी न्यू प्रोजेक्ट यह है कि हमने अल्लाह की रहमत से उस जगह जहां काम करने वाले मौजूद है लेकिन जगह बहुत छोटी है, तो साथ एक प्लॉट लेकर तो उसके ऊपर एक जगह बनाकर तो क्यामत तक के लिए उसको अल्लाह के लिए डिवोट करना है। ये जितनी चीजें आप जानते हैं वल्लाही ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, ये डोनेटेड नहीं है, ये डिवोटेड है। और ये किसी एक इंसान के लिए एक पैनी एक पैसा नहीं जाता इसमें, ये सब कुछ आप ही के इस सारे प्रोजेक्ट में देके चलता है, और ये उन लोगों की कोशिशों से चलता है जो डोनेट नहीं करते, डिवोट होते हैं। तो एक जुमला जो हमने अपने अल्लाह अकबर कबीरा अटलांटा के प्रोजेक्ट से सीखा था कि हिस्सा डालना नहीं है, हिस्सा बनना है। और मैं अपने हिसाब से इस पे ब्लेस्ड हूं अपने इस प्लेटफॉर्म के नाते से कि हमारे सभी साथी हिस्सा डालते नहीं है, वो हिस्सा बने हुए आप सब लोगों की तरह। और इसके अंदर आप जब हिस्सा बन जब आप किसी चीज में आ जाते हैं तो आपका पैसा तो बेशक आप किसी और को भी दे दें। और इसकी गवाही मैं आज सबके बीच में नॉर्वे में बैठ के दूंगी कि इस शहर में सबसे बड़ी टसल वॉर जो चलती है दीनी इदारों के बीच में वो मेंबरशिप है। जिनको नहीं पता उनको भी बताने में कोई हर्ज नहीं है। और जब कोई नया नाम किसी शहर में आता है तो पहले दीनदार इतने परेशान हो जाते हैं कि अब हमारे मेंबर्स वो ले लेंगे। मैं शर्म के साथ नहीं खुशी के साथ कहूंगी 12 साल के बाद भी वो शहर जिसमें मुसलमानों की आज भी कई लाखों की तादाद होगी, एक एक मस्जिद के मेंबर्स इस वक्त हजारों में हैं, और हर साल हुकूमत का एक मखसूस हिस्सा हर 1000 के हिसाब से शायद देते हैं, तीन तीन चार चार छह छह मिलियन क्रोन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उनको। आपके इस नूरुल कुरान का मुझे तो ये भी नहीं पता, जो आखिरी मुझे पता है वो 40-50 लोग थे। हमारे अपनी टीम में जितने लोग हैं वो भी मस्जिदों में है, हमारा ये गोल ही नहीं है। हम गवर्नमेंट से मदद क्या ले लें, और वो मस्जिदों से कहें कटवाएं, वो काटने को तैयार नहीं थे, ना इनको मिलता ना हमें मिलता। हमने कहा जाओ मस्जिदों को दे दो, वो भी हमारी है इंशाल्लाह, वो भी तो दीन का ही काम कर रहे हैं ना। नूरुल कुरान का मकसद पैसे जमा करना नहीं बल्कि सब सदका जारी है। और लोग कहते हैं आपका स्कूल चलता कैसे, अब कोविड की वजह से आप देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हमें एक पैसा भी कोई स्पॉन्सर ना करे। हमारा यकीन है कि ये ईमान और यकीन के साथ चलता है। हमने कभी टसल ही नहीं रखी इस बात की कि हम पैसे को बुनियाद बनाकर लेकर चले, क्योंकि डिवोटेड लोग हैं। तो आप अगर डिवोटेड हैं बिस्मिल्लाह करें। और एक वो चीज जो आपको इस मैप पे नहीं दिख रही और वो मुझे दिखती है हर वक्त और वो हम सबको दिखती है, वो हमारा ऑनलाइन सेटअप है। अल्हम्दुलिल्लाह बिनेमतिही ततीमु सालिहात। पिछला एक साल तो आप सबने भी देख लिया, कोविड ने हमें एक दिन फारिग नहीं रहने दिया। इंस्टीट्यूट बंद हैं, उनके किराए भी जा रहे हैं, उनके खर्चे भी हैं, लेकिन ऑनलाइन पे जिस एक तरीके से इस पिछले एक साल में नूरुल कुरान एक्सपेंड हुआ, ये मैं नहीं कहती, ये आप सब जानते हैं, अल्लाह की रहमत है, कुरान का पानी घर घर जा रहा है। तो ऑनलाइन के प्रोजेक्ट्स जिसमें हमारी वेबसाइट्स हैं, जिसमें ऐप है, इसी तरह इसमें दिन रात जूम क्लासेस हैं, इस वक्त भी जो कुछ है यूट्यूब चैनल्स हैं, ये सब भी वो ऑनगोइंग चैरिटी है कि इसमें अगर आप लोगों में जिसकी जो स्किल है बिस्मिल्लाह कीजिए, आप में सुनने वालों का कोई चैनल है, आप में से किसी का फेसबुक पेज है, आप में कोई टेक्नीशियन है, कोई इन कामों का माहिर है, बिस्मिल्लाह कीजिए, आप वेबसाइट से वॉलंटियर फॉर्म फिल करके हमारी लिस्ट में आए, हम आपके साथ ऑनलाइन के थ्रू पूरी दुनिया तक जाने को तैयार हैं। हमें अपना नाम भी नहीं चाहिए, कई जगह इस वक्त भी ये जा रहा है, आपको शायद अंदाजा है कि नहीं, लेकिन हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ हमारे चैनल्स पे नहीं जाता, क्योंकि कुरान किसी का कॉपीराइट नहीं है, ये कुरान किसी की मिरास नहीं है। दुआ कीजिए क़यामत के दिन ये कोशिशें कबूल हो जाएं। और ये सारे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए हमारे बेहतरीन स्टूडेंट, साथी, स्टाफ और ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह की रहमत से ये समझ चुके हैं कि ये हमारा वाकियात सालेहात है। तो लोग उनको नहीं देते जो मांगते हैं, लोग उनको देते हैं जो देते हैं। आप देते जाइए, लोग मांगते जाएंगे। और ये आगे आपके सामने कुछ वेलफेयर प्रोजेक्ट्स की पिक्चर्स हैं, जिसमें एक हमारा अटलांटा का है और एक यूके का है। तो ये इस साल के रमजान के कुछ ग्लिम्स थे। लंबी बात इसलिए कर दी, आज हो गई, वैसे मैंने नहीं सोचा था, ताकि ये सारे साथी जो बाहर बैठे हमारे पूछते हैं, और एडमिन पे इतना बोझ है कि वो हर एक को अटेंड कर नहीं पा रहे, तो बेहतर था कि ये बात अल्लाह ने ले ली। अल्लाह ताला इसको आपकी मेरी खैर का जरिया बनाए। और ये हैं वाकियात सालेहात, और मुझे तो बस एक ही शौक है कि अल्लाह ताला खैर के नए अकाउंट्स खोलता रहे। ये वो चीजें हैं जो लोगों को, साथियों को और आपको दिख रही थी, आपसे कुछ शेयर कर दी हैं। बहुत सारी चीजें शेयर नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह, जो इधर उधर और भी क्लासेस हैं। क्लासेस तो पूरी दुनिया में हो रही हैं, डिफरेंट मुल्कों में, जगहों में, लेकिन जो आगे मेरे जहन में है, जो मेरे और अल्लाह के बीच में है, मेरे सामने पांच उंगलियों पे, मैं आपको पांच और दूसरी 10 उंगलियों पे गिन के दे सकती हूँ कि अगर जिंदगी रही तो अगले दौरे कुरान में और अगले सालों में आप अगले मुल्कों के नाम देखेंगे। जो लिस्ट पे खड़े हैं, सिर्फ अल्लाह ताला अपने वक्त पे चीजों को लेकर आता है। और दुआ यह है कि अल्लाह दुनिया से जाने से पहले, कब्र में ले जाने से पहले खाली कर दे, डाई एम्प्टी। सारा माल अपना भी अल्लाह के रस्तों में देकर जाए, और अपनी स्किल्स देकर जाएं, अपने घर, अपने वक्त, अपनी औलादों को इस काबिल करके हम जाएं कि फिर हम हटें तो हमारी जगह हमारा एक नहीं दो चार बच्चे बैठे हों। गोदों में बैठकर जो माएं काम करती हैं और जो बाप माशाल्लाह दिन रात इसमें काम करते हैं, उनके बच्चे देख रहे हैं और वो खुद पूछते हैं कि हम कब लारर बनेंगे और हम कब टीचर बनेंगे और हम कब करेंगे। एक बच्चा है वो कहता है मैंने नूरुल कुरान में टीचर लगना है, फिर एक दिन अपनी माँ से कहता है मामा ये मैं टीचर तो बनूंगा तो फिर मुझे पैसे तो नहीं मिलेंगे यहाँ से, तो मामा फिर मैं खाऊंगा कहाँ से। ये 7-8 साल का हमारा एक बड़ा प्यारा सा बच्चा था, अब तो बड़ा हो गया थोड़ा सा, उसको ये पता ही नहीं, अभी बच्चा है ना, आपको पता चल गया कि मन कान लिल्लाही कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका होता है, अल्लाह ने कभी किसी को भूखा नहीं रखा। तो ये थी चंद चीजें आज के इस सारे सफर की। अब चलते हैं आज की हदीस पे, अल बाकियात सालेहात की नजर से। तवील हदीस है और मेरा गुमान है कि आप में हर लिसनर ने सुनी हुई है, स्टूडेंट्स की तो मैं बात ही नहीं करती। हम में से हर एक जिसने कुरान को समझा सीखा वो इसको जानता है। और ये अल्लाह के नबी ने मुआज़ बिन जबल को कही थी जबकि वो एक मुल्क की तरफ जा रहे थे, तो आपने फरमाया जा रहे थे दुश्मन से मुकाबला करने, देखिए किताल था, लेकिन आपने उस किताल का रुख कैसे तबलीग और इबलाग और इल्मी जिहाद की तरफ फेरा। आपने उनको फरमाया कि यूं ही चला जा, जब इनकी सरहद में उतरे तो इन्हें इस्लाम की दावत देना। यह हजरत अली को कहा गया था, और हजरत मुआज़ बिन जबल से भी बिल्कुल इससे मिलती हुई रिवायत भी मौजूद है जो मैंने पहले बोल दिया। ये जुमले आपने हजरत अली से बोले थे रजी अल्लाह अन्हो। फरमाया कि जब तुम इनकी सरहद में उतरो तो इन्हें इस्लाम की दावत देना, और इनको बताना कि इस्लाम के नाते इन पर कौन से काम, अल्लाह की कसम अगर हमारे जरिए से मुसलमान कर दे, यानी किसी एक की जिंदगी में इस्लाम का नूर आ जाए, तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। ये बुखारी रो साइन। पता क्या चला, माल नहीं लोगों की जान, इस्लाम को करना है, और उस दौर के सुर्ख ऊंट को आज की लैंड क्रूजर और उससे भी मल्टीप्लाई कर लें तो 100 जमा कर लें, तो कितनों से लड़ने की झगड़ने की बातें छोड़कर आप अगर काफिरों के तक भी दीन से कह सकती हूँ कि अल्लाह ताला ने दिलों में खैर रखी हुई है। जितना ज्यादा आप अल्लाह के दीन को फैलाएंगे नशरो इशात और इबलाग और तबलीग में और हिकमत के साथ, पैसा जाया नहीं होने देना, लोगों के माल को नहीं समझना, तो आप देखनी जिहाद बहुत बड़ी खैर की कली खिल चुकी हो। अल्लाह ताला आपको मुझे किसी और की भी और अपनी भी हिदायत का जरिया बना दे, और हुए हैं तो अल्लाह ताला हमें इसी पे कायम रखे। अभी आप सुनना चाह रहे हैं हथियार है तो आप कुछ और नहीं कर सकते ना, तो आप हमें दुआ दीजिए कि अल्लाह हमारी नीयतें ठीक रखे, हमारी खैर कायम रहे। पूरे बसीरत के नाम पे है, वो क्या है, रहली सदरी वहली अमरी वाहलोकदतम, मेरा सीना खोल दे और मेरे कान कर दे और मेरी जुबान दे ताकत अच्छी तरह। आयत 28 है सूरत फिरने जाने के लिए थी कि अल्लाह इतनी बड़ी ताकत के सामने जा रहा हूँ कि मेरी जुबान ना लुढ़क जाए, लेकिन आज हम और आप किस लिए मांगेंगे ये कि अल्लाह शरे सदर दे दे, क्या हक है क्या बातिल है, क्या ठीक है क्या गलत है, हमारी बातों में ना कोई आ जाए, सही चीज है तो उसको अल्लाह समझने वाला बना दे। और हम सब इस सोच से मांगेंगे कि अल्लाह ये सारे काम जो हम करने लगे हैं कर रहे हैं इसको हमारे लिए आसान भी कर दे और सीना खोल दे। और मजे की बात देखिए कि इस पूरे पारे में कल्ब का लफ्ज नहीं है लेकिन ना फुआद का लफ्ज है। और बंदों का हक अल्लाह पर ना करे, अल्लाह इसको अजाब ना। मैंने कहा अल्लाह के रसूल मैं को ये से बता दूं, जब में से बाद में पता चलता है वो ये क्या कर दिया। तो फरमाया मत सुना इसी पर बदर के सीने के खुलने के लिए, आने के लिए, गिरहें खुलाने के लिए, और मुझे ऐसी बात करने की तौफीक मिल जाए कि मैं जिससे बात कहूं बात उसको समझ आ जाए, और जो दिल में रखकर किसी से बात करूं वहां से ओके ही हो, नो ना हो, जिसको अपने हाथ में कहते आते आएंगे हम इस पे बात करेंगे। इसी तरह अल-क़ल्ब अद-दाल वल-मफ़्तून का जिक्र है सूरह तौहा आयत 85 में। आज सामरी की बातें हैं कुछ। 28 में अल-क़ल्ब अल-आक़िल की कुछ मजीद चीजें। तो बस यही चंच दिल से मुतल्लिक है। हिदायत के बारे में देखिए तो ये पारा भरा पड़ा। पारा 16 में आपको मैं दिखेगा सूरत मरियम की आयत 58 वमिमन हदईना, जिसका उर्दू तर्जमा क्या है, जिन्हें अल्लाह ने हिदायत बख्शी। फिर मरियम 76 इख्तदौ हुदन, आप देखेंगे आयत 83 से 84 ज़ुल-क़र्नैन का तारुफ है। 85 से 91 में ज़ुल-क़र्नैन की दो मुहिमात का तस्करा मिलेगा। फिर 92 से 98 में तीसरी मुहिम है, और 99 से ज्यादा खसारे में कौन इसका जिक्र है। 108 में आपको जन्नत की नेमतों से जी नहीं भरेगा इसका जिक्र मिलेगा, और 109 में अल्लाह के करामात का शुमार नम है, और आयत 110 जो आखिरी आयत है नरियत का ऐलान है। आइए पढ़ते हैं साथ आयत नंबर 5 से सूरत अल-कहफ बार से 80 सूरत अश-शैतानिर्रजीम। قال الم اقل لك انك لن تصبر आयत नंबर 75 से लेके 79 तक हालात व वाकयात की हिकमत ही है। पूरे पारे का सामने जिक्र आपको मिला कि हजरत मूसा और खिज़र थे, उस हिकमत क्या थी हम वो देखते हैं। वो कहने लगे कि मैंने तुमसे कहा न था कि तुम मेरे कर हरगिज़ सब्र नहीं कर। यहाँ से पता चला कि उस्ताद को हक हासिल है रवैये पे तनकीद भी कर सके और उसकी इस्लाह। सलाम ने जवाब दिया, अगर अब इसके बाद मैं आपसे किसी चीज सवाल तो बेशक आप मुझे अपने साथ न रखना। ताल्लुक बड़ा खूबसूरत है। हम जब ये सुनते हैं तो तकरीबन 20 से 50 के करीब मुख्तलिफ नुक्ते हैं इल्म और ताल्लुम के, मैनर्स और एटिकेट्स ऑफ इल्म, अल्लाह ताला हमें इनसे फायदा उठाने वाला बना दे। अब आगे वो सफर जारी होता है, फिर दोनों पूरा करवाना तो बहुत आसान है, लेकिन ये एक सिंपल सी अल्लाह ने एक फिल बदी किस्म की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कैफियत इधर बता दी। अब उस्ताद को गुस्सा तो नहीं आया लेकिन रूल फॉलो कर दिया। क्या कहा उसने? कहा बस ये जुदाई है मेरे और तेरे दरमियान, अब मैं तुझे इन बातों की असलियत भी बता दूंगा जो तुझसे सब्र ना हो सका। इस जुमले से दो बातें नोट कीजिए कि जब कोई स्टूडेंट मुस्तकिल रूल्स को डिस ओबे करे, हुक्म ना माने, तो फिर हक होता है कि उसको अलग कर दिया जाए, लेकिन नसीहत करनी चाहिए और जाते जाते ये जरूर बताना चाहिए कि आपकी गलती क्या थी। कश्ती तो चंद मस्कीनों की थी जो दरिया में कामकाज करते थे। मैंने इसमें कुछ तोड़ फोड़ का इरादा कर लिया क्योंकि इनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सालम कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था। असूल लिखिए, बड़े नुकसान से बचने के लिए कभी कभी छोटा नुकसान कबूल कर लेना चाहिए। आपके मेरे ऊपर आई हुई आजमाइशों में से एक ये भी सबक आपको मिलता है। कभी कभी जिंदगी में छोटा सा नुकसान होता है, हम परेशान होते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वो किसी बड़े नुकसान से आपको मुझे कैसे बचाता है। इस पे बहुत से वाकयात है जिसके शेयर करने का इस वक्त टाइम नहीं है। आगे देखिए आयत नंबर 80 से 82। टॉपिक लिखिए, अल्लाह ताला नेक माँ बाप को बच्चों की सूरत में आजमा लेता है, कैसे? वामल गुलाम फकान अबावा हुमोमीनैन, और इस लड़के के माँ बाप ईमान वाले थे, हमें खौफ हुआ कि कहीं ये ने अपनी सरकशी और कुफर से आजीज और परेशान न करे, इसलिए हमने चाहा कि इन्हें इनका परवरदिगार इसके बदले इससे बेहतर पाकिजगी वाला और इससे ज्यादा मोहब्बत और प्यार वाला बच्चा इनायत फरमाए। यहाँ से देखिए आजमाइशें नेकों पे भी आती हैं। बच्चे की आजमाइश नेक पे आ गई, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं और ना किसी के बारे में कोई बुरा भला फतवा दीजिए। और दूसरी बात है कि अल्लाह को पता चलता है। यहाँ एक छोटी सी बात, आप जो तनकीद देख रहे हैं ना हजरत मूसा की हजरत खिजर के कामों पे, तो ये छोटी सी बात जो आज के इस टॉपिक से भी मुतल्लिक है, हिदायत की दो किस्में होती हैं, एक होती है तकवीनी और एक होती है तशरीई। चलिए, तशरीई अमूर कौन से होते हैं जो शरीयत से साबित होते हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जो हम कुरान और हदीस में पढ़ते हैं। कुछ उमूर होते हैं जिसको तकवीनी उमूर कहते हैं, कौनो मकान, कायनात, मसलन कौन मरेगा, कौन जिएगा। मूसा अलैहि सलाम के पास शरीयत का इल्म था, जबकि खिजर के पास तकवीनी इल्म था, कायनात की चीजें क्या होंगी, जैसे फरिश्तों के पास होता है। इसलिए कुछ लोगों का गुमान है कि वो फरिश्ते भी थे, तो यहां दो मुख्तलिफ जहते हैं, इसलिए बार बार रेपो नहीं बन रहा और एक दूसरे पर एतराज होता जा रहा है। तो जिंदगी में ऐसे ही होता है, जैसे अल्लाह फरिश्तों को कई काम पहले से बता देते हैं जो हमें नहीं पता होते। तो बहरहाल, और इससे यह भी पता चलता है कि जब ये बच्चा गया तो अल्लाह ने उससे ज्यादा बेहतर अच्छा बच्चा भी उनको अनायत फरमा दिया। आगे तीसरा किस्सा है, दीवार का किस्सा है। यह है कि शहर में दो यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना इनकी इस दीवार के नीचे दफन है। इनका बाप बड़ा नेक शख्स था, तो तेरे रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल लें। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया, ये थी असल हकीकत और इन वाकयात की जिन पर आपसे सब्र न हो सका। यहां आप देखिए, वकान अबू हुमा सालेहन, जिंदगी का असूल बना लीजिए, और हमारे भाई, वो बाप, वो भाई और जो शौहर हैं, जो कमाई लेकर आते हैं, जो घरों में बड़े होते हैं, उनकी नेकियां उनके जाने के बाद भी औलादों के काम आएंगी। खास तौर पे यतीम बच्चों को अल्लाह ताला तन्हा नहीं छोड़ता। आज आप नेक बन जाइए, अच्छे काम कीजिए, अल्लाह ताला आपके बच्चों को आपकी नेकियां बाद में देगा। हमारे असलाफ कोई भी नेकी करते तो अपने बच्चों से कहते, वली जालिक, तेरे लिए कर रहा हूं, और कभी अपने बच्चे में कोई खराबी देखते तो नफिल शुरू कर देते, अल्लाह मेरा बच्चा मेरे आगे क्यों बिगड़ा, इसका तो मैंने कोई कमी की। और इस पे बड़े खूबसूरत वाकया था, ये मैं ये जो आयत बाय तफसीर है और शहरुहुल कुरान, उसमें भी काफी वाकया कोट कर चुकी हूं, और इसी तरह से मजीद चीजें। और इससे एक और चीज भी पता चलती है कि हजरत खिजर ने जो कुछ किया वो अल्लाह के हुक्म से किया। तो क्या पता चला इस सारे किस्से से, कि बदलते हालात में अल्लाह ताला से राजी रहना चाहिए, आजमाइशों में परेशान नहीं होना चाहिए, मामलात को अल्लाह की तरफ डाल दीजिए। और ये वाकया था जाहिर परस्ती के फितने के रद का। आगे अब आखिरी वाकया आता है इस सूरत का, जिसको आप कह सकते हैं किस्से ज़ुल्करनैन, सियासी फितनों से बचने का रास है। ज़ुल्करनैन कौन थे? हजरत, समझिए कि आप ये कह सकते हैं कि ज़ुल्करनैन का तारुफ कुरान में भी है और अहादीस में भी है, नेक और आदिल बादशाह थे। अल्लाह ने इनको बहुत सारे मीन्स दिए थे, रिसोर्सेज, जैसे हमें भी दिए हैं माशाल्लाह। वेस्ट में रहने वालों के पास तो किसी किस्म की कमी नहीं, हमारे अपने मुल्कों में नहीं कमी, अल्लाह ने हर तरह के माल और असबाब से नवाजा हुआ है। लेकिन इसके साथ आदिल भी थे, नेकी और अदल में बहुत थे। इन्होंने अपने माल और अपनी हुकूमत को लोगों को लूटने या उन पर हमले करने का जरिया नहीं बनाया, बल्कि खिदमत खल का जज्बा था। तो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में गए, मुहिमात छोड़ी। इन अगली आयत में हम इनकी तीन डिफरेंट मुहिमात, यानी इनके तीन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का जिक्र करेंगे। और कुछ कहते हैं कि ये ईरान के एक बादशाह का लकब था, लेकिन आपको मुझे इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। बस ये समझ लीजिए कि ज़ुल्करनैन दो सींगों वाला, इनके सर पर एक ऐसी टोपी होती थी जिसमें सींग है। यहां ये जिक्र क्यों आ गया? क्योंकि यहूद ज़ुल्करनैन को अपना मोहसिन जानते थे। एक दौर इनकी हिस्ट्री का ऐसा आया कि यहूद ने फिर इनको दोबारा उठाया था, इसीलिए फिर इन्होंने मक्का वालों से कहकर ये सवाल पूछवाया था। तो आइए जरा इस किस्से को पढ़ते हैं अपने हिदायत के लिए, अपने अमल के लिए। आयत 83 से 85। आपसे ज़ुल्करनैन का वाकया ये लोग दरियाफ्त कर रहे हैं, आप कह दीजिए कि मैं इनका थोड़ा सा हाल तुमको पढ़कर सुनाता हूँ। हमने इसे जमीन में कुव्वत अता फरमाई थी और इसे हर चीज के सामान भी अनायत कर दिए थे। वो एक राह के पीछे चला, क्या हुआ? आयत 86 से 93। ज़ुल्करनैन नेक बादशाह था। हत्ता इज़ा बलग़ मग़रिब अश्शम्सी वजदहा, यहां तक कि सूरज डूबने की जगह पहुंच गया और इसे एक दलदल के चश्मे में गरूब होता हुआ पाया, और इस चश्मे के पास एक कौम को पाया। आपने फरमाया कि ज़ुल्करनैन, या तो इन्हें तकलीफ पहुंचाए या इनके बारे में कोई बेहतरीन रविश अख्तियार करे। इसने कहा, जो जुल्म करेगा इसे तो हम भी अब सजा देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा और वो इसे सख्त तर अजाब देगा। हाँ जो ईमान लाए और नेक अमल करे इसके लिए तो भलाई बदले में भलाई है और हम इसे अपने काम में भी आसानी का हुक्म देंगे। फिर वो राह के पीछे चला यहाँ तक कि जो सूरज निकलने की जगह तक पहुंचा तो इसे किसी ऐसी कौम पर निकलता पाया कि इनके लिए हमने इससे और कोई ओट नहीं बनाई। वह क्या ऐसा ही है और हमने इसके पास की कुल खबरों का इहाता कर रखा है। फिर वो एक सफर के सामान में लगा यहाँ तक कि जब वो दो दीवारों के दरमियान पहुंचा, इन दोनों के परे इसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब भी न थी। कौन थे? आपको इससे क्या पता चल रहा है कि ज़ुल्क़रनैन के अंदर खिदमत खल का जज्बा बड़ी कसरत से था और अल्लाह आज के भी बड़े और हुक्मरानों और लीडर्स को सोशल वर्क करने की और लोगों की खिदमत की तौफीक अता फरमाए और इसी तरह वो अपने मीन्स को इस्तेमाल कर सकें लोगों के लिए। आगे आयत 94-101 में याजूज माजूज के फितने का जिक्र है। कालू या ज़ुल्क़रनैन इन्ना याजूज व माजूज मुफ़सिदून, उन्होंने कहा है ज़ुल्क़रनैन याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतजाम कर दें इस शर्त पर कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। इसने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है वही बेहतर है, तुम सिर्फ कुव्वत और ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम में और इनमें मजबूत पर्दा बना देता हूँ, मुझे लोहे की चादरें ला दो, यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज चलाओ, यहाँ तक कि लोहे की इन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया, तो फरमाए मेरे पास लाओ, इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दूं, बस ना तो इनमें इसके दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत थी और ना इसमें कोई सुराख कर सकते थे। कहा ये सब मेरे रब की मेहरबानी है, हाँ जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे जमीन बोस कर देगा, बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। क्या पता चला सारे किस्से के अंदर, अगर आप इतनी पे थोड़ी सी बात कर लीजिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया की दौलत को दीन की दौलत से अलग नहीं रखा। आप में से खुशकिस्मत है वो लोग जो दुनियावी लिहाज से भी माल वाले, पैसे वाले और अथॉरिटी वाले हैं, और खास तौर पे आप किसी गवर्नमेंट के लेवल पे हैं, आप किसी जगह सदर हैं, वजीर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, डोंट बी गिल्टी। आज हमारे यहाँ गिल्ट दिया गया कि सियासत है ही बुरी चीज और फुलां बुरे हैं। दुनिया के हर बंदे के पास खैर है, हर फील्ड अच्छा है। इवन आप देखिए कि जहां गलत चीजें फन के नाम पे पेश की जाती है वहां भी खैर है। अगर आप में से कोई ऐसा बंदा ये बात सुन रहा है कि जो किसी ऐसी जगह पे है जो फन के नाम पे या एंटरटेनमेंट के नाम पे दूसरों को खुश करता है, तो उसकी नीयत भी तो अच्छी होती है ना, के लोगों को खुश करना नहीं किया। क्योंकि कुरान नहीं खुला, पता नहीं है अच्छे बुरे का, तो फिर आप अपने आप को भी गिल्ट में ना डालिए, बस इस किताब से जुड़ जाइए, फिर देखिए दिन ब दिन क्या होगा। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने उस बादशाह से काम लिया और आज आपको मुझे अपनी अपनी अथॉरिटीज को यूज करना, अपने अपने रिसोर्सेज को यूज करके इंशाल्लाह पूरी दुनिया में अल्लाह के इस कलाम को, कुरान के इस नूर को फैलाना है, क्योंकि आगे क़यामत की बातें हैं। ये सब तो वैसे ही खत्म होने वाला है क्योंकि क़यामत के कुर्ब में जो बातें होंगी उसका जिक्र है आयत 99 में। देखिएगा, इस दिन हम इन्हें आपस में एक दूसरे में गुटमुट होते हुए छोड़ देंगे और सूर फूंक दिया जाएगा, फिर सब को इकट्ठा करके हम जमा कर लेंगे। इस दिन हम जहन्नुम को भी कुफार के सामने ला खड़ा करेंगे, कौन जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थी और अमरे हक सुन भी न सकते थे। क्या पता चला कि वो लोग जो हक को समझने के बाद भी आंखें बंद कर लें तो उनके लिए अल्लाह की पकड़ है। अल्लाह ताला करे कि जिसको बात समझ आ जाए वो अपनी जुबान से और अपने दिल से भी इस इस्लाम को अपने तक तो रखे, दूसरों को बाद में बता दें। पहले तन्हाई में कलमा पढ़ लीजिए, फिर दूसरों के बीच में भी पढ़ लेंगे। अल्लाह को पता है कि आप इस वक्त किस दर्जे पे खड़े हैं, अल्लाह ताला को पता है। और याद रखिये कि कुर्बे क़यामत की अलामतों में से एक याजूज माजूज का खरूज है। यहाँ एक छोटी सी बात जो बड़ी मारूफ और मशहूर होती जा रही है आज मीडिया और सोशल मीडिया के आम होते हुए, हर नई चीज को याजूज माजूज कहते हैं और ये फुलां हैं जी, ये फुलां मुल्क है और फिर दज्जाल फुलां है और कानी आंख तो टीवी की है। आप माजी में जरा सा झांकिए, आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले रशियंस को लोग याजूज माजूज कहते थे उनके छोटे कद और आंखों से, फिर चाइनीज को कहा, बात पता नहीं किस किस को कहते हैं, कोई दज्जाली सिस्टम किसको कहता है। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, आपका मेरा फैसला नहीं है कौन है कि नहीं, आपका मेरा काम है कि उनसे फितनों से बचने के लिए आप सूरह कहफ के इस मजमून को समझिए, दुनिया के दजल और धोखे से खुद को हटाइए और कुरान ने जो कहा उस पर स्टिकॉन हो जाइए हदीस की रोशनी में। और ये साफ दिखता है कि ये सब होगा, हजरत ईसा की हुकूमत आएगी, दुनिया में अमन का दौर दौरा होगा, उस वक्त जब याजूज माजूज निकलेंगे इतने ज्यादा होंगे कि हजरत ईसा अपने साथियों के साथ पहाड़ों पे चले जाएंगे इनसे बचते हुए। फिर उस वक्त जितने वसाइल होंगे उनको हासिल करके याजूज माजूज का मुकाबला किया जाएगा, और फिर अल्लाह की तरफ से एक आसमानी आफत आएगी और ये फिर सारी की सारी नस्ल इनकी खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ताला इन आयात में जहन्नम की जो बातें कर रहे हैं जरा सा देखिएगा कि ऐसे लोग जो दूसरों के लिए तो लगे रहते हैं लेकिन जहन्नम में इनको खड़ा किया जाएगा, तो बड़ी बड़ी बातें करते की बजाय अपनी फिक्र करने की जरूरत है। वो लोग जो अमल में बिल्कुल कोरे होते हैं, अपना अमल ठीक नहीं है और वो ईमान तो खुद ही उनका अपना पूरा नहीं है और दूसरों को ये बता रहे हैं कि ये फलां है ये फलां है, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने हिदायत दी है इस बात की कि अपने आप को तो देखो, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका। तो ये वो लोग हैं जो आज बड़े बड़े नाम कहीं तफक्कुर के नाम पे, कहीं बड़े बड़े कह लीजिए स्लोगन्स के नाम पे दुनिया में ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि ये वैक्सीन भी फलां है, ये भी वो होगी, लेकिन आप में क्या कर सकते हैं अमल। बच्चों को ये सूरह कहफ सिखाइए, पढ़िए, बताइए, खुद सीखिए और इस दजल से निकल जाइए। इवन अगर ये सारा कुछ सच भी है ना, गुमान है कि सच होगा, तो बच जाएंगे ईमान वाले। आप मैं दरिया के आगे बंद तो नहीं बांध सकते, दरिया को रोक नहीं सकते, लेकिन अपना रुख तो मुड़ सकते हैं। तो अल्लाह ताला आगे आयत नंबर 102-104 में हमको खसारे की बात बताते हैं, एतबार के अमल के एतबार से कौन लोग खसारे में। अफ़ाखसीबल्लसीन कफरु अन यत्तखिज़ू इबादी, क्या काफिर ये ख्याल किए बैठे हैं कि मेरे सिवा वो मेरे बंदों को अपना हिमायती बना लेंगे। सुनो, हमने तो इन कुफार की मेहमानी के लिए जहन्नम को तैयार कर रखा है। कह दीजिए कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि अमाल के एतबार से सबसे ज्यादा खसारे में कौन है। वो हैं कि जिनकी दुनियावी जिंदगी की तमाम तर कोशिशें बेकार हो गईं और वो इसी गुमान में रहे कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम, इस वक्त कुरान पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पता चला नीयत खराब थी, रियाकारी थी, दिखावा था, या दूसरों को जो कहते थे वो सच नहीं था, या जो कहते थे उस पर खुद अमल नहीं करते थे, तो ये सब कुछ कल खसारे का जरिया होगा। गोया के शिर्क करने वालों का झूठा एतमाद इधर इन आयात में दिया। आगे आयत 105 से 106, क्यामत के दिन हसरत का शिकार कौन लोग। उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और इसकी मुलाकात से कुफर किया, इनके लिए इनके अमाल गारत हो गए और क्यामत के दिन इनका कोई वजन कायम न करेंगे। कुफर के साथ की हुई नेकियां, सोशल वर्क, चैरिटी वर्क काम नहीं आएगा। हाल यह है कि इनका बदला जहन्नुम है क्योंकि उन्होंने कुफर किया और मेरी आयतों और मेरे रसूलों का मजाक उड़ाया। आयत 107 से 108, अल्लाह करे कि आप सब भी इसी में शामिल हों। ईमान वालों को जन्नतुल फिरदौस की खुशखबरी है। पीछे खसारे वालों की बातें थी, बैंक करप्ट वाले जिनकी जिंदगी जाया हो गई, जिन्होंने अपने जमीर की आवाज को खामोश करा दिया। अगर नेकी का कोई दाइया आया भी तो उसको किसी वहम और शक की नजर डालकर का छोड़ो, ये तो बस अपनी बातें हो रही हैं और सेल्फ प्रोजेक्शन और ये और वो है फलां हो रहा है। ऐसे लोग जो शक शुबे से निकलकर ईमान के यकीन के साथ आए, तो अल्लाह ताला कहते हैं ईमान वालों को जन्नतुल फिरदौस की खुशखबरी दे दो, क्योंकि जन्नत की नेमतों से जी नहीं भरेगा। और यहां नोट कीजिए, ये शायद वाहिद मुकाम है मेरे गुमान में, शायद कहीं और भी हो, कहना फिरदौस का लफ्ज आ रहा है। बस लोग कहते हैं फिरदौस जन्नत कुरान में नहीं, हदीस में, लेकिन इस आयत में आपके सामने है। और आपने फरमाया जब अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, ये वो जन्नत है जो अर्श के बिल्कुल नीचे है और जन्नत में बहने वाली नहरें फिरदौस से ही फूटती हैं और इसकी छत रहमान का अर्श है। अल्लाह हमें अपना कुर्ब अता कर दे। रब इब्न लिंदा का बही तनफिल जन्ना इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति कानत लहुम, जो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने काम भी अच्छे किए, यकीनन इनके लिए फिरदौस के बागात की मेहमानी है जहां वो हमेशा रहेंगे और जिस जगह को बदलने का कभी भी इनका इरादा भी ना होगा। क्यों बदले? आप दुनिया के किसी रिजॉर्ट में चले जाएं, पीसी में चले जाएं, एसी में चले जाएं, डीसी में चले जाएं, आपका दिल नहीं भरता। बच्चे कहते हैं हाय एक दिन गुजर गया, हाय 3 डेज का पैकेज था, हम और दिन रह लें। और इस सभी इतनी तकलीफों दुख वाली दुनिया से तो दिल ना भरा, तो क्यों कहेंगे कि आप वहां दिल भर जाएगा? और यहां फिर आप आ जाइए वापस अपने हिदायत के सफर यजीदुल्लाह के लिए, कि अगर आपको फिरदौस चाहिए तो आमाल भी तो अल्लाह से आला तरीन करने पड़ेंगे। उस फ्लो चार्ट को याद करें जो शुरू में आप देख कर आए हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह इस दुनिया में फिरदौस तक पहुंचने वाले अमल करने की तौफीक दे, और फिर वहां जाकर फिरदौस भी मिल जाए, क्योंकि जन्नत अमल से बनती है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाक की अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अगर सिर्फ ख्वाहिशों और दुआओं से जन्नत मिलती तो फिर तो कोई भी बाहर ना रहता। और अल्लाह हमें जन्नत जरूर दे दे, और वो भी फिरदौस वाली दे दे। आयत 109-110 इस्लाह अमल सालेह की कबूलियत, अमाल सालेह की कबूलियत की शराइत दो हैं, इखलास और इत्तबाए रसूल। और खास तौर पे आयत 109 अल्लाह के कलिमात का शुमार नामुमकिन है। कुल लौ कान अल बहर मिदादल लि कलिमाती रब्बी, कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए तो वो भी मेरे रब की बातों के खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। वो हम इसी जैसा और भी इनकी मदद के लिए ले आए। और ये हर नाम पढ़ने और सुनने के बाद और पढ़ाने के बाद मैं भी कहती हूँ कि अल्लाह तेरे इस नाम का मैं हक अदा नहीं कर सकी। तो सच ये है कि जैसे रब की जात अनफिनिट है और बिल्कुल लामहदूद है, इस तरह उसकी बातें भी हैं। आप कह दीजिए मैं तो तुम जैसा ही एक इंसान हूँ, हाँ मेरी जाने वही आती है या वही की जाती है, सबका माबूद सिर्फ एक अल्लाह है। तो जिसे भी अपने परवरदिगार से मिलने की आरजू हो, इसे चाहिए कि नेक अमल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक ना करे। है तमन्ना जी आप कहिए कि हजारों सजदे मचल रहे हैं मेरी जबीने न्यास में, कभी तो ए हकीकत में आ। अल्लामा इकबाल के शेर का खुलासा दिया आपको, कहते हैं कि अल्लाह मेरा दिल करता मैं तुझे देखूं, कितने सजदे हैं मेरे माथे पे कि जो मैं तुझे देखते ही तेरे आगे झुक जाऊंगा। तो बात यह है कि अभी ये कायनात चल रही है, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, क्या रही है दमा दम सदाए कुन फयाकुन। तो अल्लाह ताला के कलिमात को शुमार में लाया नहीं जा सकता। वक्त में जितनी तरक्कियां हो रही, जैसे अब न्यूक्लियर एनर्जी और इसी तरह एटॉमिक एनर्जी से हम आगे बढ़े, उतने अल्लाह ताला के मौजूदा दिख रहे हैं। हबल कैमरे ने कायनात की गैलेक्सीज की जो चीजें दे दी, ये सब भी अल्लाह के कलिमात में आती हैं। और साइंस की डिस्कवरीज के साथ इस्लाम लोगों को कैसे दिखेगा? आपने मारूफ बात सुनी होगी बहुत ज्यादा नेट पे, इसका जुमला है कि दौरे हाजिर का मुबल्लिग साइंस है, यानी साइंस की इन्वेंशन को देख देख कर गैर मुस्लिम इस्लाम पे आ रहे हैं। तो इससे पहले कि दावत लाए जो हम पढ़ेंगे सूरह नमल में, दुनिया में वो तबलीग करे, हम मुसलमानों को तबलीग करनी है ताकि अल्लाह का के कलाम से जोड़ने का हमें लोगों को अजर मिले, वरना लोग साइंस की बातों से ही अब अल्लाह के दीन पे आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबसूरत सी सूरत पूरी हुई। आगे सूरत मरियम है, वाहिद औरत जिसका नाम कुरान में है, वाहिद सूरत जो एक औरत के नाम पे है, एक नबी की माँ है, और अल्लाह ने इस औरत को मिसाल बनाकर पेश कर दिया। सूरत को आप अंबिया की नामों वाली सूरत भी कह सकते हैं, अंबिया कराम पर इनामात के बयान वाली सूरत मरियम है। आप इस सूरत में 10 अंबिया कराम पर मुख्तलिफ किस्म के इनामात का तस्करा सुनने वाले हैं। और आप इसमें देखेंगे कि इसी की आयत 58 में अल्लाह ताला कहते हैं कि उलाइका अल्लज़ीन अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीय्यीन मिन ज़ुर्रियति आदम, और आगे कुछ अंबिया कराम की हिदायत की बात है, जहां आयत आएगी तो हम वहां इनको इंशाल्लाह देखेंगे। और इस सूरत में आपको बड़ा खूबसूरत सा धीमा अंदाज दिखेगा, खास तौर पे सूरत आल इमरान जैसा अंदाज है। जरा सा एक गो में देखिए आयात का तज़िया। और सूरत मरियम इंसानी जज्बात की अक्कासी करने वाली सूरत है, ह्यूमन टच आपको इसमें बहुत मिलेगा, कभी प्यार कभी मोहब्बत कभी खौफ होगा, और इसमें आपको सादगी के साथ दिखेगा। और इस सूरत के एंड तक पहुंचते हुए आप अल्लाह किन से मोहब्बत करता है इसका भी जिक्र पढ़ेंगे और बहुत कुछ। तो इसकी पहली 1-58 आयात में अंबिया कराम पर इनामात की बात है, 59-63 बुरे और अच्छे लोगों के इंजाम की बात है, 64-65 हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, और 66 से 98 मुशरिकीन मक्का के साथ कश मकश है। इमोशनल सूरा है, जज्बात के साथ सुनेंगे, कोई ऐसी बात नहीं जिसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़े। पूरी सूरत में सिर्फ और सिर्फ आपको मोहब्बत और प्यार और सिर्फ अपने इमोशंस को सामने रखना है। आइए मांगते भी हैं, साथ साथ दुआएं भी, और इसमें बड़ी प्यारी दुआएं भी आएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ हा या ऐन स्वाद, पांच हर्फी हरूफ मुकत्तात हैं और वो सारे इधर है कुरान पाक में, इकट्ठे इधर एक ही जगह। और ये कह लीजिए कि एक तवील मिसाल है अल्लाह के वो नाम, अल्लाह की कलाम का वो हिस्सा जो हमें समझ नहीं आता लेकिन फिर भी हम उसको मांगते हैं। जिक्र रहमती रब्बी का अब्दहू ज़करिया, हरूफ मुकत्तात के बाद आयत नंबर 2, हजरत ज़करिया का अल्लाह को पुकारना। गोया के इसमें आपको बता दिया गया कि अल्लाह से मांगने वाले महरूम नहीं रहते। ये पहली 11 आयतों में हम देखेंगे। ये है तेरे परवरदिगार की इस मेहरबानी का जिक्र जो इसने अपने बंदे ज़करिया पर की थी। क्या की थी? आयत 3-5, अल्लाह से चुपके चुपके दुआएं सुनिए। इस नादा रब्बहु निदान खफिया, जबकि इसने अपने रब से चुपके चुपके दुआ की थी कि मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और सर बुढ़ापे की वजह से भड़क उठा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा। मुझे अपने मरने के बाद अपने कराबत वालों का डर है, मेरी बीवी भी भांज है, बस तू मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा। आ जाइए पारे के थीम पे, मुश्किलात की हकीकत, आजमाइशों की हकीकत। बुढ़ापे तक औलाद ना मिले तो लोग इसको एक आजमाइश कहते हैं। देख लीजिए बूढ़े ज़करिया अलैहिस्सलाम मायूस नहीं है, आप भी मायूस ना हो, चाहे डॉक्टर्स आपकी बीवी को बांच भी कह चुके हों, ये है आजमाइशों में से निकलता हुआ अंबिया कराम का ईमान। मायूस नहीं होना, आखिरी दम तक अल्लाह ताला के साथ उम्मीद रखिए, क्योंकि आयत 3-5 इज नाद रब्बहु निदान खफिया, चुपके चुपके पुकारिए, ब्राह रास पुकारिए, बीच के सारे साहब के लखके उठा दीजिए, औलाद लेने के लिए दर दर पे मत थके खाइए। आपका रब खुद आपको पुकारता है तो आप उसको छोड़कर दूसरों के पास क्यों जाते हैं? ये मनाजात वाला अंदाज है, यकीन वाली बात है, असबाब के बगैर भी अल्लाह दे सकता है। इस एहसास के साथ जब आप जियेंगे तो याद रखिये, जब ईमान इस दर्जे पे पहुंचता है तो होता भी ऐसे ही है। अल्लाह बड़े ईमान वालों के साथ वो नहीं करता जो आम लोगों के साथ करता है, अल्लाह ताला उनके साथ फिर मौजज़ात करता है। अल्लाह ताला हमें भी ईमान के इसी दर्जे पे कायम रखे। आयत 6, औलाद के पसंदीदा होने की दुआ है। आप भी कभी औलाद के लिए दुआ मांगे तो ये दुआ कीजिए। हम कहते हैं औलाद ना हो, संभाले नहीं जाते, पाले नहीं जाते, आपने क्यों अपने हाथ में लिया ये दो काम? आप ये दुआ कीजिए कि अल्लाह चाहे 10 बेटे दे, 20 बच्चे दे, जितने भी दे, आज तो हमें इस पे भी शर्म आती है, 4 से ज्यादा होने लगे तो दुआ मांग लीजिए। क्यों? यरिसुनी व यरिसु मिन आली याकूब, जो मेरा भी वारिस हो, याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान का भी वारिस हो, यानी जानशीन, और मेरे रब तू इसे मकबूल बंदा बना ले, कबूलियत डाल दे इसके लिए दिलों में। अपने बच्चों को ये दुआ दिया करें, क्योंकि मोहब्बतों की और कबूलियत की नेमत मिल जाए आपकी औलाद को तो ये दीन के बड़े अच्छे दाई दीन बन सकते हैं। और खुशी हो आपको तो इसी की हो कि चलें इस बात पे बच्चे से कोई अल्लाह दीन का काम ले रहा है, और अल्लाह ऐसा ही कर देता है जो आप सोचते हैं। आयत 7-11 में खुशखबरी पर शुक्रगुजारी और तस्बीह करने की बात है। या ज़करिया या इन्ना नुबशिरु कभी गुलाम इन इस्मुहु यहया, ए ज़करिया हम तुझे एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहया है। हमने इससे पहले इसका हम नाम भी किसी को नहीं किया, यानी यूनिक नाम है। ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे, मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांच और मैं खुद बुढ़ापे के इंतहाई ज़ोफ को पहुंच चुका हूँ। बड़े अदब के साथ अगर कोई पूछे कि फिर मांगा क्यों था, पहले मांगा और मिल गया तो फिर, ये है इंसानी जज्बात। सूरत माए मरियम ह्यूमन इमोशन से भरी पड़ी, रिफ्लेक्सली बोल उठे। आप देखिए इस नादा, इसका लफ्ज और इजा का फर्क लोग जानते हैं, जो स्टूडेंट है हिकमतुल बालिगा में वो जानते हैं कि फौरन दुआ मांग ली। आप देखिए कि हम पहले दावतनामे बांटते हैं, फिर बड़े से मामले ठेले रखते हैं, फिर दही बड़े लगाते हैं, फिर कहते हैं सारे बैठकर कुरान खानी करो, फिर एंड पे दुआ करेंगे। ये आज जितना इस्तेमाल हो गया ना हमारे यहाँ दुआ कराने में, मर गया कोई तो दुआ करानी, किसी का इसाल है तो दुआ करानी, और शादी से पहले एक दर्स छोटा सा और लंबी सी दुआ करानी है कि शादी बड़ी अच्छी हो जाए और सारे इंतजाम बड़े अच्छे हों। ये सब रसूमात हैं। मरने वाले की फिक्र कम, इंतजाम की फिक्र ज्यादा लग जाती है। हमारा मसला यह है कि हमने आज हर मौके को ओकेजन बना लिया है। लिखिए, जिसको दुआ मांगने का मौका मिल गया वो बदबख्त नहीं रहता, अल्लाह के नबी की हदीस की रोशनी में, चाहे दुआ कबूल ना भी हो। फिर आजजी से मांगी, सादगी से मांगी, आज हमने दुआ कल्चर ही बदल दिया। फलां बड़ी प्यारी दुआ कराता है, वो बड़ी कराता है, ये नहीं वो नहीं। हजरत जकरिया ने दुआ मांगी, जोफ की बातें कर दी और अल्लाह ने क्या कहा, इरशाद हुआ कि वादा इस तरह हो चुका, तेरे रब ने फरमाया कि मुझ पर तो ये बिल्कुल आसान है, और तू खुद जब के कुछ ना था तो मैं तुझे पैदा कर चुका हूँ, यानी बीवी बांझ है और तू बूढ़ा है, तो क्या हो गया, मैं तो इस पे भी कादिर हूँ कि कुछ ना से भी कुछ कर दू। तो याद रखिये, ये यकीन बंदे को अल्लाह की निगाहों में बड़ा बना देता है। कहने लगे, मेरे परवरदिगार मेरे लिए कोई अलामत मुकर्रर फरमा दीजिए। इरशाद हुआ कि तेरे लिए अलामत यह है कि बावजूद अच्छा भला होने के 3 रातों तक किसी शख्स से बोल न सकेगा। क्यों, क्या गूंगे हो गए थे नौसबिला? नहीं। लिखिए, एक जुमला जिम है, जो लोग नेमतों के सांस में डूब जाते हैं उनकी जुबान गुंग हो जाती है। आज का कोई होता तो कहता, बेबी शावर रखो, सारे खानदान में लड्डू बांटो, कि बुढ़ापे में अल्लाह ने उम्मीद दिला दी। नहीं, खुशी वो जो हाथ में आ जाए। इस तरह का छिछोरपन नहीं करना चाहिए। आज तो बच्चे बच्चे को बता दिया जाता है कि कुछ होने वाला है और एक मेहमान आने वाला है, ये हया से बड़ी भी बातें हैं। खुशखबरी पाने के बाद क्या हुआ, अब ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आकर इनको इशारा करते हैं कि तुम सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो। क्या पता चला, जितनी नेमतें मिलती जाएं उतनी जिंदगी में तस्बीहात बढ़ती जाएं। कौन सी तस्बीहात? कौली, फेली, माली। और इसका फर्क अल हिकमतुल बालिगा के स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं, सूरतुन नसर की तफसीर में, कि अल्लाह के रास्ते में अगर जुबान से सुभान अल्लाह कहते हो तो अपने अमल से भी करो और अपने माल से भी करोगे तो अल्लाह तुम्हें हवाओं की तरह खैर फैलाने वाला बना देगा। आगे कुछ जिक्र है खूबियों से माला माल बेटे का, आयत 12 से 15। या हुजिल किताब अभी कुव्वा, देखिये यकीन से मांगी हुई दुआ नबी की तो बेटा भी कैसा खूबियों वाला मिला। हजरत याह्या की अजमत का बयान है इन सारी आयात में। ए याह्या, मेरी किताब को मजबूती से थाम ले, और हमने इसे लड़कपन में ही दानाई अता फरमा दी और इसे अपने पास से शफकत और पाकीजगी भी। वो परहेजगार शख्स था और अपने माँ बाप से नेक सलूक करने वाला था, वो सरकश और गुनाहगार न था। इस पर सलाम है जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन वो मरे और जिस दिन वो जिंदा करके उठाया जाए। क्या पता चला कि अल्लाह ने बेटा ही नहीं दिया, खूबियों वाला बेटा दिया, नरम मिजाज, पाकीजा किरदार का, अल्लाह से डरने वाला, वालदैन से अच्छा सलूक करने वाला, नफरमानियों से बचने वाला। विलादत से लेकर वफात तक उस पर सलामती छाई रही। क़यामत के दिन सलामती वाला होगा। अल्लाह ऐसी ही औलादें अता फरमाज हमें भी कि जो सिर्फ औलाद आंखों की ठंडक ही ना हो बल्कि हकीकत में वो हमारे दिल की बहार भी बन जाए। आगे आयत नंबर 16 से 26, हजरत मरियम का किस्सा भी है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बगैर वालिद के मौजज़ाना विलादत का जिक्र भी है। और साथ ही पारे के थीम के साथ रख लीजिए कि मरियम पर जो आजमाइश पड़ी दुनिया की किसी औरत पे नहीं पड़ी। एक कुंवारी बच्ची को अल्लाह इस तरह आजमा ले, आज तो उनके नाम पे जिन्होंने अपने आप को जोड़ा उन्होंने तो कल्चर बना लिया ना कि आउट ऑफ वेडलॉक बगैर शादी के बच्चे पैदा करना, लेकिन मरियम तो बड़ी ही पाक बच्ची थी तो अल्लाह ने कैसी आजमाइश डाली और उसमें से फिर खैर ईसा की सूरत में निकली। बस कुरफिल किताब ही मरियम, इस किताब में मरियम का भी वाकया बयान कीजिए, जबकि वो अपने घरों घर के लोगों से अलहदा होकर मशरकी जानेब आई और इन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया। फिर हमने इसके पास अपनी रूह यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, बस वो इसके सामने पूरा आदमी बनकर जाहिर हुए। ये कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तू कुछ भी अल्लाह से डरने वाला है। उसने जवाब दिया कि मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूँ, तुझे एक पाकीजा लड़का देने आया हूँ। कहने लगी, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है, मुझे तो किसी इंसान का हाथ तक न लगा और न मैं बदकार हूँ। इसने कहा, बात तो यही है लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है जो मुझ पर बहुत ही आसान है, वो तो हम तो इसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे और अपनी खास رحمت یہ ایک طے شدہ بات ہے، پس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر درد زے سے کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی، کیا زردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے ترو تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے کوئی بات نہ کروں گی۔ کیا ہوا آگے کہانی بڑھتی ہے، 27 سے 29، حضرت مریم اور خاندان کی باتیں۔ فتت بھی قومہ تحملہ، اب عیسیٰ علیہ السلام کو لیے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں، بس کہنے لگیں مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، سب کہنے لگے لو بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے باتیں کریں۔ آئے 30 سے 36، حضرت عیسیٰ کا پہلا کلام، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، پہلے دنیا میں، آج آسمان میں، پھر دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اشارہ ہے اس کی طرف، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک بھی میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، زندہ کھڑا کر دیا جاؤں، سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے واقعہ، یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک اور شبے میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ بالکل پاک ذات ہے، وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ یہاں آپ دیکھیے واقعہ پورا ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بے مثال کردار ہیں، خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے موجزانہ ولادت کا ذکر، آپ کو مجھے اس طرح ایک انسینٹو ملتا ہے جو آپ سب کو پوائنٹ آؤٹ کروں گی۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی عیسائی یعنی کرسچینٹی یا یعنی تسلیس جو بھی کہہ لیجئے رکھنے والے لوگ ہیں، تو ان کو یہ آیات بہت پیارے طریقے سے بتائی جا سکتی ہیں، ہسٹوریکل ہیں، کہانی کی صورت میں بتائیں، عقیدہ بھی کھل جائے گا، خوشی بھی ان کو ہوتی ہے۔ میں نے جب کسی کو بتایا تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتاب میں جیزس کا ذکر ہے، میری کا ذکر ہے، تو میں نے کہتی ہوں وہ تو ہمارے بھی نبی ہیں، تو اور بھی حیرت ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو انیوژل بات تھی، اس کو آج کے بعد کوئی اپنے لیے نہ سمجھے کہ جی میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو گیا۔ بے حیائی اور فحاشی جب عام ہوتی ہے تو کنواری بچیاں مائیں بننے لگتی ہیں، اور پھر بعد میں اس کے طریقے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نسلوں کے بگاڑ سے بچائے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی گود میں جو گفتگو تھی، اس نے آج کے سارے کرسچینٹی کے جو عقائد ہیں اس کو پیچھے ڈال دیا کہ وہ بچہ خود کو اللہ کا بندہ کہتا ہے تو وہ پھر خود خدا یا خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ معجزہ تھا۔ بی بی مریم پہ اتنی بڑی آزمائش آئی، ذرا سے آج کے سناریوں میں اس کو سمجھیے۔ آج تو اپنے ہی گناہ کی یادگار کو چھپانے کے لیے ڈاکٹرز کے پاس پھر مائیں بھی لے جاتی ہیں اور بچیاں خود جاتی ہیں کہ ابارٹ کرا دو۔ اب ہم اس گناہ کی یادگار کو کہاں قائم رکھیں، بے عزتی ہوگی۔ کبھی کبھی ماں باپ کو بچوں کو دوسرے ملکوں میں بھیجنا پڑتا ہے۔ کیا حضرت مریم جب پریگننٹ ہوئی اور اتنی بڑی آزمائش، کیونکہ عورت کی سب سے بڑی چیز عزت ہوتی ہے اور وہ بھی ایک کماری عورت کی، مریم اس بچے کو ابارٹ کرا دیتی؟ اس دور میں بھی تو کچھ نہ کچھ طریقے ہوں گے نا، لیکن اس نے اس کو اللہ کا حکم سمجھا۔ اللہ نے اس کا تحفہ کیا دیا کہ ایک بچے نے اس عورت کی بے گناہی کو ثابت کیا۔ یہ ہے ایمان اور آزمائش کا تعلق، جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا آپ کے ساتھ اللہ کا تحفہ بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ پہ نظریں لگانے والوں کو اللہ وقتی طور پہ آزما لیتا ہے، لیکن بعد میں ان کے ساتھ معاملہ اچھا کرتا ہے۔ اب آگے آیت 37 سے 40 لکھیے، حضرت عیسیٰ کی موجزانہ ولادت کو ना मानने वालों का इंजाम, यानी यहाँ से बनी इसराइल के मुख्तलिफ गिरोहों का, उनकी गिरोह बंदी का भी मामला हो रहा है। और यहाँ ये भी याद रखिये कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की हया को आज के दौर में गैर मुस्लिमों के नहीं अपनी मुसलमान बच्चियों के भी हया का जरिया बनाया जा सकता है। आप उनको सूरत नूर क्यों पढ़ाते हैं जिसमें डायरेक्ट वो बातें हैं जो आखिर में बताने वाली हैं? आप उनको सूरत मरियम पढ़ा दीजिए। आज हमने हया फिल्मों से सीखी, उछलती कूदती बेतुकी हरकतें करती भी हीरोइनें हैं, इसीलिए बच्चियां कहती हैं हमें हया वाला नहीं बनना क्योंकि वो तो बड़ी हवनक होती हैं। हया ये थी जो मरियम का तन्हाई में एक शख्स की सूरत में फरिश्ते का आना देखकर देखा। और इसी तरह से इसमें मजीद बातें हैं जो हम इस पर मजीद गौर फिक्र करें तो समझती हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि बनी इसराइल ने इस वाक्य को किस नैरियों में लिया। बिल्कुल बिखर गए। कैसे? फिर ये फिरके आपस में इख्तलाफ करने लगे। बस कुफार के लिए वहील है एक बड़े सख्त दिन की हाजिरी। क्या खूब देखने सुनने वाले होंगे उस दिन जबकि हमारे सामने हाजिर होंगे। लेकिन आज तो ये जालिम लोग सरी गुमराही में पड़े हुए हैं, तो इन्हें इस रंजो अफसोस के दिन का डर सुना दीजिए जबकि काम इंजाम को पहुंचा दिया जाएगा और ये लोग गफलत और बेईमानी ही में रह जाएंगे। खुद जमीन के और तमाम जमीन वालों के वारिस हम ही होंगे और सब लोग हमारी ही तरफ लौटा कर लाए जाएंगे। तो आपने मैंने बिल आखिर अपने रब को इसके सामने आना है। हाईलाइट करना चाहें तो कर लीजिए इस आयत को, आयत 43। इन नाहन रिसोल अर्द वमन अलैहा व इलैना युरजाउन। क्या पता चला कि इस दुनिया में जो माल असबाब भी जमा करके छोड़ जाएंगे विरसों में विरासत में, कल अलवारिस को मिल जाएगा। अल्लाह का खूबसूरत नाम है। बहुत सारे झगड़े आज हमारी और हमारी बहुत सारी आजमाइशें जो खास तौर पर सगे भाई बहनों के बीच में है ना, वो जायदादों की हैं, विरासत की हैं। तो आज ऐसी आजमाइशों को निकालिए। खून खून होता है, ब्लड इज थिकर देन वाटर। और यहां ये भी बात कह दूं, एक सवाल कीजिए, क्या मैं अपने पीछे विरसा छोड़ रही हूं या विरासत? फर्क क्या है? हेरिटेज और हेरिटेज छोड़ती हूं या अपने पीछे मैं कुछ मालो दौलत छोड़ती हूँ? बामकसद लोग हेरिटेज छोड़ते हैं, विरसा होता है उनका। अंबिया कराम का भी वही है, इल्म वालों की भी यही शान है कि अपने पीछे इल्म के विरसे छोड़कर जाएं। और बाकी लोग कोठियां बंगले छोड़ भी जाएंगे तो बाद में उसमें रहेगा कौन? अल्लाह ताला हमारी कोशिशों का रुख ठीक कर दे। वो चीजें जो कल हमारी आखिरत संवार सकती थी अगर दुनिया में बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल करते, हम अपने पीछे उन बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं जिनको उसकी परवाह भी नहीं है, दिल नहीं भरता, जिनके बस इतना है उनको और देने को दिल चाहता है। और वो अल्लाह का दीन जिसके ऊपर आप देखिए इस वक्त कितनी उंगलियां उठती हैं और क्या हालात हैं दीन के, उसको देने को फिर हमारा दिल 2.5% से ऊपर नहीं उठता और फिर गिले शिकवे छेड़ते हैं कि अच्छा फिर ज़कात भी दे सकते हैं दीन के मामलात में कि नहीं। अल्लाह के बंदो, तुम्हें दीन क्या लगता है? जितना आप दीन की इज्जत करेंगे आपको दीन उतना कीमती लगेगा। अल्लाह ताला हमारे किबले दुरुस्त कर दे। ये फिकी बातें नहीं होती, अपने दिल से पूछिए। और आप पूरा ही सौ क्यों नहीं अल्लाह के नाम पे करते अपनी जिंदगी में? आपको अल्लाह पूरा ही खपा ले, आपकी नस्लें भी दीन में खप जाएं, क्या अल्लाह आपको जाया कर देगा? आप देखिए हम बैंकों के नाम पे कितना ट्रस्ट करते हैं ना, पूरी पे चेक बैंक में चली जाती है, कभी नोट देखा ना हो, कागजों पे और कार्डों पे खेलते हैं क्योंकि यकीन है ना कि बैंक से जब मांगेंगे दे देगा। अल्लाह पे सिर्फ इतना भी यकीन आ जाए तो हकीकत में फिर हम विरसे ही छोड़कर जाएंगे, हम अपने पीछे मालोस बाप छोड़ने से ज्यादा। आगे आयत 41 से 50 तक आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा मिलेगा। यहाँ तरतीब नहीं है लेकिन असल में बात है, लिखिए हिकमत भी तो है ना कुरान की एक एक आयत में। हजरत मरियम आजमाई गई बच्चे के जरिए, आगे दिख रहा है आपको अपनी आजमाइशों के बाप में, नोट कीजिए, इब्राहिम आजमाए जा रहे हैं बाप की सूरत में। और आपको ये पूरी सूरत दिखाएगी कि अंबिया कराम भी इंसान थे, कैसे मुख्तलिफ रिश्तों से आजमाए गए, अगर आप में आजमाए जा रहे हैं तो क्या बड़ी बात है। तो इब्राहिम की तरफ से हक की दावत अपने वालिद के लिए, वस्कुर फिल किताब इब्राहिम, इस किताब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कीजिए, बेशक वो सच्चाई वाले पैगंबर थे। जबकि हमने अपने बाप से कहा, जबकि उन्होंने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान आप इनकी पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं जो न सुने न देखें, न आपको कुछ भी फायदा पहुंचा सके। सोचिए बात तो दिल लगती है। अगर बाप दादा से कभी बंदा ना देखे ये सब कुछ पूजा पाठ करता तो कभी ना करे। देखिए, क्या आप अपने सामने रखे गुलदान को पूजेंगे? बेवकूफी की बात है। मैं अपने सामने रखे इस माइक को सजदा करूंगी? ना समझिए मेरी। तो अगर इस पे दो आंखें डालकर इसकी शेप बनाकर इसको मैं एक बुत की शक्ल दे दूं तो पूजूं? पढ़ा लिखा बंदा तो ये नहीं करता, ये तो सिर्फ बाप दादा के दौर से करते कराते आज हमारे तक पहुंच गया, वरना अकल तो कभी ना माने इसको। तो हजरत इब्राहिम ने उनके इंटेलेक्ट को छेड़ा कि कभी तुमने सोचा ये सुनते हैं, ये देखते हैं, कभी आपको फायदा देते हैं? मेरे मेहरबान बाप, आप देखिए मेरे पास वो इल्म आ गया जो आपके पास आया ही नहीं, ये कमी है, इसको ले लीजिए। कब्र अपनी, दुनिया अपनी, जन्नत अपनी, जहन्नम अपनी, नवर्ग अपना, स्वर्ग अपना। दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे आग से बचा ले। सिर्फ बाप दादा, देखिए वैसे लगती नहीं है रिश्तेदारों से, कहाँ अच्छे लगते हैं अपने बड़े, और बड़ों की बातें कहाँ अच्छी लगती हैं, उनके तौर तरीके कहाँ अच्छे लगते हैं, उनकी रोक टोक कहाँ अच्छी लगती है। और फिर क्या हम सिर्फ उनका नाम लेकर वो बात जो अकल में भी आ जाए उसको भी ना माने? तो तन्हाई में भी अगर बंदा अल्लाह को कह दे कि मालिक मैं मान जाता हूं ये बात कि तेरे सिवा और कोई नहीं, और मैं झूठे सहारे के बीच में रखूं, तो यकीन कीजिए सिर्फ एक लम्हे का फैसला होता है। और इब्राहिम उसी की कोशिशों में दिखते हैं। प्यार कितना है बाप से, मेहरबान बाप। तबलीग कीजिए हिकमत से, प्यार से कीजिए। और खुद ही शर्मिंदा भी नहीं कर रहे? हाँ नहीं अब्बा जी, असल में आपके सिल्म नहीं है ना, तो आप मेरी ही ना माने, मेरी ही माने, कॉन्फिडेंस देखिएगा, तो आप मेरी ही माने, मैं बिल्कुल सीधी राह की तरफ आपकी राहबरी करूंगा। ये डर चाहिए, आज भी ये बखा की कैफियत होगी तो जरूर लोगों को आपकी बात समझ आएगी कि भाई मैंने आपसे क्या लेना देना है, कोई मेरी जन्नत में जगह कम हो रही है जो आप ले रहे हैं? मुझे तो आपसे मोहब्बत है, मुझे आपसे प्यार है। तो ये दर्द मंदी आज भी लाई, और अपना भी यकीन न रखे कि मैंने कौन सा जाना है, चले कोशिश करते हैं मिलके अच्छे काम करेंगे तो जन्नत में जाने की नीयत और ख्वाहिशें रखते हैं। और इसके बाद फिर आप देखिएगा कि जब दिल में प्यार आता है ना तो तासीर भी आती है। कुछ लोगों की बात समझ क्यों आ जाती है? क्योंकि वे दिल से बात करते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। तो कॉन्फिडेंस के साथ पुकारा, बाप के बारे में मजीद बातें, मेरे अब्बा जान आप शैतान की परस्तिश से बास आ जाएं। ये क्या हुआ, बाप तो नहीं शैतान की पूजा करता था? तो हदीस लिख लीजिए, हर बुत के पीछे शैतान होता है। सजदा करने वाला, झुकने वाला, मांगने वाला बुत से मांग रहा होता है, लेकिन पीछे शैतान उससे खुश हो रहा होता है। शैतान तो रहमो करम करने वाले रब का बड़ा ही नाफरमान है। अब्बा जान मुझे खौफ लगा हुआ है कि कहीं आप पर कोई अजाब इलाही ना पड़े। क्या आप शैतान के साथी बन जाए? तड़प के दुआ कीजिए, अल्लाह इतने प्यारे लोग हैं जो अभी तक इन चीजों में पड़े हुए हैं, अभी इस्लाम से दूर हैं, ऐ अल्लाह उनको भी या अल्लाह साहब से बचा ले। अल्लाह हमें समझ आई, उनको भी समझ आ जाए, और हमें समझ आ गई है तो अब हमें अमल की तौफीक भी दे। अब बाप का जवाब सुनिए, बेटे की मोहब्बतें देखिए, अब बाप की कठोरपन देखिए। तासुब होता है ना और नफरत होती है, और बाप दादा की चीजों को बंदा प्रमोट करता है ना तो फिर ऐसे ही होता है। इसने जवाब दिया कि इब्राहिम, क्या तू हमारे माबूदों से रूगर्दानी कर रहा है? सुन, अगर तू बास ना आया तो मैं तुझे पत्थरों से मार डालूंगा। लार्जुमन्न का लफ्ज है आपके सामने आयत में, आयत नंबर 46 में अगर आप देखें तो लार्जुमन्न का, रजम कर दूंगा तुझे, जा एक मुद्दत तक मुझसे अलग रह जा। गाली डांट टपट सहनी पड़ेगी। हमदर्दी है, प्यार है आपको अपने प्यारे, जिनसे आपको प्यार है आपको उनके लिए तड़पना पड़ेगा। सुनिए जरा जवाब बेटे का, कहा अच्छा तुम पर सलाम हो। अल्लाह हो, बाप को इस्लाम पसंद कोई नहीं, बेटा उनको सलाम दे रहा है। ये तड़प होती है जब आप खुद अच्छी चीज खा रहे होते हैं, प्यारों के बगैर नहीं खाई जाती। तो जब आपको किसी से प्यार होता है तो आप इस्लाम की बरकतें खुद अकेले नहीं समेटना चाहते। मैं तो आप अपने परवरदिगार से आपकी बख्शिश की दुआ करता रहूंगा, वो मुझ पर बेहद मेहरबान है। यानी जिंदगी जिंदगी तो करूंगा, फिर आप चले गए तो फिर आपका नसीब। मैं तो तुम्हें भी और जिन जिन को अल्लाह के सिवा पुकारते हो इन्हें सब को छोड़ रहा हूं। यानी मैं तुम्हारी किसी गलत चीज में शरीक नहीं होगा, मोहब्बत के नाम पे, बाप के नाम पे, दोस्ती के नाम पे, रिश्तेदारी के नाम पे। कितना क्लियर अकीदा है इब्राहिम का। जब आप उनकी गलत चीजों में चले गए तो फिर आप उनको रोकेंगे किस चीज से? या मुसलमानों के लिए भी लम्हा फिक्र है, अपने मुसलमानों को गलत चीजों में नहीं छोड़ पाते तो फिर बाद में आपकी तबलीग में असर आना कहां से है? कोई असर नहीं रहेगा आपकी बात में अगर आपके अमल ने आपको पीछे छोड़ दिया। सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा, यानी मैं बीच में सबके लाके नहीं लूंगा। यानी जब तुम कहते हो कि ऊपर वाला एक है वो है, तो बराह रास्त मांग लो, बीच में ये बुत निकाल दो तो तुम हम एक है, फर्क क्या रह गया पीछे। मुझे यकीन है कि मेरे मैं अपने परवरदिगार से दुआ मांग कर महरूम न रहूंगा। दूसरे नबी का अकीदा सुन लिया आपने, पहले ही जकरिया ने कहा, अब इब्राहिम कह रहे हैं, बीच में मरियम ने भी यही दलील दे दी। अल्लाह हमारा भी ऐसे ही अकीदा कर दे कि हम जो मांगे रब हमें देता है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन सबको और अल्लाह के सिवा इन सब के माबूदों को छोड़ चुके, हाईलाइट कीजिए, छोड़ना पड़ता है, ये सलामे मुतारका होता है। गलत चीजों को थामे रहेंगे, कभी लोग गलत नहीं छोड़ेंगे, वो तो पकड़ कर फिर आपको भी कहेंगे, देखा खुद आप भी तो आ गई थी ना, चाहे आप वैसी दोस्ती के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे जाकर बैठ गई, लेकिन अल्लाह कहता है कि इब्राहिम ने छोड़ दिया, तो इन्हें हमने इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम अता फरमाए। हर हिजरत के बाद खुशखबरी मिलती है, हर कुर्बानी के बाद अल्लाह के तोहफे मिलते हैं, और दोनों को नबी बना दिया, और इन सब को हमने अपनी बहुत सी रहमतें अता फरमाई, और हमने इनके जिक्र जमील को बुलंद दर्जे का कर दिया। अल्लाह हमें इस दर्जे पे जीने वाला बना दे। आगे देखिए, इब्राहिम और उनके बाप के इस किस्से से हमें इतना खूबसूरत तबलीग का तरीका कार सिखाने के बाद, और इब्राहिम के ऊपर उनकी नस्लों के ऊपर अल्लाह की इनायात के बाद, अब आगे आयत 51-53 में हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की इनायात भी हैं, और अब इनकी आजमाइश, रिश्तों की आजमाइश पे की, अब इधर भाई के साथ मामला हो रहा है। हजरत मूसा का किस्सा, वस्कुर फिल किताबी मूसा, इस कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कीजिए जो चुने हुए और रसूल और नबी थे। हमने इसे तूर की दाई जानिब से आवाज दी, हमने इसे तूर की दाई जानिब से आवाज की, और राज गोई करते हुए इसे करीब कर लिया, और अपनी खास मेहरबानी से इनके भाई को नबी बनाकर अता फरमा दिया। बस इतनी सी आयतें थी जी, इसलिए कि अगली पूरी सूरत तौहा मोस्ट ऑफ द पार्ट हजरत मूसा का ही किस्सा है। तो यहाँ बस एक छोटी सी बात के भाई का तस्करा फरमा दिया। आगे देखिए आयत 54-55, हजरत इस्माइल की तहसीन और उनका किस्सा। वस्कुर फिल किताबी इस्माइल, इस किताब में इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाकया भी बयान कीजिए, वो बड़े ही वादे के सच्चे थे, और थे भी रसूल और नबी, और वो अपने घर वालों को बराबर नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे, और थे भी अपने परवरदिगार की बारगाह में पसंदीदा और मकबूल। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। नोट किया आपने एक जुमला, काना का लफ्ज आता है, काना रसूलन, काना सादिक अलवादी, काना या मुरअखलहु बिस्सलात, तो काना क्या है, माजी इस्तिमरारी, करते ही रहते थे। एक दफा नहीं बच्चों को कहा कि नमाज पढ़ लो, कहते ही रहते थे नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, लेकिन कैसे कहते थे, वो टोन जो आपकी बदल जाती है पहली दफा प्यार मोहब्बत इज्जत व गालम ग्लोज, ना ना ना, इससे बच्चे ढीठ हो जाते हैं। आप एक जुमला कहिए, बेटा उठिए नमाज पढ़ लीजिए, अब इसको रिकॉर्ड करें, कॉपी एंड पेस्ट कर लें, 10 दफा इसको प्ले करें, 10 दफा, एक ही दफा एक ही तरह चलेगा ना, बेटा उठिए नमाज पढ़िए, बेटा उठिए नमाज पढ़िए, ऐसे बुलाया करें अपने बच्चों को और अपने मियाओं को और अपनी बीवियों को। और जो नमाजें नहीं पढ़ता ना, उसको तो वैसे ही पढ़ना मुश्किल है, और जब आपकी टोन इतनी टॉन्टिंग हो और इतनी गंदी हो, तो गुस्से में और अना को करा, तो एक जम बना लीजिए, लोगों के जमीर को बेदार कीजिए, अना को नहीं, अना एक सोया हुआ शेर है, इसको सोया रहने दीजिए, क्योंकि जब ये शेर जाग जाता है ना, तो फिर बंदे को बात तो समझ आ जाती है, लेकिन चिड़ में आके वो गंदा, मैंने नहीं, मैंने इनके सिरे चढ़ के बुरा काम करना है। तो वह हम इस्माइल अलैहिस्सलाम के इस किस्से से जो बातें सीख चुके, क्या हजरत इस्माइल के अंदर ये खूबियां थी, इनकी क्या आजमाइश थी, और वो आजमाइश यहां नहीं है, वो सूरह साफात की आयत नंबर 1 और 2 और उसके आगे पीछे है, इन्निया राफिल मनामी अन्नी अज़बहु कफ़ंज़ुर माज़ा तरा, बेशक मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तू बता तेरा क्या इरादा है। तो इस्माइल की आजमाइश सुन लीजिए, साफात, या बतफल मातू मरसत अजीदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आज तक आपके मेरे ऊपर ये आजमाइश नहीं आई कि हमारे माँ बाप ने गर्दन पे छुरी रख दी हो, लेकिन देखिए इस्माइल अल्लाह की तरफ से आई हुई आजमाइशों पे इतने राजी कि गर्दन पे छुरी रखने के लिए तैयार, ज़िबा होने के लिए तैयार, तो अल्लाह बचाने के लिए तैयार हो गया। और औलाद को नमाज का और ज़कात का हुक्म देना, ये भी अपनी जगह एक बहुत बड़ी आजमाइश है। अल्लाह हम सब के घर वालों को नमाजी बना दे। और सबसे बड़ी खूबी जो मुझे उनकी इधर दिखी है, वो अल्लाह के हर फैसले पे राजी थे, तो अल्लाह भी उनसे राजी था, अल्लाह हमें भी यही अता कर दे मुकाम। आगे आयत 56-57, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का मुकाम खास देखिएगा। वस्कुर फिल किताबी इदरीस, और इस किताब में इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए, वो भी नेक किरदार पैगंबर थे, हमने इन्हें बुलंद मुकाम पर उठा लिया। अल्लाह अकबर, क्या मुकाम था इनका, ऊपर ले गए, अल्लाह ने इनको जिंदा हालत में ऊपर खड़ा कर ले गए और वहां इनकी जान दी गई। इनकी आजमाइश ये थी कि अल्लाह ताला ने इनको आम लोगों से अनयूजुअल तरीके से मौत दी थी। डिटेल्स का इस वक्त वक्त नहीं है, लेकिन बस सिर्फ समझते ही जाइए। अब इन सारी बातों को बयान करने के बाद आयत 58 अंबिया कराम की रिक्कत कल्बी का बयान है। रकीकुल कल्ब, याद करें रकाइक वाला पारा। أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين, تمام انبیاء کرام نے اللہ ہی کی طرف پکارا۔ کیسے؟ یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا, جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا, اور اولاد ابراہیم اور یعقوب سے, اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے۔ इनके सामने जब अल्लाह रहमान की आयतों की तिलावत की जाती थी तो ये सजदा करते, रोते, गिड़गड़ाते, गिर पड़ते थे। ऐसे सजदा है, हल्का सा झुक भी ना चाहें तो झुक भी सकते हैं, बाद में करें, ना भी करें तो भी गुनाह नहीं, करेंगे तो अजर है, लेकिन कुरान सुनते हुए रोना और गिड़गड़ाना हिदायत पे होने की अलामत है। राह याफ्ता और अल्लाह के पसंदीदा लोगों की यहां आपको तारीफ की दिखी है आयत 58 में। कैसे? अल्लाह की आयात सुनकर सजदे में गिर पड़ते हैं और शुक्र और गम की कैफियत में रोते हैं। अल्लाह हमें ऐसा ही रकीकुल कल बना दे। फिर आप देखिए आयत 58 में वमिम्मन हदैना वज्तबैना की बात है, तो अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत इनाम याफ्ता अंबिया औलुल अज़्म का तज़किरा। आदम की ज़ुर्रियत से थे ये सारे, हजरत नूह की ज़ुर्रियत से थे कुछ, फिर इब्राहिम और इसराइल यानी हजरत इसराइल की ज़ुर्रियत से थे, और नबूवत और रिसालत के मनसब का तोहफा इनको मिला, यानी अल्लाह ने इनको चुन लिया था। आप देखिए कि हिदायत याफ्ता लोगों की एक लिस्ट आपके सामने है आयत 58 में। अल मुत्तकीन, अल मोमिनीन, अल कानितीन, अल खाशेईन, अल ज़ाकिरीन, अल हाफिज़ीन, अस सादिकीन, अल मुनीबीन। अल्लाह ताला हमें ऐसे ही गिरोह में रखे। फिर हिदायत से दूर लोगों की भी लिस्ट ले लीजिए ताकि ये नक्शे दिमाग में रह जाए, तो इन कामों से हम अपने आप को रोक लें। अल मगदूबीन, अल दौलीन, अल मुनाफिकीन, अल मुशरिकीन, अल काज़िबीन, अल काफिरीन, अल मुसरिफीन, अल गाफिलीन, अल्लाहुम्म ला तजअलना मिनहुम। आगे आयत 59 से 63 तौबा के बाद इस्लाह की बात है। खास तौर पर आयत 59 में नालायक उम्मतियों का तर्ज अमल दिखाया जा रहा है। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल ना करे। फखलफ अमीम बादिहिम खल्फ, फिर इनके बाद ऐसे ही तात ना करने वाले पैदा हुए कि उन्होंने नमाज जाया कर दी और नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए। नोट करिए, ख्वाहिशात के साथ नमाजों का ताल्लुक है। जितनी ख्वाहिशें बढ़ती जाएंगी नमाजें रिस्क पे चली जाती हैं। बस इनका नुकसान इनके आगे आएगा, सिवाय इनके जो तौबा कर लें और ईमान लाएं और नेक अमल करें, और ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे और इनकी जरा सी भी हक तलफी ना की जाएगी। अपनी नमाजों को ठीक कीजिए। हिदायत की तरफ बढ़ने वालों का नुकता आगाज हिदायत की तरफ आने के बाद नमाजों की इस्लाह है। अल्लाह नमाजों को जाया होने से बचाए। जरा अपना जायजा भी लीजिए, मेरी कौन सी नमाज मेरी किस नफसानी ख्वाहिश की नजर होती है, और ख्वाहिशें तो सोने, खाने, पीने, जागने की है ना, खूबसूरत इफ्तारी बनाने पकाने में तो मगरब मेरी नहीं चली जाती। अल्लाह ताला बचाकर रख दे हम सबको, और अल्लाह हमें तौबा वालों में शामिल कर दे। कौन सी जन्नत में जाएंगे ये? हमेश की वाली जन्नतों में, जिनका गायबाना वादा अल्लाह मेहरबान ने अपने बंदों से किया है, बेशक इसका वादा पूरा होने ही वाला है। वो लोग वहां कोई लक बात न सुनेंगे ना, और सिर्फ उनको सलाम ही सलाम मिलेगा। इनके लिए वहां सुबह शाम इनका रिस्क होगा। ये है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से इन्हें बनाते हैं जो मुत्तकी हों। अल्लाह हमें मुत्तकीन में शामिल कर ले। क्या पता चला कि अंबिया कराम के बाद उनकी उम्मतों में ना खलफ पैदा हो गए, ना लाख लोग आ गए जो नमाजों को जाया करते थे। नमाज को जाया करने से मुराद क्या है कि खुशू ना रखना, बाकायदगी से ना पढ़ना, अदब अदाब का ख्याल ना रखना, और शरीयत की बजाय ख्वाहिशात की पैरवी करना। अल्लाह ताला ऐसे लोगों में से हमें बचा दे। और फिर इसके बाद आगे आप देखेंगे इंशाल्लाह आयत 64 से 70 में इबादत पर इस्तकामत की भी बात है, और अगर आप आयत 60 से 63 जो पीछे से चल रही है उस पर देखें तो साले उम्मतियों का हसीन इंजाम भी आपको मुझे दिखाया जा रहा है। और अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। आयत 64 से वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बि अम्रि रब्बिक, इबादत पर इस्तकामत करनी है इख्तियार इंशाल्लाह। हम तेरे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतर सकते, हमारे आगे पीछे और इनके दरमियान की कुल चीजें इसकी मलकियत में हैं, तेरा परवरदिगार भूलने वाला नहीं। आसमानों का, जमीन का और जो कुछ इनके दरमियान है सब का रब वही है, तू इसकी बंदगी कर और इसकी इबादत पर जम जा। क्या तेरे इल्म में इसके हम नाम हम पल्ला कोई और भी है? जवाब दीजिए, कोई भी नहीं, अल्लाह के नाम जैसा कोई नहीं, अल्लाह की तो मिसाल जैसा कोई नहीं है। इंसान कहता है जब मैं मर जाऊंगा तो क्या फिर जिंदा करके निकाला जाऊंगा? क्या ये इंसान इतना भी याद नहीं रखता कि हमने इसे इससे पहले पैदा किया हालांकि वो कुछ भी ना था? तेरे परवरदिगार की कसम, हम इन्हें और शैतानों को जमा करके जरूर जरूर जहन्नुम के इर्द गिर्द घुटनों के बल गिरे हुए हाजिर कर देंगे। हम फिर हर हर गिरोह से इन्हें अलग निकाल खड़ा करेंगे जो अल्लाह रहमान से बहुत अकड़े अकड़े फिरते थे। हम इन्हें भी खूब जानते हैं जो जहन्नुम के दाखले के ज्यादा लायक हैं। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल ना करे। क्या पता चला कि ऐसे लोग अल्लाह ताला की तरफ से नाफरमानियों में जाते हैं जो कि अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक नहीं इस्तेमाल करते। और हमने आयत 64-65 में अल्लाह के नबी की कुरान से मोहब्बत को भी देखा। जब थोड़ा अरसा गुजर जाता जिब्राइल ना आते तो आप उनका इंतजार करते। ये बिल्कुल आप ही लोगों की तरह है कि जो क्लास से पहले इंतजार करते हुए आकर बेचैनी से देख रहे होते हैं कि क्लास कब शुरू होगी। अल्लाह ताला आप सबको इसकी बेहतरीन जज़ा दे। और फिर मरने के बाद दोबारा पैदा किए जाने की बात थी क्योंकि उस दौर का यही बहुत बड़ा फितना था कि वो लोग इस चीज को नहीं मानते थे। आगे देखिए आयत 71-72 पुलसरात की बातें हैं। हर एक को पुलसरात से गुजरना है। वइम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से हर एक को वहां जरूर वारिद होना है या तुम में से हर एक वहां से गुजरने वाला है, वहां से वारिद होने वाला है। ये तेरे परवरदिगार के जिम्मे कतई तय शुदा अमर है। फिर हम परहेजगारों को तो बचा लेंगे और नाफरमानों को इसी में घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। क़यामत के बयान में से पुल सरात का टॉपिक भेज दीजिए साथियों को लिस्ट में। हमने ये पूरी बुक भी पढ़ी और इस पे बहुत दफा बात भी की है कि पुल सरात क्या है। मैं तो इसको आज के इस थीम से हिदायत के साथ जोड़ देती हूँ कि दुनिया की सिरात मुस्तकीम आखरत का पुल सरात है। जो आज इधर जम गया हिदायत पे वो वहां भी बच जाएगा, जो यहां लुढ़क पुड़क के इधर से उधर गिर गिरा गया वो वहां भी गिर जाएगा। अल्लाह ताला हमें दुनिया की सिरात मुस्तकीम पे आखिरी दम तक जिंदगी के हिदायत पे जमाए रखे और हम अपने आप को बेहतर तरीके से बेहतरीन पे ले आए। आगे 73-75 है, अपनी बड़ाइयां बयान करने वालों का भी जिक्र है और पैगाम क्या है कि क्या माल और दौलत वाले आखिरत में भी नवाजे जाएंगे। ये गलत फहमी होती है दौलत के साथ। फरमाए वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात, जब इनके सामने हमारी रोशन आयतें तिलावत की जाती हैं तो काफिर मुसलमानों से कहते हैं बताओ हम तुम दोनों में से जमातों में से किसका मर्तबा ज्यादा है और किसकी मजलिस शानदार है। देखिये फखरिया बातें फ्लॉन्ट करने वाले और अपनी महफिलों और अपनी किटी पार्टीज और अपने घरों और अपने काउचिस को संवारने वाले, ये आज भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा मुख्तलिफ जगहों पे लोगों में कि जिनके चार पैसे आ जाते हैं फिर वो उसका दिखावा शुरू कर जाते हैं और फिर बुरा भला कहते हैं उन लोगों को जिनके पास कुछ नहीं होता। हम तो इनसे पहले बहुत सी जमातों को गारत कर चुके हैं। ये अल्लाह का फैसला इनके मामले में, जो साजो सामान और नामो नमूत में इनसे बढ़कर थी। यहां किस आजमाइश की बात है? दुनिया की कसरत, घर में डेकोरेशन पीसों का ज्यादा होना, क्रिस्टल्स का पीछे होना। एक सिस्टर है कहती घर से जब भी जाती हूँ अपने सारे क्रिस्टल के डेकोरेशन पीस गिन के जाती हूँ, तालों में रखती हूँ कि मासियां फिरती हैं क्योंकि एक एक क्रिस्टल कई हजारों का होता है। तो क्यों दिल दिया आपने इस क्रिस्टल को कि अगर किसी बच्चे ने आकर तोड़ दिया मेहमान ने तो आपकी तो जान ही चली गई। क्या लेना क्रिस्टल के ग्लासों से, सिर्फ दूरी से अच्छे लगते हैं, हाथ में आए तो जान आपकी बनी रहती है जान पे कि कहीं टूटी ना जाए। तो याद रखिए ये चीजें इंसान को खुशी नहीं देती, ये बहुत बड़ी आजमाइश है। अपने घरों को हल्का कीजिए, सस्ता कीजिए, आसान कीजिए, ईजी गोइंग बर्तन रखिए ताकि आपको इबादत में और लोगों की खिदमत का मौका मिल जाए। क्योंकि पहले चले गए तो हमने कहाँ रहना है, और जो ससुराल और जहेज के बर्तन और वो चीजें ना दे 20-25 साल गुजरने के बाद, उसकी तो कब्र में ही जाके डाल दें, वरना तो और कोई और मसरफ नहीं है इन चीजों का। तो अल्लाह ताला कहते हैं नमूदो नुमाइश से बच जाओ, ये बहुत बड़ी आजमाइश है। कह दीजिए वो गुमराही में, जो गुमराही में होता है अल्लाह रहमान इसको खूब मोहलत देता है, यहां तक कि वो इन चीजों को देख लेंगे जिनका वादा उनसे किया जाता है या जिनके वादे उनसे किए जाते हैं, यानी अजाब और क़यामत को। इस वक्त इनको सही तौर पर मालूम हो जाएगा कि कौन बड़े मर्तबे वाला और किसका गिरोह कमजोर है, यानी किसका मर्तबा बुरा है, कौन कमजोर है। अच्छे बुरे सब लोगों का उस दिन मामला खुल कर सामने आएगा, यानी वहां की महफिलों को देखो, वहां की रस्मों रिवाज को देखो, दुनिया में क्या करते हो। तो क्या फरमाए, फसयालमून मन व शर्रु मकानम व दफु जुंदा, कौन बुरे मर्तबे वाला और किसका गिरोह कमजोर है। तो असल बात तो फिर आखिरत में समझ आएगी। याद रखिए कि इस्लाम कबूल करने वाले अक्सर लोगों की अक्सरियत जो है वो गुरबा की होती थी, बड़े सरदार और मुआशरा तो इस बढ़ना ही पड़ा रहता है, प्रोज एंड कौन तोलते और अभी मुनासिब वक्त का इंतजार में पड़े हुए, उनको 10-10, 15-20-20 साल गुजर गए, अभी तक चेंज ना आई और अगले 20 में भी नहीं आएगी। याद रखिए जितने सबके इलाके होते हैं, जितना सोचते हैं उतना ही पढ़ते हैं। सोचिए और कर दीजिए, बेखतर कूद पड़िए, फिर देखिए अल्लाह आपको कितना ज्यादा देता है, और अल्लाह मुतासिर भी कोई नहीं होता इन चीजों से। हमें अपनी औकात का इल्म हो जाता है जब ये चीजें नहीं रहती और लोग हमें मिलना जुलना भी छोड़ देते हैं। और तिर्मिजी की रिवायत है कि इन्नल्लाह ला यंजुर इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकि यंजुर इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, बेशक अल्लाह ना तुम्हारी सूरतें देखता है ना माल, क्योंकि उसी ने दी हैं, क्या इम्प्रेस हो इससे, अलबत्ता वो तुम्हारे दिल देखता है और अमाल देखता है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। तो अल्लाह को इम्प्रेस करो, बंदों को इम्प्रेस करके मिलेगा भी क्या। फिर आयत 76 जो आपकी थीम आयत में हम कर चुके, अलबाकियातु सालिहात है, वयजीदुल्लाहुल्लज़ीना इहतदौ हुदा, और हिदायत याफ्ता लोगों को अल्लाह ताला हिदायत में और बढ़ा देता है, और बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के नजदीक सवाब के लिहाज से और इंजाम के लिहाज से बहुत ही बेहतर हैं। देखिए हिदायत याफ्ता लोगों के लिए अल्लाह की मदद कैसे आती है, नंबर एक नेकियों के मजीद मौके मिलते हैं और बाकी रहने वाली नेकियां छोड़कर दुनिया से जाता है। कल किसी ने क्लिप भेजा था और उसमें भी यही था कि कोई स्पीकर थे, किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे थे, तो माइक पे बात करते हुए कलमा पढ़ रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, फिर तीन बार पढ़ा और फिर लुढ़के और गिरे, तो लोगों को पता चला कि उनका वक्त आ चुका है। तो वो काम कीजिए जो मरते दम तक करना है। अल्लाह ताला हमें बाकी रहने वाली नेकियां करने अल्लाह बना, अल्लाह हमें नेकी ही बना दे। नेकियां क्या करनी है, अल्लाह हमारा नाम ही नेकी रख दे, हमें ही अल्लाह ताला, वो कुछ लोगों ने अपना नाम बच्चियों का जन्नत रखा होता है ना, तो आप मैं अपना नाम ही नेकी रख लें और अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। आगे देखिए आयत नंबर 77 से 84 तक इंसान की गफलत और सरकशी की बात है, और खास तौर पे आयत 77 से क्या माल और औलाद की कसरत अल्लाह की रजामंदी की अलामत है, इस सवाल का जवाब है। बहुत सारे लोग पूछते हैं अच्छा अल्लाह उनसे भी बड़ा राजी है, उनके 6 बेटे हैं। हाँ राजी है अगर वो 6 बेटे आंखों की ठंडक है और अल्लाह की रजा वाले हैं, और ये आजमाइश है जो बच्चों को सही पालते नहीं और तरबियत अच्छी नहीं करते। लिखिए हर बेटा इम्तिहान का पर्चा, आपकी सारी औलाद इम्तिहान का पर्चा, अपने बच्चों के नाम की आजमाइशें लिख कर रख लीजिए और इसमें कामयाब होने की दुआ कीजिए और कोशिश भी कीजिए। अकेले जन्नत में गए तो क्या मजा आएगा, देखते हैं। अफरई तल्लसी कफर अभी आयातीना, क्या तूने इसे भी देखा जिसने हमारी आयतों से कुफर किया और कहा मुझे तो माल और औलाद जरूर ही दी जाएगी, क्या वो गैब पर मुत्तले है या अल्लाह का कोई वादा ले चुका, हरगिज नहीं, ये जो भी कह रहा है हम जरूर लिख लेंगे और इसके लिए अजाब बढ़ाए चले जाएंगे, ये जिन चीजों को कह रहा है इसे हम इसके बाद ले लेंगे और ये तो बिल्कुल अकेला ही हमारे सामने हाजिर होगा। अकेले आए थे अकेले जाएंगे, दुनिया में कुछ करके जाइए ताकि वहां आपकी गवाहियां मौजूद हों। उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बना रखे हैं कि वो इनके लिए बायस इज्जत हों, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं, वो तो इनकी पूजा से मुनकर हो जाएंगे, उल्टे इनके दुश्मन बन जाएंगे। क्या तूने नहीं देखा कि हम काफिरों के पास शैतानों को भेजते हैं, इन्हें खूब उकसाते हैं, तो इनके बारे में जल्दी न कर, हम तो खुद ही इनके लिए मुद्दत शुमार कर रहे हैं। अब देखिए बाद लोग लफ्ज काफिर देखकर नाराज होते हैं, हालांकि काफिर के ना शुक्रा अनग्रेटफुल, हकीकत है कि जो बंदा अल्लाह को छोड़कर गैरों को पुकारेगा तो वो ना शुक्रा ही तो कहलाएगा। تو کیا پتہ چلا کہ مال اور اولاد اللہ کی رضا والی چیزیں نہیں ہیں جب تک ان کو اللہ کے رستوں میں کھپا نہ دیا جائے. اور خاص طور پہ آپ نے 81 اور 82 میں جو بات سنی, قیامت کے دن وہی لوگ ہوا جائے ہو جائیں گے جن پہ تکیہ تھا, یعنی جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. ہر وہ شخص جس نے کسی نام پہ بھی اللہ کے ماں سوا کسی فرشتے کو, کسی نیک بزرگ کو, کسی بت کو, کسی پتھر کو پکارا, کل قیامت کے دن اس کا یہی حال ہوگا کہ وہ لوگ تو بے نیاز ہو جائیں گے اور یہ تن تنہا کھڑا ہوگا. اور روز قیامت کا یہ حال پڑھتے ہوئے اب آیت 85 میں دیکھیے گا, اللہ متقی لوگوں کا میزبان ہے. بڑی سینٹیمنٹل, بڑی اسپرچل آیت ہے رقیق قلب کے لیے, اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے. سنیے قیامت کا حال, یوم نخشر المتقین الى الرحمن وفدا, جس روز ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے. اللہ ول بی یور ہوسٹ اینڈ یو ول بی ہز گیسٹ. دیکھا جائے تو دنیا میں بھی ایسے ہی ہے, ساری دنیا میں اس نے دسترخوان پھیلا کر ہمیں مہمان بنا دیا, لیکن وہاں کی مہمانیاں تو کیا ہوں گی. اور اس کے برعکس آیت 86 سے 92 مجرموں کا انجام, تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیجئے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا, اور گناہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے, کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا. سوچیے ایک ایک جملے پہ غور کیجئے, سوائے ان کے جنہوں نے اللہ کی طرف سے کوئی قول و اقرار لے لیا. ان کا قول یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی تو اولاد اختیار کی ہے, یقیناً تم بہت بھاری چیز لے آئے ہو. قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کر بیٹھے. شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے. تو کبھی مت کہیے کہ اللہ کا بیٹا اور اللہ کی بیٹی, اس پہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ زمین میں ایک دھماکہ کر دے, اتنی یہ بڑی بات ہے. اور آیت 93 سے 98 آخری آیت بارے کی سورت کی, ان کل من فی السماوات والارض, مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کیسے جنتی اور جہنمیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بدترین قسم کا شرک کر کے کسی کو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں, بڑے بڑے بول بولتے ہیں, ان سب کو اچھی طرح سے بتا دو. کیا؟ کہ نیک لوگوں کے لیے دنیا میں بھی انعام ہے اور آخرت میں. کیسے؟ ان کل من فی السماوات والارض, آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں. ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے. یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں. بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں, ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا. ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے. ہم نے اس سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دیں, کیا ان میں سے کوئی ایک کی بھی آخر تو پاتا ہے یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے؟ کبھی سنا آپ نے قوم عاد کا کوئی شخص قوم سمود کا؟ تو جب ہم دنیا سے جاتے ہیں ایسے ہوتے ہیں. ذرا سا یا اپنے پیاروں کو یاد کرے جو دنیا سے جا چکے. نانی اماں کی آواز کبھی آئی؟ دادا کی؟ اب تو ریکارڈنگز موجود ہے, پہلے لوگوں کی تو آوازیں بھی ریکارڈ نہ ہو سکی. پھر آپ دیکھیں آیت 96 میں, نیک لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف سے انعام تھا, بشارت تھی. اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے, ان لوگوں کی جن سے اللہ محبت کرتا ہے. کہتے ہیں کہ آواز خلق نکار خدا, بندہ اللہ کے ہاں جیسا ہوتا ہے نا بندوں میں بھی ویسے ہی معروف ہو جاتا ہے. اور بخاری کی وہ خوبصورت سی حدیث اس موقع پہ نہ پڑھی تو اور کب پڑھیں گے ہم, کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اذا حب اللہ العبد نادى جبرائیل, جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو ندا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فلاں بندے سے محبت کرو. یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے, بس تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جب جبرائیل تمام آسمانوں میں ندا لگاتے ہیں کہ اللہ فلاں کو دوست رکھتا ہے, تم بھی اسے دوست رکھو, تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی مقبولیت پیدا کر دیتا ہے. اللہم اجعلنا منہم, ہمیں اللہ کی محبتیں عطا ہوں. اور نیکیوں کے ساتھ ہوں گی, گناہوں کے ساتھ ساری دنیا میں مشہور بھی ہو جائیں تو کیا فائدہ؟ ابلیس اور شیطان سے زیادہ مقبول اور کون نہیں. और आखिरी आयतों में जो 97 से ऊपर तबलीग का अमल कुरान के जरिए करने की दावत दी गई, तो अल्लाह करे कि हम सारी जिंदगी इस किताब की खिदमत करते हुए चले जाएं, वरना दुनिया में दोबारा आकर भी गुनाहों की तलाफी नहीं की जा सकेगी। आगे है जी सूरत तौहा, बड़ी खूबसूरत सूरत है, तरतीब में 20 नंबर की और आयात में 135 नंबर 135 आयात हैं। सूरत के इब्तिदा में हरूफ मुकत्तात में सूरत तौहा है और हरूफ मुकत्तात को इधर ही छोड़ दें। ये कहना कि अल्लाह के नबी का नाम है वो, आपको इससे क्या फर्क पड़ेगा, वो बात जो मिलती है अमल की उसको ले लिया करें, बाकी चीजों को छोड़ दें। और इस सूरत को कह लीजिए कि हजरत उमर के दिल के बंद दरवाजे खोलने वाली सूरत। अपनी बहन की जुबान से यही सूरत सुनकर वो मुसलमान हुए। पता नहीं आज ये सूरत हम में से किसका दिल खोलती है। दुआ कीजिए कि आज तो हिदायत का एक बड़ा सा माइल स्टोन तय हो ही जाए। इस सूरत में हजरत मूसा की दास्तान हयात है और तीन अदवार हैं हजरत मूसा के, लिखना चाहें तो लिख लीजिए। विलादत से लेकर मदियन तक की जो रिवानगी है वो आयत 38 से 40 तक है, और मदियन से मिस्र वापसी से लेकर फिरौन की हलाकत का जिक्र आयत 9 से 37 और फिर 41 से 79 पे है, और मिस्र से सहराए सीना हिजरत से लेके उनकी वसाल यानी मौत तक का सफर आयत 80 से 99 है। ये तो था हजरत मूसा का लाइफ स्पैन। अब चलते हैं इन आयतों का तजिया। पूरी सूरत तौहा में क्या है, पहली 8 आयतें पुरशिकोह तमहीद है इस बात की कि अल्लाह का ये कलाम है। 9 से 99 तक हजरत मूसा की दास्तान है याद, जिसको अभी हमने ऊपर ब्रेकडाउन करके देख लिया। फिर आयत 100 से 112 अहवाले क़यामत, 113-114 अजमत कुरान, 115 से 123 किस्सा आदम और इबलीस, 124 से 128 कुरान से गफलत का हसरतनाक अंजाम, और आखिर में 129 से 135 पारे के एंड तक मुश्रिकीन मक्का के साथ कशमकश है। किन हालात में अल्लाह के नबी ये दीन देंगे, आइए सूरत के तर्जमे के साथ फायदा उठाते हैं। और आयतों में देखिए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तौहा मा अंजलना अलैकल कुरान लितश्का, हरूफ मुकत्तात में से पहली आयत, और फिर आयत नंबर 2 से 8 तक कुरान आसानी के लिए है, यानी यहाँ पहली 4 आयतों में खास तौर पे अजमत कुरान का तस्करा है। मा अंजलना अलैकल कुरान लितश्का, हमने ये कुरान आप पर इसलिए नहीं उतारा कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं, बल्कि इसकी नसीहत के लिए जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह हमें भी नसीहत वालों में डाल दे। इसका उतारना इसकी तरफ से है जिसने जमीन को और बुलंद आसमानों को पैदा किया, जो रहमान है अर्श पर कायम है, जिसकी मलकियत आसमानों और जमीन और इन दोनों के दरमियान और कुर्रे खाक के नीचे की हर चीज पर है। तख्त सरा, गीली मट्टी का नीचे होना, गीली मट्टी के नीचे क्या होता है, दाना भी होता है और एक वक्त आएगा हम खुद भी होंगे। अगर तू ऊंची बात कहे तो वो हर एक पोशीदा है, अगर तू ऊंची बात कहे तो वो तो हर एक पोशीदा बल्कि पोशीदा से पोशीदा तर को भी बखूबी जानता है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बेहतरीन नाम उसी के हैं। क्या पता चला कि अल्लाह ने पारे सूरत के शुरू में ही कुरान पाक का जिक्र करके साथ ही अजमत बारी ताला भी बयान कर दी कि अल्लाह ताला को सब कुछ पता है। अब आगे आयत 9 से लेकर 24 तक खास तौर पे हजरत मूसा का किस्सा, जिसमें से शुरू में 9 से 13 तक हजरत मूसा पर ज़हूर नबूवत है। आइए पढ़ते हैं इसको मूसा की सीरत समझते हुए। वहल अता का हदीस मूसा, तुझे मूसा अलैहि सलाम का किस्सा भी मालूम है, जबकि इसने आग देखकर अपने घर वालों से कहा कि तुम जरा सी देर ठहर जाओ, मुझे आग दिखाई गई है, बहुत मुमकिन है कि मैं इसका कोई अंगारा तुम्हारे पास लाऊं या आग के पास से रास्ते की इत्तला पाऊं। मदियन से मिस्र वापस आते हुए मूसा अलैहि सलाम का इस वक्त एक फरमाबरदार और एक जिम्मेदार शोहर का किरदार आपको दिखता है। बीवी बच्चों की टेक केयर करना बहुत बड़ी नेकी है। उन मर्दों को, उन भाइयों को अल्लाह बेहतरीन जज़ा देगा जो रिस्के हलाल कमाकर अपने घर वालों के लिए ग्रोसरी खाना पानी भी लाते हैं, फिर उस पर खुश भी होते हैं। और मूसा अलैहि सलाम की सीरत से हमें यही मिलता है। गए थे आग लेने, हो क्या गया। तुझे मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, आपको जो अल्लाह ताला मुझे आपको सुना रहा है कि आप देख रहे हैं कि वहां सर्दी से बचने के लिए आग लेने गए, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया, वहां का मंजर देखिएगा। जब वो वहां पहुंचे तो आवाज थी कि यह मूसा, यकीनन मैं तेरा परवरदिगार हूं, तू अपनी जूतियां उतार दे क्योंकि तू पाक मैदाने तुवा में है और मैंने तुझे मंतखब कर लिया। अब जो वही की जाए इसे कान लगाकर सुन, हाईलाइट कीजिए इसको, कान लगाकर सुनने वालों को ही वही फायदा देती है। बेशक मैं ही अल्लाह हूं, क्या दिल पे गुजरी होगी, मेरे सिवा इबादत के लायक और कोई नहीं, बस तू मेरी ही इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम रख। अक़िमिस सलात अली ज़िक्री। हमारा हाल क्या इल्ला माशाल्लाह कि नमाज में सब याद आते हैं अल्लाह के याद आने के सिवा, सब भूली बिसरी चीजें याद कर करके नमाजों को हमने खोखला कर लिया। अल्लाह हमारी नमाजें जिंदा कर दे और इसमें अल्लाह की याद कायम हो जाए। क़यामत यकीनन आने वाली है जिसे मैं पोशीदा रखना चाहता हूँ ताकि हर शख्स को वो बदला दिया जाए जो इसने कोशिश की हो। अल्लाह में अच्छी कोशिशें करने वाला बना दे। बस अब इसके यकीन से तुझे कोई शख्स रोक ना दे जो इस पर ईमान न रखता हो और अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हो, वरना तू हलाक हो जाएगा। ए मूसा तेरे इस दाएं हाथ में क्या है? अल्लाह को तो पता था लेकिन हमें कॉन्शियस करने के लिए सुनाया जा रहा है। जवाब दिया, ये मेरी लाठी है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ और जिससे मैं अपनी बकरियों के पत्ते झाड़ लिया करता हूँ और भी बहुत से मुझे इसमें फायदे दिखते हैं। कितना लंबा जवाब दिया मूसा ने, क्यों? जिससे मोहब्बत होती है ना उसे लंबी बात को दिल करता है, तभी तो कुरान छोड़ने को दिल नहीं करता, तभी तो नमाज में लंबी किरत। और हमारी नमाज और कुरान कैसा है? अल्लाह की पनाह, जल्दी से खत्म कर दो, दुआ कीजिए अल्लाह हमें भी यही मोहब्बत दे दे कुरान से और नमाज से, इधर का वक्त हमें पता ही ना चले और बाकी चीजें जो है वो हमें बस गुजारे के दायर जितनी करनी है उसको कर ले। फिर आप यहां से जरा से मूसा की आजमाइश देखिएगा। फरमाया, मूसा इसे हाथ से नीचे डाल दे। डालते ही वो सांप बनकर दौड़ने लगी। फरमाया, बेखौफ होकर इसे पकड़ ले, हम इसे इसी पहली सी सूरत में दोबारा ला देंगे। ये क्या हुआ? ये है आजमाइश, आपकी मेरी भी यही आजमाइश है, इतात। जब कहा इस काला रब्बु अस्लिम काल असलम तिली रब्बिल आलमीन, हजरत इब्राहिम का अगर वहां जिक्र है तो ये मुकाम नोट कीजिए, ईसा की इताअत इधर लिखी हुई है। आम हालात में तो इसका तस्वुर भी मुमकिन नहीं है कि सांप हो तो उठा लो और अगर वो असा हो जिसके गुन गाते हुए मूसा दिख रहे हैं तो कहा छोड़ दो, ये नहीं होता हमसे। लिखिए, आज हमारा मसला ये है, बस पता सब कुछ, इल्म भी बहुत है, सब पता है आगे कौन सी आयतें आने वाली हैं, लेकिन ये समझ आ जाए तो बात ही बन जाए। आगे सुनिएगा फिर बात करते हैं। और अपना हाथ बगल में डाल ले तो वो सफेद चमकता हुआ होकर निकलेगा लेकिन बगैर किसी ऐब और रोग के। ये दूसरा मौजजा है, यानी इसमें उम्मीद है उसमें खौफ था। अलीमान उबैन अलखौफ वर्रिजा, यह इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाना चाहते हैं। अब तो फिरौन की तरफ जा, इसने बड़ी सरकशी मचा रखी है। देखिए आयत नंबर 10 में औ अजीद वलन नारी हुदन का लफ्ज है। हिदायत जब पानी हो ना तो बंदे को ऐसे भी मिल जाती है। हिदायत और हसूल तलब का जज्बा लाजिम है। तालिब दुनिया दुनियावी मालूमता का हसूल या इसमें इजाफे की कोशिश करता है। तालिब उकबा जिनका मकसूद आखरत की जिंदगी को खुशगवार बनाना होता और तालिबुल्लाह यानी जिनको अल्लाह की तलब लग जाती है, ये उसी का दूसरा नाम है, यानी जन्नत के साथ साथ अल्लाह की रजा भी चाहते हैं। इनकी इबादत और जिद्दोजहद का मकसूद अल्लाह का कुर्ब पाना है। सही तरीका क्या है? दुनिया भी लीजिए हलाल और हसना के साथ, आखरत भी मांगिए, उकबा को मांगिए और अल्लाह का दीदार भी मांगिए। ये कहना कि जन्नत नहीं चाहिए सिर्फ अल्लाह चाहिए, ये सूफीज्म को बिगाड़ने वाली बात है, जो कि बड़ा खूबसूरत मजहब था। कुछ लोगों ने एक्सट्रीम में आकर ऐसी बातों को ऐसा कर दिया। तो अल्लाह हमें अपना प्यार भी दे, अपना दीदार भी दे। आप देख रहे हैं कि नायात में आपको मुख्तलिफ तरह से चीजें दिखाई गई। मूसा अलैहिस्सलाम को चार बड़ी हिदायत दी गई जो आज दीन इस्लाम में भी हैं। मसलन अल्लाह को एक मानकर उसकी बंदगी करना, नमाज कायम करना, याद करना, आखरत का यकीन और हिसाब किताब को ना मानने वाले ख्वाहिशात के पीछे रह जाते हैं। तो आपको मुझे अपना भी जायजा लेना इन सब चीजों में। फिर आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के ये अस्तहे आपको मुझे भी एक बात सोचने की तरफ माइल करते हैं कि अपनी जिंदगी के हर सांप को फेंक दीजिए जो अजदहा बनकर कल आपको डसेगा और वो वही है जो अल्लाह की नाफरमानी का है। और आज हिदायत की तरफ आते हुए जितना भी मुश्किल लगे उठा लीजिए उन अहकामात को जो मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन देखिएगा कल वो आपका असा बन जाएंगे, सांप नहीं रहेंगे। आगे है दुआ आयत 25 से 36 में देखिएगा हजरत मूसा की ईमान अफरोज दुआ और उसकी कबूलियत। قال رب اشرح لي صدري, मूसा अलैहि सलाम ने कहा है मेरे परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। आमीन कहिए। नूरे बसीरत आम कर दे, अल्लाह मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। जब यहाँ बैठती हूँ यही दुआ करती हूँ, अल्लाह जो मेरे दिल में वो बात सामने आए, मुझे लिखी सुनी पड़ी बातों की आदत नहीं है, मुझसे हक बात कहलवाना कि जब आप दिल से बोलते हैं तो आपकी बात दिल में जाती है और दिल में बोलने से पहले दिल में जज करना पड़ता है। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी का सुन सुना के आगे पेश करते हैं, ना अपने कौल में ना फेल में ना अमल में ना नूरे बसीरत मिला वो, ना फहम मिला ना हिकमत मिली। इसकी मिसाल अच्छी नहीं लेके हमारी एक टीचर ने दी थी एक बार, वो कहती है कि एक खाना जो आप खाते हैं फिर वो हजम होकर जिस्म से निकलता है तो ताकत मिलती है, लेकिन एक खाना खाया और वो थोड़ी देर में वॉमिट हो गया तो नकाहत होगी। तो किसी की बात सुनकर उसको लफ्ज़ बलफ़्ज़ आगे कोट कर देना ये उल्टी करना है, ये कह करना है, इसमें जज्ब नहीं हुआ होता और फिर वो बातें ही रह जाती हैं और बातों के तीरों से क्या होता है। तो जब खुद अपने तन बदन मन पे डाल डूब जाए और सरागे जिंदगी पालें तो फिर आपकी बात में तासीर आती है। ये मांगिए नूरे बसीरत, अपने अमल को पुख्ता करते जाइए और साथ साथ थोड़ा थोड़ा बोलना भी शुरू कर दीजिए। टैली कीजिए, रोज चेक कीजिए कि मेरा अमल किस दर्जे का है और मेरी बातें, मेरी दावत, मेरी स्पीच, मेरे जुमले, मेरा पढ़ाना पढ़ना कैसा है। फिर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपसे क्या काम लेगा। काम वही बाकी रहता है जो पूरी तैयारियों और पूरे बीच के मराहल के बाद हो। अल्लाह हमें ये नूरे बसीरत अता फरमा दे। दुआ आपके सामने है तरतीब के एतबार से, मांग लीजिए। रब इशराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और वैसे भी एक छोटी सी बात कह दूं, मौजू चूंकि चल रहा है कि अपना अमल कमजोर हो और आप लोगों को खुद पढ़ा रहे हो तो लोग आपको तनकीद से देखते हैं और आप उनको उनके डर से बोल ही नहीं पाते वो बातें, क्योंकि उनको भी पता है कि आपने अभी क्लास के बाद उनके साथ कहाँ जाना है और क्या खाना है और क्या पहनते हैं। शादियां ब्याहों में जरूरत नहीं मिलती, उसकी बजाय अगर किसी की कहीं भी बात सुना भी रहे हैं और आप बैठकर वहां एक कोऑर्डिनेटर बन के रिकैप करा रहे हैं तो लोगों को ये तो पता ही है ना कि आपने नहीं कहा, तो आप बच जाते हैं। लेकिन जब हम खुद बात करें तब बात करें जब अपना अमल कम से कम अपनी इंसानी हद तक तो पूरा हो, वरना याद रखिए फिर लोग दीन को बुरा कहते हैं, लो देखो ये ऐसे पढ़ने पढ़ाने वाले, इनके बच्चों को देखो। बच्चों बच्चों को तो आपने अगर इग्नोर किया हुआ तो ये आपका अपना कसूर है। मेरा तो यकीन है कि 3-4 साल के बाद बच्चे और शौहर आपके साथ होते हैं। मैं हर उस साथी को कहूंगी जिसको आज भी लगता है कि मेरे घर वाले साथ नहीं है तो जरा से इसकी वजह ढूंढिए, या तो आपने तबलीग ठीक नहीं की या की कोई नहीं है या आपका अपना कोई मामला है या तहज्जुद नहीं है या अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं है या फिर नूर बसीरत नहीं है और या फिर अल्लाह ना करे कि कोई आजमाइश हो। तो आज भी हिम्मत करके जुर्रत करके बच्चों को साथ लेके रब्बी शाहली पढ़ के दुआ दीजिए कि अल्लाह बच्चों मेरी इज्जत रख लो, तुम मेरी वजह से गलत कामों को छोड़ दो और मैं कमजोर हो रही हूं, मेरी जगह पे तुम आकर बैठ जाओ। अल्लाह करे कि हमारे बच्चों के दिलों में हमारी बातें आ जाएं। हजरत मूसा ने किसको मांगा, और मेरा वजीर मेरे कुंबे में से कर दे, यानी मेरा भाई हारून अलैहिस्सलाम को, तो इससे मेरी कमर कस दे और इसे मेरा शरीक-ए-कार कर दे ताकि हम दोनों बकसरत तेरी तस्बीह बयान करें। ये देखिए आपको दलील भी मिल गई, जिस दीनदार को घर वालों की सपोर्ट मिल जाती है वो खुल के काम करता है। अल्लाह के नबी क्यों तड़पते थे कि अबू तालिब आप मुसलमान हो जाएं, कलमा पढ़ें, तो घर वालों को साथ लेकर चले। दीन का सफर तन्हा नहीं चलता, अगर आपको तेज चलना है तो तन्हा चल रहे हैं तो चलते जाइए, लेकिन साथ लेकर चलने में अगर थोड़ा सा आपको रुकना भी पड़े कमजोर हो, लेकिन इंशाल्लाह उनके साथ आपका मामला अच्छे से अच्छा होगा और आप तेज चलेंगे। जरा आगे चाहिए, पिछले साल का एक मैप था वो इस साल भी डलवा दीजिएगा काइंडली। मुझे याद आ रहा है कि इससे अगली आयतों में कहीं डाला था और मुझे लग रहा है कि आज के बारे में ही था, अगर नहीं है इसी में था तो मैं चाहूंगी कि इसको हम कल के बारे के शुरू में डालें ताकि जब माँ आगे बढ़ती है तो बच्चे भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो एनालॉजी बहुत ज्यादा फायदेमंद रही दूसरों के लिए। करेंगे क्या भाई दोनों मिलकर, गीबतें, जायदाद की बातें, कारोबार में दुकान पे क्या हुआ नहीं वो भी कर लेंगे एक हद तक, लेकिन क्या करेंगे और बकसरत तेरी याद करें। बेशक तू हमें खूब देखने भालने वाला है। जनाबे बारी ताला ने फरमाया, मूसा तेरे तमाम सवाल पूरे कर दिए गए। अल्लाह जो हमारे भी सारे ही पूरे कर दे, जो दिल में रख कर दुआएं मांग रहे हैं तुझसे अल्लाह कबूल कर ले। अल्लाह हमारा हर मामला हर बात नूरे बसीरत आम कर दे, वो सारे काम करवा दे जो भी सोचे हुए दीन के नाम पे, और अगर दुनिया के नाम पे भी किसी की कोई ख्वाहिश है कोई तमन्ना है तो अल्लाह उसको पूरी कर दे। आगे 37 से 40 तक आपको दुश्मन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश भी मिलेगी, और हजरत मूसा की हयात का पहला दौर यानी विलादत से मदियन तक है आयत नंबर 38 से लेके 40 में देखेंगे इन दोनों को। वलकद मनन्ना अलैका मर्रतन उखरा, हमने तो तुझ पर एक बार और भी एहसान किया है जबकि हमने तेरी माँ को वो इल्हाम किया जिसका जिक्र अब किया जा रहा है। यह है नूरे बसीरत। इल्हाम हिदायत की एक किस्म है, किसी दिन आपको लिखाने वाली हूँ आगे जाकर इंशाल्लाह, कि तू इसे संदूक में बंद करके दरिया में छोड़ दे, बस दरिया इसे किनारे ला डालेगा और मेरा और खुद इसका दुश्मन इसे ले लेगा, और मैंने अपनी तरफ की खास मोहब्बत और मकबूलियत तुझ पर डाल दी ताकि तेरी परवरिश मेरी आंखों के सामने की जाए। अल्लाह अकबर, कैसे अल्लाह ताला मोहब्बत भरे तरीके से मूसा के साथ बात करते हैं। याद कर जबकि तेरी बहन चल रही थी और कह रही थी, क्या कह रही थी बहन, कि अगर तुम कहो तो मैं तुमको बता दूं। क्या बता दूं, यानी अब यहां से जरा से भाई बहन के रिश्ते की खूबसूरती भी नोट कर लीजिए जल्दी में। क्या कहा, जबकि तेरी बहन तेरे साथ चल रही थी और कह रही थी कि अगर तुम कहो तो मैं बता दूं, जो इसकी निगेबानी करे इस तदबीर से, हमने तुझे तेरी माँ के पास पहुंचाया कि इसकी आंखें ठंडी रहें और वो गमगीन ना हो, और तूने एक शख्स को मार डाला था इस पर भी हमने तुझे गम से बचा लिया, गरज हमने तुझे अच्छी तरह आजमा लिया। ये था वो जुमला जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि वहां याद करवा दूंगी, तो याद रखिये, वफतन ना कफतूना, अल्लाह मुख्तलिफ मराहिल से गुजारता है, हिला मारता है बंदे को, फिर अपना काम लेता है। मूसा की जिंदगी को देख लीजिए, इसी की दलील है। तो कभी आपको हिला मारा जाए किसी आजमाइश में तो खुश हुआ करें और आगे से काम के बने। दो तरह के रास्ते हैं, या तो और दूर हो जाएंगे या अल्लाह के करीब होंगे। अल्लाह ताला हमें आजमाइशों में डाले अगर, तो फिर उसमें से कुंदन बनाकर निकाल दे। फिर तो कई साल तक मदियन के लोगों में ठहरा रहा, फिर तकदीर इलाही के मुताबिक है मूसा तू आया। क्या पता चला कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिरौन के घर में पलवाया। यह आजमाइश थी, फिरौन की भी थी मूसा की भी थी। माँ को इल्हाम करवा दिया, माँ के दिल में डाल दिया कि जा अपने बच्चे को ताबूत में डाल दे। ये हिदायत मांगिए कि अल्लाह इस तरह मुझे पता लग जाए कि जो रब मुझे हुक्म दे रहा है वो कभी मुझे जाया नहीं करेगा। और आपको था कि मूसा अलैहिस्सलाम दरिया की मौजों से तो बच गए, वो तो उठा लिया बीबी आसिया और उसकी वर्कर्स ने, फिरौन से कैसे बचे। फिरौन से मूसा बचे, लिखिए वल्कैतु अलैका महब्बतम मिन्नी से, आयत 39 में आ गए। अल्लाह ने एक ऐसा परतौ मोहब्बत का और कशिश का डाल दिया था मूसा के ऊपर कि फिरौन कई बार नियत और इरादा करने के मूसा को नहीं मरवा सका। ये कशिश आज भी अल्लाह डाल देता है हर साहिब खैर के अंदर, हक कहने वाले के अंदर। लोगों को बात बुरी भी लगे लेकिन वो बंदा बुरा नहीं लगता। और मूसा अलैहिस्सलाम बच गए, और बिल आखिर फिर जवान होने पर जब उनसे कत्ल खता हुआ तो उसके बाद मिस्र चले गए, मिस्र में शादी हुई, बच्चे हुए, जो भी हुआ। अब वापस आते हुए आगे देखिएगा आयत नंबर 41 से 48 तक मौसर अंदाजे कलाम है, और आयत 56 तक चलते जाएंगे तो फिरौन के सामने दावत हक दी जाने का तरीका सिखाया जा रहा है। वस्तना तुकली नफसी, इस पर रुकिए, दुआ करें अल्लाह मुझे भी अपने लिए चुन ले, क्योंकि मूसा को क्या अल्लाह ताला कहते हैं, और मैंने तुझे खास अपनी जात के लिए पसंद फरमा लिया। VIP स्पेशल सीक्रेटरी, जिसको अब सेक्रेटरी कहते हैं, अल्लाह तो हमें भी चुन ले, हमें भी अपने लिए चुन ले, सारा खोट खपट निकाल के बाहर फेंक हमारे अंदर का, जो तुझसे हमें दूर किए हुए आज तक। अब तो अपने भाई समेत मेरी निशानियां हम राह लिए हुए चार, खबरदार मेरे जिक्र में सुस्ती ना करना, यानी चुने जाने के बाद भी अब ये नहीं कि अकड़ जाओ। तुम दोनों फिरौन के पास जाओ, इसने बड़ी सरकशी की है, इसे नरमी से समझाओ कि शायद वो समझ ले या डर जाए। नोट करा आपने, फिरौन को समझाओ और नरमी से, हम होते कहते डंडा मारना जाते सीधा, उसके दिमाग पे ये करना, अपने आप को क्या समझता है। नरमी से, नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू। जुस्तजू मेहनत करते हुए भाग दौड़ करी, गर्म जोशी के साथ चलिए, और जब किसी से बात करें तो नरमी की, प्यार की, मोहब्बत की। अब मूसा के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट था, और आप देखिए, एक तो बड़ा फिरौन सुपर पावर, दूसरा उसके उसके मुकाम के बंदे को मार चुके थे, कत्ल हो चुका था। जरा इस वक्त पे मूसा की आजमाइश को महसूस करें। हम होते तो उजर, ना 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 मैं नहीं कर सकती, तौबा तौबा, अभी तो हालात ही नहीं ठीक। हम तो याद रखिए, एक जुमला लिख ले, जिस वक्त अल्लाह हमें बेहतरीन जन्नतें देने वाला होता है ना, तो हम छोटी सी जन्नत पे राजी होके चुपके से पीछे होके अलग हो जाते हैं। ना जी ना, मुझसे ये प्रेशर नहीं बर्दाश्त होता। अल्लाह ने मूसा को ऐसे हालात में खड़ा करके कहा, जाओ उस फिरौन को बुलाओ। हम होते तो सॉरी की पर्ची दे के चल जाते, नहीं अल्लाह मैं नहीं कर सकती, मेरे भी हालात ठीक नहीं है, वो भी मेरा बच्चा बड़ा छोटा है, अभी उसको मैंने PhD करानी है, जाके उसको स्कूल में छोड़ना है और लाना जाना है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। हम जितने छोटे हमारे उजर भी उतने छोटे। मूसा ने क्या कहा सुनिए, दोनों ने कहा है हमारे रब, हमें खौफ है कि कहीं फिरौन हम पर कोई ज्यादती ना करे या सरकशी में हद से ना बढ़ जाए। जवाब मिला, तो मुतलिकन खौफ ना करो, यानी बिल्कुल खौफ ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं और सुनता और देखता रहूंगा। कल के बारे का थीम याद रख लीजिए, जब आप उठते हैं चलते हैं मदद तभी आती है, अदरवाइज इफ्स एंड बट्स में तो आपकी जिंदगी के 10-20 साल पहले ही गुजर हो चुके हैं, गुजर चुके, जाया हो गए। तुम इसके पास जाकर कहो, हम तेरे परवरदिगार के पैगम्बर हैं, तू हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे, इनकी सजाएं मौकूफ कर दे, यानी खत्म कर दे। हम तो तेरे पास तेरे रब की तरफ से निशानी लेकर आए हैं और सलामती उसके लिए जो हिदायत का पाबंद हो जाए। हमारे तरफ वही की गई कि जो झुटलाए या रूगरदानी करे इसके लिए अजाब है। आप देखिए क्या दो टोक अंदाज है, और वाकई फिर वही हुआ। आयत 49 से 60 को देख लीजिए, 28 तो फिर आप समझ लेंगे फिरौन का किरदार। قال فمر ربكما يا موسى, फिरौन ने पूछा है मूसा तुम दोनों का रब कौन है। देखिए जितलाने वाले और जिसको कहते एक्सप्लॉइट करने वाले जुमले, के मूसा जरा कोई ऐसी बात करें तो हम तो शोर मचा देंगे। हिकमत की बड़ी जरूरत है। देखिए यहाँ बैठकर सीखना नहीं होता कि क्या बोलो, ये भी सीखना होता है क्या ना बोलूं। अक्सर लोग मैंने देखा ज्यादा बोल जाते हैं, कम बोलने वाले तो मैंने कम ही देखे हैं। तो ये मूसा के इस वाक्य से आपको मुझे सिखाया जा रहा है कि अल्लाह ताला कैसे मुख्तलिफ तरीके से तबलीग के नुक्ते सिखा रहा है हम सबको। जवाब क्या दिया, जवाब दिया कि हमारा रब वो है जिसने हर एक को एक खास सूरत शक्ल अनायत फरमाई, फिर राह सुझा दी। उसने कहा अच्छा ये तो बतलाओ कि अगले जमाने वालों का हाल क्या होना है। ये भी एक जरा सा एक्सप्लॉइटिंग जुमला था ताकि बड़ों की बात करें और फिर मूसा के नाम पे बड़े बड़े स्कैंडल खड़े कर दें। जवाब दिया कि इनका इल्म मेरे रब के पास हाँ किताब में मौजूद है, ना तो मेरा रब गलती करता है ना भूलता है। तो आप देखिए सूरत आहा की आयत 52 से 52 में हिदायत की पैरवी करने वालों के लिए क्या इनाम है। अमन मिलता है, सुकून मिलता है, सलामतियों के तोहफे मिलते हैं, मामला फहमी आ जाती है और हिदायत थम जाती है। अल्लाह आपको मुझे हिदायत पे जमा दे, सीकर ऑफ दी गाइडेंस, हमें आखिरी दम तक बनाए रखे। इसी ने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया और इसमें तुम्हारे चलने के लिए रास्ते बनाए हैं, और आसमान से पानी भी वही बरसाता है, फिर बरसात की वजह से मुख्तलिफ किस्म की पैदावार भी हम ही पैदा करते हैं। तुम खुद खाओ और अपने चौपाओं को भी चराओ, कुछ शक नहीं कि इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। यहां आप देखिए कैफियत में आयत 54 में अकल रखने और समझने वालों की बात है। वो हमारा रब है, वो जिसने सिर्फ ना सिर्फ के हमें बनाया बल्कि कायनात को पैदा किया, बल्कि जिसने तख्लीक के साथ सामान जीस भी फराहम किए। तो अकल रखने वालों को ये पता होता है कि फिर इसी के आगे झुकना है, ना कि लकड़ी पत्थर के किसी मादू के आगे या किसी मावराई निजाम के आगे झुकना है। फिर फरमाई जमीन में से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में वापस लौटाए जाएंगे। हाईलाइट कर लीजिए, अपने उस दिन को सोचिए जिस दिन मट्टी में होंगे। जरा सा अपनी कब्र को तो सोचें, कहाँ होंगे, किधर जाएंगे, क्या हालात होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह हमें आज ही दुनिया में इसकी फिक्र लगा दे कि हम कहाँ जाएंगे। हमने इसे अपनी सब निशानियां दिखाई लेकिन फिर भी इसने इनको झुटलाया और इनकार कर दिया और कहने लगा ऐ मूसा क्या तू इसलिए आया है कि मैं अपने जादू के जोर से अपने मुल्क से बाहर निकाल दे। थ्रेट फील कर रहा है, हक की बात का थ्रेट अमूमन ही ऐसे लोगों को महसूस होता ही रहा। अच्छा हम भी तेरे मुकाबले में इस जैसा जादू जरूर लाएंगे, बस तू हमारे और अपने दरमियान एक वादे का वक्त मुकर्रर कर ले कि ना हम इसके खिलाफ करें ना तू करे, साफ मैदान में मुकाबला हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जीनत और जश्न के दिन का वादा है और ये कि लोग दिन चढ़े ही जमा हो जाएं। बस फिरौन लौट गया और इसने अपने हथकंडे जमा किए फिर आ गया। नोट कर ले, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं नेक लोगों की कि वो उसके दीन का काम करे। अल्लाह फिरौन से वो काम ले रहा है जो कि मूसा नहीं कर सकते थे। पूरा मीडिया जमा कर लिया तो क्या पता चला कि ज्यादा तकब्बुर और फख्र ना कीजिए अपनी दीनदारी पे और अपनी मार्केटिंग पे। अल्लाह ने बात आपकी पुछवानी हो तो किसी बड़े से बड़े फासिक से भी पुछवा लेगा। आप अपने बहुत नेक होने को बुनियाद नहीं बना सकते। दुआ कर लिया करें कि अल्लाह अगर हमसे दीन का काम करवा ले तो हम खुद भी नेक हो। और वो जम याद कीजिए जो शुरू में दे दिया था आपको, कुछ लोग नेक नहीं होते लेकिन नेकियों के काम कर रहे होते हैं। फिरौन का जवाब सुन लीजिए, आज 60 तक पढ़ दिया मैंने के 58 में पढ़ दिया, आगे चलते हैं। आगे देखिए 61 से 73, जादूगरों का किरदार। قال له موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारी शामत आ चुकी, अल्लाह पर झूठ और इफ्तरा न बांधो कि तुम्हें अजाबों से मिलिया मेट कर दे। याद रखो वो कभी कामयाब न होगा जिसने झूठी बात घड़ी। अल्लाह हम सबको झूठ घड़ने से बचा ले। बस ये लोग आपस के मशवरों में मुख्तलिफ राय हो गए और छुपके मशवरे करने लगे। कहने लगे ये दोनों महज जादूगर हैं और इनका पुख्ता इरादा है कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल बाहर करें और तुम्हारे बेहतरीन मजहब को बर्बाद कर दें। आज भी यही गलत फहमी है। आप देख लीजिए अल्लाह के नबी को भी जादूगर कहा गया और इनको भी शक था और अपने तरीकतुल मुसला का फिक्र है, क्योंकि अजहल में लोग ऐसे ही होते हैं जो कि अपने कल्चर पे इस्लाम को एक थ्रेट महसूस करते हैं। याद रखिए अब तो निकाब कोई इशू ही नहीं रहा। देखिएगा कोरोना जाने के बाद जो तोहफा मिलेगा इंसानियत को निकाब का मिलेगा। किसी को बुरा नहीं लगेगा, कोई आपको निंजा टर्टल नहीं कहेगा और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और कोई इसको गैर मुहज्जब नहीं कहेगा। अल्लाह ने मर्दों को भी कुछ अरसा पहना दिया है ताकि खबरदार तुमने औरतों को बुरा भला कहा। तो अल्लाह को काम लेने आते हैं, मेरे आपके काम की जरूरत नहीं है, तो हम अपने लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए फरमा दिया कि तुम ये काम कर रहे हो, यानी वो जो सारी बातें कर करा रहे थे उन्हीं की बात यहां करके फरमा दिया कि कहने लगे ये तो जादू है, जादू के जोर से भी कभी को किसी को निकालता है, तो तुम भी अपना कोई दाव उठा लो, यानी तुम भी अपना कोई दाव उठाना रखो, यानी हर मुमकिन कोशिश कर लो, फिर सफ बंदी करके आओ। देखे डिसिप्लिन की अहमियत थी उस दौर में भी आज भी है। जो आज गालिब आ गया वही बाजी ले गया। कहने लगे मूसा या तो पहले डाल या हम डालने वाले बने। प्रोटोकॉल देते हैं बाहर लेकिन अंदर से चाहे वो जड़ें काटने वाले हों। आज भी महजब लोग कुछ ऐसे ही होते हैं। जवाब दिया कि नहीं तुम ही पहले डालो। अब तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये ख्याल गुजरने लगा कि इनकी रस्सियां और लकड़ियां इनके जादू के जोर से दौड़ भाग रही हैं। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल ही दिल में डर महसूस किया। हमने फरमाया कुछ खौफ न कर, यकीनन तू ही गालिब और बरतर रहेगा और तेरे दाएं हाथ में जो है इसे डाल दे कि इनकी तमाम कारीगरी को वो निगल जाए। वो रस्सियां मुराद है, उन्होंने जो कुछ बनाया है ये तो सिर्फ जादुओं घरों के करतब हैं और जादूगर कहीं से भी आए कामयाब नहीं होता। अब तो जादूगर सजदे में गिर पड़े और पुकार उठे कि हम तो हारून और मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए। ये क्या हुआ? ये नूरे बसीरत था। देखा तो फिरौन ने भी था लाठी को सांप और सांप को लाठी बनते देखकर, लेकिन उसके अंदर नूरे बसीरत नहीं था और इंशराहे सदर नहीं था कि रब इशराह ली सदरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने उनको अंदर से डाल दी। ये हिदायत की वो सच्ची तलब थी जिस पे अल्लाह ने इनको डाल दिया। इससे पता चलता है कि जब इंसान इस तरह के कामों पे आ जाता है तो उसके साथ क्या मामला होता है। अपने आप को सामने लेकर सोचिए, अपने आप को लाकर सोचिए कि ये कैसे होता है। सच्ची तलब वाले को अल्लाह चाहे जादूगर क्यों ना हो और अपने वक्त का बुरा ही क्यों ना हो उसको हिदायत दे सकता है, तो आज के दौर में लोगों को कैसे नहीं हिदायत मिलेगी। असल बात है कि हमारी ये तलब सच्ची नहीं है। फिरौन कहने लगा क्या मेरी इजाजत से पहले ही तुम ईमान ले आए? गोया कि ये भी इजाजत लेने वाली की बात है। यकीनन यही तुम्हारा वो बड़ा बुजुर्ग है जिसने तुम सबको जादू सिखाया है। सुन लो, मैं तुम्हारे हाथ पांव उल्टे सीधे कटवाकर तुम सबको खजूर के तनों पर सूली पर खजूर के तनों में सूली पर लटकवा दूंगा और तुम्हें पूरी तरह मालूम हो जाएगा कि हम में से किसकी मार ज्यादा और सख्त और देर पा है। उन्होंने जवाब दिया कि नामुमकिन, हम तुझे तरजीह दें इन दलीलों पर जो हमारे सामने आ चुकी हैं और इस अल्लाह पर जिसने हमें पैदा किया। अब तो तू जो कुछ करने वाला कर गुजर, तो जो कुछ भी हुक्म चला सकता है वो दुनिया की जिंदगी तक ही चलाएगा। कितनी जुर्रत है आप देखिए। हम इस उम्मीद से अपने परवरदिगार पर ईमान लाए कि वो हमारी खताएं माफ फरमा दे और खासकर जादूगरी का गुनाह जिस पर तूने हमें मजबूर किया है। अल्लाह ही बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाला है। यकीन था जादूगरों की इस्तकामत का तज़किरा सच जब होता है तो दिल में उतरता है, शर्त यह कि तासुब ना हो। फिरौन के सामने वो बोलते हैं और सब कुछ होते हैं। आयत 74 देखिए, मुजरिमों का ठिकाना, इन्नहु मैयाति रब्बहु मुजीमा। बात यही है कि जो भी गुनाहगार बनकर अल्लाह ताला के यहाँ हाजिर होगा इसके लिए दोजख है जहां ना मौत होगी ना जिंदगी। इसके बरक्स मोमिनों के दरजात आयत 75 से 76 में देखिये, वमै याति हिल मोमिनन कद अमिल सालिहाति, और जो भी इनके पास ईमानदार होकर हाजिर होगा और इसने अमाल भी नेक किए होंगे, इसके लिए बुलंदोबाला दर्जे हैं, इसके लिए बुलंदोबाला दर्जे हैं हमेश की वाली जन्नतें जिनके नीचे नहरें बहती हैं, नहरें बह रही होंगी और जहां वो हमेशा रहने वाले होंगे। यही इनाम है हर उस शख्स का जो पाक है। अल्लाह हमें भी पाक कर दे और अल्लाह के सामने हम सुरखरू हो जाएं क़यामत के दिन भी और दुनिया में भी। आगे अब आखिरी हिस्सा है कहानी का, आयत 77 से 98, हजरत मूसा और फिरौन का आखिरी मार्का। वलकद औहैना इला मूसा, हमने मूसा अलैहि सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई कि तू रातों रात मेरे बंदों को ले चल और इनके लिए दरिया में खुश्क रास्ता बना ले, फिर न तुझे किसी के आ पकड़ने का खतरा होगा न डर। फिरौन ने अपने लश्करों समेत इनका ताकुब किया, फिर तो दरिया इन सब पर छा गया जैसा कि कुछ छाने वाला था। फिरौन ने अपनी कौम को गुमराही में डाल दिया और सीधा रास्ता न दिखाया। इसको कहते हैं कि गुमराह लोग खुद भी डूबते हैं और कौमों को भी ले डूबते हैं। अब देखिए 79 में, वअदल्ला फिरौनु कौमहु वमा हदा की बात हुई, तो हर कायद और हुक्मरान की असल जिम्मेदारी अपनी कौम की सही रहनुमाई है। जिसको लीडर बनने का शौक है वो अपनी रहनुमाई की फिक्र सबसे ज्यादा करे, क्योंकि अगर वो भटकेगा तो बाकी भी भटक जाएंगे। कायद दरअसल दर हकीकत दाई होता है, दावत देने वाला। दाई को खुद भी सिराते मुस्तकीम का इल्म होना जरूरी है। बगैर इल्म के दाई राह हिदायत नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो खुद ही नहीं है उस चीज पे। तो जो आपने नहीं फील किया आप दूसरों को कैसे फील कराएंगे? आपको खुद अल्लाह से प्यार नहीं है तो दूसरों को कैसे देंगे? और सो ऑन। तो आगे बनी इसराइल के कुछ मजीद हालात। ए बनी इसराइल, देखो हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दिला दी और तुमसे कोहे तूर को की दाई तरफ से और तुमसे कोहे तूर की दाई तरफ का वादा किया और तुम पर मनो सलवा उतारा। तुम हमारी दी हुई पाकीजा रोजी खाओ और इसमें हद से आगे न बढ़ो, वरना तुम पर मेरा गजब नाजिल होगा और जिस पर मेरा गजब नाजिल हो जाए वो यकीनन तबाह हुआ। हाँ बेशक मैंने बख्श देने वाला हूँ जो तौबा करें, ईमान लाए और नेक अमल करें और राह रास्त पर भी रहें। अल्लाह ये सारी आखिरी बातें हम सब में भी डाल दे, सच्ची तौबा के बाद अमल साले करवा ले हम सबसे। ए मूसा, तुझे अपनी कौम से गाफिल करके कौन सी चीज जल्दी ले आई? शौक देखिएगा मूसा का अल्लाह से मिलने का। कहा कि वो लोग भी मेरे पीछे ही पीछे हैं, मैंने ए रब तेरी तरफ जल्दी इसलिए की कि तू खुश हो जाए। फरमाया, हमने तेरी कौम को तेरे पीछे आजमाइश में डाल दिया और इन्हें सामरी ने बहका दिया। अल्लाह अकबर। आयत 85 में देखिए, अल-क़ल्बुद्दालुल मफ्तून की कैफियत का तज़किरा है। क्या पता चला कि आजमाइशें इम्तिहान हो जाती हैं, दीन वाले हिदायत पा जाते हैं और दुनिया परस्त फितनों में डूब जाते हैं। अल्लाह हमें हर आजमाइश में कामयाब कर दे। आयत 86, बस मूसा अलैहि सलाम सख्त गजबनाक होकर रंज के साथ वापस लौटे और कहने लगे, ऐ मेरी कौम वालों, क्या तुमसे तुम्हारे परवरदिगार ने नेक वादा नहीं किया था? क्या इसकी मुद्दत तुम्हें लंबी मालूम हुई? बल्कि तुम्हारा इरादा ही ये है कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार का गजब नाजिल हो कि तुमने मेरे वादे के खिलाफ किया। जरा सा सोचिए इस पे। उन्होंने जवाब दिया कि हमने अपने اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت، جس کی گائے کی سی آواز بھی تھی، اور کہنے لگے یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔ نعوذ باللہ۔ کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا، اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا یا برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ گائے کو دودھ دینا ہے، دودھ دے گی، وہ اس سے زیادہ کسی کے نفع نقصان کی مالک نہیں ہے۔ ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ میری قوم والو، اس بچڑے سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہے، بس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ ہر نبی کی یہی پکار ہوتی ہے، اللہ ہمیں بھی اسی کی توفیق دے۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ سٹبننس دیکھیے قوم کی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دامن گیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ یہاں دیکھیے، دو بھائیوں کا لڑنا بھی ایک آزمائش ہے، جب دو مسلمان لڑتے ہیں تو باقی دنیا ان کا مذاق اڑاتی ہے، اللہ ایسی آزمائشوں سے آج امت مسلمہ کو نکالے۔ اس نے جواب دیا، مجھے وہ چیز دکھائی دی جو ان کو نہیں دکھائی دی، میں نے قاصد الہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، جبرائیل کی طرف اشارہ، اسے اس میں ڈال دیا، اس طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بنا دی۔ یہ نور بصیرت کا اپوزٹ ہے، برے آئیڈیا سوچنے لگے، غلط کام، جادو ٹونے اور اس قسم کی شوبدہ بازی، اللہ اس سے بچا دے سب کو۔ کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوا تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گے۔ پتہ چلا کہ بری یادیں بھی مٹا دینی چاہیے، کہیں دوبارہ دل نہ آ جائے انہی غلط چیزوں کی طرف، اور غلط رسومات اور وہ گناہ کی یادگاریں کہیں آپ کو دوبارہ اسی کی چیز کی طرف نہ لے جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ کیا خوبصورت سٹوری ہے، دل نہیں کرتا بیچ میں رکنے کو۔ آگے دیکھیے، اب بالکل سورت کا اینڈ شروع ہونے لگا ہے۔ فرعون کی ہلاکت ہم نے پڑھ لی، موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے ساتھ وادی تی کا دور پڑھ لیا، نعمتوں پر شکر گزاری کی تلقین پڑھ لی، آج امت مسلمہ کو صبر دکھایا، سامری کی پیدا کردہ گمراہیاں، دیکھیے آج بھی بڑے سامری ہیں جو اسی قسم کی باتیں کر کرا کے ہماری نسلوں کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں، اور زیورات کا بوجھ اٹھانے والی قوم کو بتا دیا کہ یہ زیور تم پھینک دو گے اس وقت جب تمہاری جان جا رہی ہوگی، بہتر ہے کہ اس کو اپنے اللہ کے راستوں میں اپنے انسانیت کے نفع کے لیے استعمال کر دو۔ پھر قوم کی گمراہی اور حضرت ہارون کا طرز عمل ہم نے دیکھا کہ انہوں نے فتنہ نہیں اٹھایا اور فرقہ واریت سے بچتے ہوئے خاموش رہے، اور پھر ہم نے سامری کا انجام بھی دیکھ لیا کہ کیسے اس کا معاملہ ہوا۔ اب آگے آیت 99 سے لے کر 113 تک قیامت کی ہولناکیاں بھی ہیں، اور قرآن پاک میں بیان شدہ قصوں کی حکمت بھی ہے، یعنی قرآن از ناٹ جسٹ اسٹوری ٹیلنگ بک بلکہ از اے بک فار ریمائنڈر۔ قذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرمات رہے ہیں، اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت فرمات عطا کر چکے، اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرمات رہے ہیں اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں، اس سے جو منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور ان کے لیے قیامت کے دن بڑا برا بوجھ ہے۔ ذرا سا تصور میں لائیے قیامت کا دن۔ जिस दिन सूर फूका जाएगा और गुनाहगारों को इस दिन दहशत की वजह से नीली पीली आंखों के साथ घेर लाएं, वो आपस में चुपके चुपके कह रहे होंगे कि हम तो दुनिया में सिर्फ दिन 10 दिन ही रहे। जो कुछ वो कह रहे हैं इसकी हकीकत से हम बाखबर हैं। इनमें सबसे अच्छी राय वाला कह रहा होगा कि तुम सिर्फ एक ही दिन दुनिया में रहे। ये दुनिया एक दिन की लगेगी वहां जाकर। आज तौबा करके अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह हमें क़यामत के दिन मुजरिमों के उन बुरे हालात से रोक ले और उस तरह के ना बने। अब आगे कुछ पहाड़ों और जमीन का मुस्तकबिल दिखाया जा रहा है सूरत और पारे के एंड पे। वो आपसे पहाड़ों की नस्बत सवाल करते हैं तो आप कह दीजिए कि इन्हें मेरा रब रेजा रेजा करके उड़ा देगा और जमीन को बिल्कुल हमवार साफ मैदान करके छोड़ेगा, जिसमें ना तो कहीं कोई मोड़ देखेगा ना कोई ऊंच नीच। मैदान मख्शर बिल्कुल चटियल होगा ताकि कोई किसी चीज के पीछे भी जाकर ना छुप जाए। जिस दिन लोग पुकारने वाले के पीछे चलेंगे, जिसमें कोई कजी ना होगी और अल्लाह रहमान के सामने तमाम आवाजें पस्त हो जाएंगी सिवाय खुसर फुसर के, तुझे कुछ भी सुनाई ना देगा। अब जरा उस दिन अपने आप को रिलैक्स करके उस मैदान में ले आइए। पारे के एंड से पहले अपने आप को तैयार कीजिए कि अल्लाह से नूरे बसीरत मांगना है तो इस कुरान को दिल के ऊपर लेना पड़ेगा। इस दिन सिफारिश कुछ काम ना आएगी मगर जिसे रहमान हुक्म दे और इस बात को पसंद फरमाए। जो कुछ इनके आगे पीछे है इसे अल्लाह ताला ही जानता है। मखलूक का इल्म इस पर हावी नहीं हो सकता। तमाम चेहरे उस जिंदा और कायम दायम और मुद्दबिर अल्लाह के सामने कमाल आजजी से झुके हुए होंगे। यकीनन वो बर्बाद हुआ जिसने जुल्म लात लिया, और जो नेक अमल करे और ईमानदार भी हो तो ना इसे बेइंसाफी का खटका होगा ना हक तलफी का। और इसी तरह हमने तुझ पर अरबी में कुरान नाजिल फरमाया और तरह तरह से इसमें डर का बयान सुनाया ताकि लोग परहेजगार बन जाएं या इनके दिल में सोच समझ तू पैदा करे। यह है सोच समझ, जिसको आप नूरे बसीरत कहते हैं। आपको अपना नफा नुकसान समझ आ जाए, किस चीज में मेरा ज्यादा फायदा है किस में कम है। बाज़ दफा जज्बातियत में, कभी गुस्से में, कभी अना में, कभी जल्दबाजी में इंसान अपना नुकसान कर लेता। अल्लाह ताला कहते हैं कि इस चीज को इंसान अगर महसूस कर ले तो उसके लिए बहुत सारे खैर के रास्ते खुल जाते हैं। फिर आके देखिए कि आयत 114 में नबी सल्लम की एक दुआ है, फतालुल्लाहुल मलिकुल हक वला ताजल बिल कुरआन। बस अल्लाह अली शान वाला सच्चा और हकीकी बादशाह है, तू कुरान पढ़ने में जल्दी ना कर इससे पहले कि तेरी तरफ जो वही की जाती है वह पूरी की जाए। हाँ ये दुआ करके परवरदिगार मेरा इल्म बढ़ा। दूसरी दुआ है इस एक पारे में इल्म से मुतल्लिक, रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी शराहली किसकी दुआ थी? मूसा की, उलुल अज़्म पैगंबर। और रब्बी ज़िदनी इल्मा किसकी है? मोहम्मद मुस्तफ़ा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आप क्या कहते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा या रब्बी ज़िदनी मालन, रब्बी ज़िदनी औलादन? ये तो अब कोई नहीं कहते हम कि रब्बी ज़िदनी औलादन, और बहुत कुछ मांगते हैं। हालांकि यार बच्चा अपना नसीब लेकर आता है तो अल्लाह से इल्म भी मांगिए, औलाद भी मांगिए, माल भी मांगिए, लेकिन हसना के साथ। आगे 115 से मुख्तसर सा वाक़िया है आदम अलैहिस्सलाम का, भूल इंसानी कमजोरी। वलकद अख़्तना इला आदम मिन क़ब्लु फनसिया, हमने आदम को पहले ही ताकीदी हुक्म दिया था लेकिन वो भूल गए और हमने इनमें कोई अज़म नहीं पाया। अल्लाह हमें अज़म दे। और अज़म क्या होता है? कि जो चीज़ पकड़ लें फिर उसको कभी ना छोड़ें। कुछलियों के दर्द से पकड़ लीजिए कि ये कुरान अब रमजान के बाद भी कभी हमारे हाथों से ना फिसले। 116 से 123, अल्लाह ताला की नाफरमानी से चार मुशक्कतें मिलती हैं। जरा सा इसका तवज्जो से सुनिएगा हिस्सा। वैस कुल नालिल मलाइकत इस्जुदू लियादम फसजदू इल्ला इब्लीस, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो सजदा किया मगर इब्लीस ने नहीं किया, उसने साफ इनकार कर दिया। तो हमने कहा आदम ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, ख्याल रखना ऐसा न हो कि वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे कि तू मुसीबत में पड़ जाए। यहां तो तुझे ये आराम है कि ना तू भूखा होता है ना नंगा, देखिए जन्नत की नेमतें, और ना तू यहाँ प्यासा होता है ना धूप से तकलीफ उठाता है। लेकिन शैतान ने इसे वसवसा डाला, कहने लगा कि क्या मैं तुझे दायमी जिंदगी का दरख्त और बादशाहत बतलाऊं कि जो कभी पुरानी ना हो। ढकोसला है उसका बस। چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، پس ان کے ستر کھل گئے اور بہشت کے پتے اوپر ٹانکنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس بہہ گیا۔ یہاں دیکھیے ذرا آزمائشوں میں سے آدم کی کیا آزمائش تھی، ٹیمپٹیشن، خواہش پیدا ہوئی تو شیطان کا کنٹرول ہو گیا، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے رب نے اس کو نوازا، اس کی توبہ قبول کی، اس کی رہنمائی کی، فرمائے تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا۔ آیت 122 میں دیکھیے، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا۔ اللہ آپ کے میرے لیے بھی یہ جملے بول دے، چاہے ہمیں پتہ لگے نہ لگے، ندامت اور توبہ کی توفیق اللہ کا فضل ہے۔ اس سے ندامت اور توبہ کی توفیق خوشبختی کی علامت ہے، اسی لیے تو سورہ بقرہ کی آیت 3 میں اللہ نے کہا نا کہ فتلقا آدم من ربہ کلمات، اللہ ہمیں بھی کوئی ایسے کلمات سکھا دے جس سے ہماری بھی توبہ قبول ہو جائے۔ اور آیت 124-126، ذکر سے منہ پھیرنے والوں کے لیے زندگی تنگ ہو جاتی ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے اس کی زندگی تنگ رہے گی۔ یہ ہے جی غیر قرآنی زندگی اور غیر اسلامی زندگی، گھٹن، ڈپریشن، دل تنگ ہے، گھٹن ہے، موت سے ڈر ہے، اکیلے میں گھبراتے ہیں، اور یہ تو صرف دنیا، آگے تو دیکھیے کیا ہونا ہے۔ اور ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے، وہ کہے گا کہ الہی تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں، تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی بھی آج تو قبول گیا تو آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آج آپ کو کوئی کہے نا کہ اگلے سال آپ کی آنکھیں چلی جائیں گی، بینائی ختم ہوگی، تو کتنا خوف ہوگا، اور اللہ ہم سب کی بینائی کو ایسی تیز کر دے کہ بغیر کسی سہارے کے ہم آخری دم تک قرآن سیکھتے سکھاتے رہیں۔ آیت 127-128، حد سے نکلنے والے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّي، ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا ان کی راہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی ہیں جن کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں؟ یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ ہے جی عقل مند لوگ، جن کے دلوں میں نشانیوں سے سبق لینا ہوتا ہے، تو کیا پتہ چلا کہ عاقل وہ ہے جو دوسروں کے انجام سے سبق حاصل کرے۔ آزمائشیں ذریعہ ہدایت بن جاتی ہیں اور عذاب ذریعہ ہدایت بن جاتے ہیں کبھی کبھی۔ آپ کو مجھے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ہر آزمائش میں خیر کا ذریعہ بنا کر ہدایت پہ لیا، نہ کہ گمراہیوں میں اور ڈال دے۔ 129، جزائے اعمال کے لیے میعاد مقرر ہے، وَلَوْ لَكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر تیرے رب کی بات پہلے سے مقرر شدہ اور وقت معین نہ ہوتا تو اسی وقت عذاب آ چمٹتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مہلت بھی دے دیتے ہیں۔ آیت 130-132، دائی دین کے لیے خوبصورت اصول ہے، کیا؟ فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے بھی پہلے، رات کے مختلف اوقات میں بھی، یہاں نمازوں کے اوقات میں زر پڑتا، اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہے، بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ ہائی لائٹ کریں، ہم کہتے ہیں نماز اس لیے پڑھنی کہ اللہ راضی ہو جائے، یہاں کیا لکھا ہے؟ آپ راضی ہو جائیں۔ جی، بندہ مومن کو پہلے خوشی ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، اللہ تو بعد میں خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہماری نمازوں کا بھی یہی حال کر دے، اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں، تاکہ انہیں اس میں آزما لیں۔ تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ اللہ ہماری دنیا کی چیزوں کو ہماری آزمائش نہ بنائے۔ اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ کر خود بھی اس پر جمع رہے۔ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم تجھے روزی دیتے ہیں، آخر میں بول بالا پرہیزگاری ہی کا ہے۔ آپ نے دیکھا اس نماز، اس بارے میں گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کا بہت وقت ذکر ہے، تو یہ آزمائش ہے۔ इस आजमाइश को अल्लाह से मांगी हुई हिकमत और नूर बसीरत के साथ हल कीजिए। आपके तल्ख रवैये कहीं दूसरों को और दूर ना कर दें, और आपका बिल्कुल ही लाओबाली होना कि हम क्यों पूछें, अब ये बड़े हो गए हैं और इनको भी पता है, ये भी दुरुस्त नहीं। बीच का रास्ता रखकर खुद नमाजें पढ़िए, जमात से पढ़िए, उन्हें के मिलके पढ़ते हैं तो बच्चे, शोहर, मियाँ, बीवी सब मिलके पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा और तकवा वाले ही बचेंगे। और फिर आखिर में आयत 133 से 135, आखरत किसकी बेहतर होगी, यही चाहिए ना सुनना। तो आइए देखते हैं। वकालु लौला याती नबी आयतें मिन रब्बे, उन्होंने कहा ये नबी हमारे पास अपने परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं लाया, क्या इनके पास अगली किताबों की वाज़ह दलील नहीं पहुंची, और हम इससे पहले ही इन्हें अजाब से हलाक कर देते तो यकीनन ये कह उठते कि हमारे परवरदिगार तूने हमारे पास अपना रसूल क्यों ना भेजा, जब तक मौका ना बनाओ तो लोग मांगते हैं, जब मिल जाए चीज तो नकदरी कर देते हैं, इंसानों की आदत है। और वो रसूल क्या करे कि हम तेरी आयतों की दावेदारी करते इससे पहले कि हम जलील और रुस्वा होते। मक्का वाले भी ऐसी कुछ बातें कहा करते थे, लेकिन देखिए उन्होंने क्या किया। कह दीजिए कि हर एक इंजाम का मुंतजर है, बस तुम भी इंतजार में रहो, अभी अभी कतन जान लोगे कि राह रास्त वाले कौन हैं और कौन राह याफ्ता है। अल्लाह हमें राह याफ्ता बना दे। दुआ कीजिए, रब इशराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्लाह मेरा दिल ठुक जाए, मुझे तैयार कर दे, मैं अपने आप को लगा दूं, ये काम मेरे लिए आसान हो जाए। मूसा की तरह अल्क़हा पे इताअत की अमल करने वाला बना दे, क्योंकि इबादत ढलती ही इताअत में, जब आप नमाज पढ़ते हैं ना ये इबादत की सूरत में दिखेगी। अगर मूसा ना पकड़ते तो वाकई उस आपने डस लेना था उनको, बच गए पकड़ के, आप और मैं पकड़ लेंगे तो बच जाएंगे और लुड़खड़ाती जुबान से हक बोलेंगे तो अल्लाह कबूल कर लेगा अगर हक होगा। मूसा में लुकनस थी कहते हैं, फिर भी अल्लाह ने आवाज कच्ची पक्की भी थी लेकिन फिरौन को बात पहुंचा दी। इसी तरह आज बोलने वाले की जुबान लड़खड़ा ही रही हो, अगर खुद अपना ही अमल नहीं ठुके हुए नहीं तो बताइए दूसरों को कहां देंगे। और इस पारे के साथ अल्लामा इकबाल की वो खूबसूरत सी तड़प, जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। अल्लाह गली गली इस कुरान के नूर को आम कर दे और हमें इसका जरिया बना दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।